आगे सबक देखिए भाई, बाबु मा युक्ताउ फीही व मा ला युक्ताउ व ला युक्ताउ फी मा यूजदु ताफी हम मुबाहन फी दारिल इस्लाम कल खशबि वल हशीशि वल कसबि वस्समकि वत्तैरि वस्सैदि वज़िरनीखि वल मगरति वन नूरति वल असलु फीही हदीसु आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा قالت كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء التافه। भाई गुज़श्ता सबक में हमने किताब उस सरिका शुरू की थी भाई, और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अरबी जुबान में सरिका का माना है किसी की चीज खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर ले लेना, और इसी से इस्तिराकुस्समा भी है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इल्ला मन इस्तरकस्समा, मगर वो जो चुपके से कोई बात सुन ले। मैंने आपको बतलाया था कि कोई शख्स किसी की बात चुपके से सुन ले तो अरबी में कहते हैं इस्तरकस्समा, या इसी तरह कोई चुपके से किसी को देखे तो इसके लिए अरबी में कहते हैं इस्तरकन नजरा। तो इसी से इस्तिराकुस्समा भी है भाई। और फिर इस पर शरीयत ने कुछ औसाफ को ज्यादा कर दिया है, और शरीयत के अंदर चोरी उसे कहेंगे जिसमें निसाब के बकदर माल चोरी किया जाए, और वो हमारे नजदीक कम से कम 10 दिरहम हैं, और नीज वो माले महफूज होना चाहिए, और नीज वो चीज ऐसी ना हो कि जल्दी खराब हो जाती हो, और नीज उसमें किसी किस्म की तावील भी ना हो सके। मसलन कोई शख्स जो है कोई गाने बजाने का आला चोरी कर लेता है तो यहां वो तावील कर सकता है और कह सकता है कि मैंने तो इसलिए चुराया था कि मैं इसको तोड़ना चाहता था, शरीयत ने इसे मना किया है तो मैं इसको तोड़ना चाहता था, तो लिहाजा इस किस्म की तावील भी ना हो सके उस माल के अंदर, और नीस वहां किसी किस्म का शुबा भी ना हो। शुबा कभी कभार वो महफूज जगह में शुबा होता है, मसलन महरम जो है वो किसी दूसरे महरम की चीज चोरी कर ले उसके घर से, तो यहां पर हिर्ज यानी हिफाजत जो है उस हिफाजत के अंदर शुबा आ गया, क्योंकि महरम तो बेतकल्लुफी से एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं। या इसी तरह बाज औकात माल के अंदर शुबा आ जाता है कि चोरी करने वाले का भी उस माल के अंदर हिस्सा होता है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि कोई शख्स माले गनीमत में से चोरी कर लेता है, अब ये माले गनीमत तो तमाम मुसलमानों का हक है, तो इसके अंदर ये चोरी करने वाले का भी हक है, तो लिहाजा शुबा आ गया, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि अरबी जुबान में चोरी कहते हैं किसी की कोई चीज खुफिया तौर पर ले लेना, जबकि शरीयत ने इसमें कई औसाफ को बढ़ा दिया कि वो माल जो है निसाब के बकदर हो, माल महफूज हो, जल्दी खराब ना होता हो, और उसमें कोई तावील ना हो, और उसमें किसी किस्म का कोई शुबा वगैरह ना हो भाई। और फिर आपको यह भी बतलाया था साहिब हिदाया ने कि सरिका जो है दो किस्म पर है, एक सरिका सुगरा है और एक सरिका कुबरा है भाई। सरिका सुगरा ये चोरी को कहते हैं, और सरिका कुबरा जो है वो कतए तरीक को कहते हैं, कतए तरीक यानी रास्ता काटना। और मैंने आपको बतलाया था कि उर्दू में इसके लिए कोई अलग लफ्ज नहीं है। हमारे यहां तो शहर में भी कोई असलहे के जोर पर माल छीन ले उसको भी डाका कहते हैं, और जंगल के अंदर कोई असलहे के जोर पर माल छीन ले उसको भी डाका कहते हैं, लेकिन अरबी जुबान के अंदर जो शहर के अंदर असलहे के जोर पर माल छीना जाए उसको कतए तरीक नहीं कहते। क्योंकि आप लफ्जों पर जरा गौर कर लें, कतए तरीक भाई कथा का माना काटना और तरीक का माना रास्ता, यानी कहीं जंगल में रास्ते के अंदर कोई डाकू आ जाए और रास्ता काट दें उन लोगों का, यानी उनको लूट लें भाई, तो लिहाजा ये सिर्फ जंगल में ही होगा, रास्ते में ही हो सकता है भाई। और नीज इसके अंदर किसी मदद के पहुंचने का इम्कान भी नहीं होता, लिहाजा वो खूब तसल्ली से लूटमार करते हैं, और अगर कत्ल करना चाहें तो कत्ल भी करते हैं, और फिर सारा कुछ लूट कर निकल जाते हैं। जबकि शहर के अंदर तो जब डाकू आएगा अगर उसके पास असलहा हो भी वो जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि लोग या हिफाजत वाले मदद के लिए पहुंच सकते हैं भाई। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि सरिका दो किस्म पर है, एक सरीका सुगरा और एक सरीका कुबरा, और इन दोनों के अंदर लुगवी माना की भी रियायत है। जो इस्तिलाही मानी होते हैं उनमें लुगवी माना की रियायत रखी जाती है, और लुगवी माना तो था खुफिया तौर पर लेना, पोशीदा तौर पर लेना। तो ये सरीका सुगरा के अंदर तो ये बात वाजे है, सरीका सुगरा में कभी इब्तिदा और इंतहा दोनों के एतबार से खुफिया तौर पर होती है वो चोरी, और कभी सिर्फ इब्तिदा के एतबार से खुफिया तौर पर होती है, अगरचे इंतहा के अंदर वो फिर मालिक से जबरदस्ती छीन कर माल ले जाता है। तो लेकिन इश्काल होता है कि सरीका कुबरा उसमें तो दिन दहाड़े जो है डाकू आते हैं और रास्ता काटते हैं और माल छीन कर ले जाते हैं, तो वहां तो खुफिया होने का माना नहीं है। तो साहिब हिदाया ने बतलाया नहीं, वहां भी खुफिया होने का माना है, यानी वो वहां पर इमाम की निगाह से खुफिया तौर पर माल छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि रास्तों की हिफाजत जो है ये खलीफा का काम होता है। वो अपने मददगारों के जरिए, अपने लश्कर के जरिए, अपने पुलिस और फौज के जरिए रास्तों की हिफाजत करता है। तो यहां पर भी जो डाकुओं ने रास्ता काटा है वो खलीफा की निगाहों से पोशीदा होकर छुप कर रास्ता काटा है भाई। और इसी तरह सरीका सुगरा के अंदर भी मालिक या जो मालिक का कायम मकाम होता है उसकी निगाहों से चोरी छुपे जो है माल चुरा लिया जाता है भाई। मैंने बतलाया था कि बाज औकात मालिक की निगाहों से छुपा कर चोरी की जाती है, और बाज औकात गैर मालिक की निगाहों से छुप कर चोरी की जाती है। मसलन एक शख्स ने दूसरे का माल गसब कर लिया, अभी जो गासिब है इसके पास वो माल मौजूद है और इससे किसी ने चोरी कर लिया, तो अब देखो ये गासिब तो मालिक नहीं है लेकिन इस वक्त ये मालिक के कायम मकाम है। या कोई शख्स किसी से इस्तेमाल के लिए कोई चीज ले लेता है तो इसको आरियत कहते हैं, और ये इस्तेमाल के लिए चीज मांगने वाले को मुस्तईर कहते हैं। तो मुस्तईर जो है उसने किसी से कोई चीज मांगी और अपने पास महफूज रखी हुई थी कि कोई चोरी करके ले गया, अब ये मुस्तईर तो मालिक नहीं लेकिन ये मालिक के कायम मकाम है। या इसी तरह किसी ने किसी के पास अमानत रखवाई थी और उससे किसने माल चोरी कर लिया, तो अब वो जो मुदा है जिसके पास अमानत रखवाई गई वो तो मालिक नहीं है लेकिन वो मालिक के कायम मकाम है। तो लिहाजा सरीका सुगरा में भी मालिक की निगाहों से चोरी की जाती है, या जो मालिक के कायम मकाम होता है उसकी निगाहों से छुपकर चोरी की जाती है भाई। और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि हमारे नजदीक चोरी का निसाब जो है वो 10 दिरहम है, या उस चीज की कीमत 10 दिरहम तक पहुंचती हो और वो दिरहम भी ढले हुए हों, ढले हुए 10 दिरहम जो हैं उन तक उस चीज की कीमत पहुंचती हो और महफूज जगह से चोरी की जाए और उसमें किसी किस्म का शुबा ना हो, तो इस किस्म की चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा। और दलील जिक्र की थी कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वस्सारिक वस्सारिकतु फक्तौ अयदियहुमा, कि चोरी करने वाला मर्द और औरत जो है इनके हाथ काट दो भाई। और फिर बतलाया था कि इसमें आकिल बालिग होना जरूरी है, क्योंकि यह हाथ जो काटा जा रहा है जुर्म की वजह से काटा जा रहा है, और जुर्म तभी होगा जब वो चोरी करने वाला आकिल बालिग हो, अगर वो आकिल बालिग ही नहीं है तो ये जुर्म ही नहीं, जब जुर्म नहीं है तो फिर हाथ भी नहीं काटा जा सकता। और फिर बतलाया था कि मालिक कसीर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मालिक कसीर के अंदर लोगों की रगबत होती है, और अगर मालिक कसीर नहीं है फिर तो इसमें लोगों की रगबत कम होती है, बल्कि अगर मामूली चीज हो तो लोग मालिक से छुपा कर नहीं लेते, मालिक के सामने ही ले लेते हैं, और मालिक भी अमूमन इस पर कोई रोक टोक नहीं करता भाई। तो लिहाजा यहां पर अगर मामूली चीज पर हाथ काटा जाए फिर तो चोरी का रुकन ही नहीं पाया गया, चोरी का रुकन तो यह था कि खुफिया तौर पर ले, और मामूली चीज तो मालिक की निगाहों के सामने ही ली जाती है। और नीज इस सूरत में अगर मामूली चीज पर ही हाथ काटा जाए इसमें तो चोरी की हद की जो हिकमत है वो हिकमत भी नहीं है, इसलिए क्योंकि सजा शरीयत वहां मशरू करती है जो जुर्म लोगों के अंदर ज्यादा हो, जो जुर्म लोग कसरत से करते हो उससे रोकने के लिए शरीयत जो है वो सजा देती है। तो मामूली चीज में तो लोग रगबत करते ही नहीं, तो ये इस किस्म का जुर्म तो ज्यादा नहीं होगा, जब ज्यादा नहीं है तो फिर इसके अंदर सजा की हिकमत भी बाकी न रहेगी भाई। और फिर बतलाया था कि हमारे नजदीक जो है मालिक कसीर का अंदाजा 10 दिरहम के साथ लगाया गया है, 10 दिरहम हो तो मालिक कसीर है, इसमें हाथ काटा जाएगा, और 10 दिरहम से कम चोरी की है तो यह माल कलील है, इसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने इसका अंदाजा 3 दिरहमों के साथ लगाया है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इसका अंदाजा रुबए दीनार यानी दीनार के 4/4 हिस्से के साथ लगाया है और रुबए दीनार जो है वो भी 3 दिरहम के बकदर है। इसलिए क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में 1 दीनार जो है वो 12 दिरहम के बराबर होता था, तो दीनार का 1/4 हिस्सा जो है वो 3 दिरहम के बराबर ही हुआ। और मैंने यह भी बतलाया कि बाज अहादीस में भी रुबए दीनार का जिक्र आता है भाई। तो गोया इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल एक ही है या करीब करीब है एक दूसरे के, और इन्होंने 3 दिरहम के कौल को इसलिए इख्तियार किया क्योंकि रिवायात में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में ढाल की कीमत के बकदर में हाथ काटा जाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में ढाल की कीमत के बकदर के अंदर हाथ काटा जाता था और उस ढाल की कीमतें मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ जिक्र की हैं रावियों ने। बाज सहाबा फरमाते हैं वो ढाल 3 दिरहम की होती थी, बाज फरमाते हैं उसकी कीमत 4 दिरहम तक होती थी, बाज फरमाते हैं वो 5 दिरहम तक होती थी, बाज फरमाते हैं 6 दिरहम तक होती थी, बाज रिवायात में 10 दिरहम का जिक्र आया है कि उसकी कीमत 10 दिरहम तक होती थी। तो वो कहते हैं कि हमने 3 दिरहम वाले कौल को इख्तियार किया क्योंकि 3 दिरहम तो यकीनी है, 10 दिरहम वाला कौल लें उस 10 के अंदर भी देखो 3 आ गए और 6 दिरहम वाला कौल लें उसके अंदर देखो 6 के अंदर भी 3 होते हैं, 5 दिरहम वाला कौल लें 5 के अंदर भी देखो 3 तो मौजूद हैं, 4 दिरहम वाला कौल लें तो देखो उसके अंदर भी 3 दिरहम मौजूद हैं। तो मालूम है 3 दिरहम तो यकीनी है सबके कौलों के मुताबिक, लिहाजा हमने यकीनी कौल को इख्तियार किया क्योंकि इस हद का मामला है, लिहाजा यहां शक और शुबे से हाथ नहीं काटना चाहिए बल्कि जब एक बात यकीनी हो फिर ही हाथ काटा जाए। तो वो कहते हैं कि इसलिए हमने 3 दिरहम वाले कौल को इख्तियार किया। और फिर साहिब हिदायत ने हमारी दलील जिक्र की, हम कहते हैं कि ये हद का मामला है, इसके अंदर हाथ काटा जाएगा, इंतहा दर्जे की सजा है, लिहाजा यहां एहतियात इसमें है कि ज्यादा वाले कौल को इख्तियार किया जाए, एहतियात इसमें है कि ज्यादा वाले कौल को इख्तियार किया जाए क्योंकि कम कीमत वाले कौल को आप इख्तियार करेंगे तो उसके अंदर तो शुबा है, पता नहीं ये चोरी वाला जुर्म है या नहीं, अगर चोरी वाला जुर्म है शरीयत की नजर में तो हाथ काटा जाएगा, अगर चोरी वाला जुर्म नहीं फिर तो हाथ नहीं काटना चाहिए। तो लिहाजा एहतियात हमारे कौल में है, इसलिए क्योंकि हमारे नजदीक 10 दिरहम की चोरी करेगा तब हाथ काटा जाएगा, इससे कम के अंदर नहीं काटा जाएगा, तो हमारे कौल में एहतियात ज्यादा है। आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि हमारे कौल में किस तरह एहतियात ज्यादा है, भाई देखो हमने कहा 10 दिरहम में हाथ काटेंगे, तो अगर 3 दिरहम वालों का भी कौल ले लें कि जिनके नजदीक 3 दिरहम में हाथ काटा जाएगा, तो उनके नजदीक जब उनके नजदीक 3 दिरहम में हाथ काटा जा रहा है तो 10 में तो यकीनी तौर पर हाथ काटा जाएगा, जिन्होंने 4 दिरहम वाला कॉल किया है जब उनके नजदीक 4 दिरहम में हाथ काटा जाता था तो 10 के अंदर तो बतरीके औला हाथ काटा जाएगा, जिनके नजदीक 5 दिरहम के अंदर हाथ काटा जाता था तो उनके नजदीक भी 10 दिरहम के अंदर तो यकीनी तौर पर हाथ काटा जाएगा। तो हमने वो कौल इख्तियार किया कि जिसमें बिल इत्तेफाक सबके नजदीक हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि हद का मामला है, एहतियात इसी में है कि ज्यादा कीमत वाले कौल को इख्तियार किया जाए ताकि हद को टाला जा सके, क्योंकि यह हद का मामला है भाई। और नीज हम कहते हैं इसकी ताईद जो है हदीस से भी होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1 दीनार या 10 दिरहम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा, ला कता इल्ला फी दीनारिन औ अशरति दराहिमा, कि हाथ नहीं काटा जाएगा 1 दीनार में या 10 दिरहमों के अंदर। और फिर साहिब हिदायत ने आपको यह भी बतलाया कि मतन के अंदर मजरूबतिन की कैद थी कि वो दिरहम ढले हुए हों यानी उन पर मोहर लगी हुई हो, वजह यह कि उर्फ के अंदर दिरहम उन्हीं को कहते हैं जिन पर मोहर लगी होती है और जो ढले हुए होते हैं, इसीलिए साहिब कुदूरी ने भी मतन के अंदर मजरूबा की कैद लगाई भाई कि वह दिरहम ढले हुए हों भाई, जबकि बाज रिवायात में आया है चाहे ढले हुए हों चाहे गैर ढले हुए हों, लेकिन बतलाया कि ज्यादा सही कौल यही है कि वो दिरहम ढले हुए हों ताकि जिनायत कामिल दर्जे की हो जाए, जब ढले हुए दिरहम होंगे तो जुर्म कामिल दर्जे का होगा और गैर ढले हुए जो हैं उनकी कीमत तो बाज़ औक़ात 10 दिरहम से कम होती है, तो लिहाजा वहां जुर्म कामिल दर्जे का नहीं होगा भाई। और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि यहां पर जो दिरहम जिक्र किए गए हैं उनसे मुराद वो दिरहम हैं जिनका वजन सबअत मसाकील वाला हो भाई। मैंने आपको बतलाया था कि दीनार और मिसकाल ये एक ही वजन का नाम है, आप चाहे दीनार कह दें आप चाहे मिसकाल कह दें, ये दोनों एक ही वजन के नाम हैं। और सबअत मसाकील वाला दिरहम जो है वो दिरहम होते थे कि 10 दिरहम 7 दीनार के बराबर होते थे, यूं कहो 10 दिरहम 7 मिसकालों के बराबर होते थे, 10 दिरहम 7 मिसकाल के बराबर होते थे, यह वाला दिरहम मुराद है। क्योंकि दिरहम उस जमाने के अंदर आला भी थे, बाज उनका वजन ज्यादा था और बाज दिरहम अदना थे उनका वजन कम था। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने सहाबा के मशवरे से यह मुतवसित कीमत वाला दिरहम मुकरर किया कि जो 10 दिरहम का वजन बराबर होता था 7 दीनारों के भाई। और मैंने आपसे इन औजान की तफसील भी जिक्र की थी, मैंने आपको बतलाया था कि 8 चावल के दाने हों तो ये एक रत्ती बनती है, और 8 रत्तियां हों तो ये एक माशा बनता है, और 12 माशे हों तो ये एक तोला बनता है। तो लिहाजा इन माशों के एतबार से दिरहम का वजन है 3 माशे, 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती, यानी रत्ती का पांचवां हिस्सा, 3 पूरे माशे और 1 रत्ती और रत्ती का पांचवां हिस्सा भाई, ये एक दिरहम का वजन था। जबकि दीनार का वजन 4.5 माशे होता था, 4.5 माशे। अब हम देखते हैं कि 10 दिरहम 7 दीनार के बराबर हैं या नहीं, तो लिहाजा 10 दिरहम का जरा वजन निकालिए भाई। 10 दिरहम, हर दिरहम कितने वजन का है, 3 माशे, 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती, रत्ती का पांचवां हिस्सा। तो 10 दिरहमों के अंदर हर दिरहम में 3-3 माशे मिल गए, तो ये 30 माशे हो गए, ये अलग रख लें। फिर हर दिरहम के अंदर एक एक रत्ती पूरी है, एक रत्ती और खुमुसे रत्ती है ना, तो एक एक रत्ती पूरी है, तो 10 रत्तियां भी मिल गई, ये भी अलग रख लें। 30 माशे हो गए और 10 रत्तियां हो गई। और फिर हर दिरहम के अंदर रत्ती का पांचवां हिस्सा है, यानी 5 दिरहमों में ये मिलकर एक रत्ती बन जाएगी, 5 दिरहमों में मिलकर एक रत्ती, तो 10 दिरहमों के अंदर 2 रत्तियां हमें मजीद मिल गई। तो ये 10 रत्तियां पहले थी और 2 रत्ती और मिल गई, ये 12 रत्ती हो गए, 30 माशे और 12 रत्ती, और 8 रत्ती हो तो एक माशा बनता है, तो 12 रत्ती से 1.5 माशा बन गया। तो ये बन गया 30 माशे पहले थे और 1.5 माशा ये, यानी 31.5 माशे बन गए भाई। 31 माशे पूरे हैं और आधा माशा जायद है। अब जरा दीनार हम देखते हैं, 7 दीनार जो हैं उनका वजन भी 31.5 माशे होना चाहिए भाई। हर दीनार जो है 4.5 माशे का है, तो इसमें से जरा आधे माशे को अलग कर दें और 4 माशे हर दीनार में है, तो 7 × 4 = 28 भाई। तो 28 माशे ये हो गए 7 दीनारों में, और हर दीनार के अंदर आधा आधा माशा भी हमें मजीद मिल रहा है, तो 7 आधे आधे माशे मिलाएं तो ये 3.5 माशे हो गए, 3.5 माशे, और इसको जमा करें वो 28 माशों के साथ, तो ये भी 31.5 माशे हो गए। मालूम हुए 10 दिरहमों का वजन 7 दीनार के बराबर है। तो ये वाले दिरहम मुराद हैं जो 3 माशे, 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती वजन के बकदर हों भाई। और मैंने एक और पैमाना भी जिक्र किया था कि 5 जौ के दाने हों तो ये एक किरात बनता है, 5 जौ के दाने हों तो एक किरात बनता है। किरात भाई काफ है दो नुक्तों वाला और आखिर में तौ है भाई, तौजा। तो 5 जौ के दाने ये हुआ एक किरात, और दिरहम का वजन है 14 किरात, और दीनार का वजन है 20 किरात। दीनार का वजन ज्यादा है भाई, तो दिरहम का वजन 14 किरात और दीनार का वजन 20 किरात। तो अब 7 दीनार का वजन निकालें, 7 को 20 से जरब दे दें, 140 किरात। तो 7 दीनारों का वजन कितना हुआ, 140 किरात, या यूं कहो 7 मिसकाल का वजन कितना हुआ, 140 किरात भाई। और दिरहम जो है वो 14 किरात का है, तो 10 दिरहमों का वजन 140 किरात हुआ। तो देखो 7 दीनार जो है उनका वजन भी 140 किरात और 10 दिरहम जो है उनका वजन भी 140 किरात हो गया। तो मालूम हुआ ये दिरहम जो 14 किरात वाला है ये मुराद है। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि वो दिरहम मोतबर हैं कि 10 दिरहम का वजन बराबर हो 7 मिसकाल के भाई, क्योंकि कहते हैं आम शहरों में यही राइज हैं भाई। और दिरहमों के अलावा कोई और चीज है जिसको चोर ने चोरी किया है तो उसकी कीमत लगाई जाएगी, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, उनकी कीमत लगाई जाएगी। अगर उनकी कीमत 10 दिरहम तक पहुंची तो फिर इस सूरत में उस चोर का हाथ काटा जाएगा भाई। और फिर साहिबे हिदाया ने यह भी बतलाया कि इस कतई यद के मामले में गुलाम और आजाद दोनों बराबर हैं, चाहे गुलाम चोरी करे चाहे आजाद आदमी चोरी करे हाथ काटा जाएगा, क्योंकि कुरान के अंदर गुलाम और आजाद में कोई फर्क नहीं किया गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, यहां किसी गुलाम या आजाद की तफसील जिक्र नहीं है, मालूम है दोनों की एक ही सजा है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया था कि चोरी का जुर्म 2 गवाहों की गवाही से भी साबित हो जाएगा और चोर के अपने इकरार से भी चोरी का जुर्म साबित हो जाएगा, अलबत्ता एक ही इकरार काफी है तरफेन रहिमहुमल्ला के नजदीक। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जिना के अंदर 4 गवाह थे तो वहां 4 दफा इकरार जरूरी था, तो लिहाजा चोरी के अंदर और शुरबे खमर के अंदर 2 गवाह जरूरी हैं तो यहां इकरार भी 2 मरतबा होना चाहिए। लेकिन तरफेन जवाब देते हैं कि नहीं, इकरार के अंदर कोई दिलों में बदगुमानी नहीं आती कि यह शख्स अपने आपसे दुश्मनी कर रहा है, हां अलबत्ता गवाही के अंदर जो है गवाही के अंदर दिलों में बदगुमानी आ सकती है, लेकिन इकरार तो एक दफा भी कर ले वो मोतबर है। अलबत्ता गवाही जितनी ज्यादा होती जाए उतना ही झूठ का इल्जाम खत्म होता चला जाता है, लिहाजा एक ही दफा का इकरार काफी है। और नीज बतलाया था कि यहां 2 चीजें हैं, एक तो यह कि इस चोर के इकरार की वजह से एक तो हद आएगी, उसका हाथ काटा जाएगा, और नीज इस पर माल भी लाजिम है, वो जो माल इसने चोरी किया है अगर वो इसके पास मौजूद है तो वो इसको वापस करना पड़ेगा, और अगर हलाक हो चुका है तो फिर इस पर जमान नहीं आएगा भाई। तो वो माल जो है इसके पास अगर मौजूद है तो वो माल भी वापस देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर वो चोर इकरार के बाद रुजू करे तो रुजू की वजह से हद तो साकित हो जाएगी लेकिन माल साकित नहीं होगा, क्योंकि मालिक उसको झुटलाएगा भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा चाहे वो 10 दफा भी इकरार कर ले फिर भी रुजू का दरवाजा तो बंद नहीं होता, वो रुजू कर सकता है और उसकी वजह से हद साकित हो जाएगी। तो मालूम हुआ हद के मामले में रुजू का दरवाजा बंद नहीं हो सकता जितनी दफा भी इकरार कर ले, और माल के मामले में एक ही दफा इकरार कर ले तो वो इकरार काफी है और उसके बाद फिर वो रुजू नहीं कर सकता, तो इसलिए ज्यादा इकरार का यहां कोई फायदा ही नहीं। और वो जो जिना के अंदर साबित हुआ था 4 दफा का इकरार, वो खिलाफुल कियास था, वो बात हमारी अकल में तो नहीं आती, क्योंकि अकल तो यही कहती है कि एक दफा का इकरार काफी है। तो वो जो जिना के मामले में 4 दफा का इकरार था वो खिलाफुल कियास था, और जो चीज खिलाफुल कियास होती है वो अपने मौरिद पर बंद रहती है, उस पर और चीजों को कियास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक बात हमारी अकल में ही नहीं आ रही, जब एक बात हमारी समझ में ही नहीं आ रही तो उस पर और चीजों को आप कैसे कियास कर सकते हैं। तो जो हुक्म भी शरीयत के अंदर खिलाफुल कियास हो वो अपने मौरिद पर बंद रहता है, यानी जिस मसले के सिलसिले में वो हुक्म आया है वहीं पर वो बंद रहेगा, उस पर और चीजों को और मसलों को कियास नहीं कर सकते। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया था कि चोरी जो है 2 गवाहों के जरिए भी साबित हो जाती है, और उन गवाहों से जो है इमाम पूछेगा चोरी की कैफियत के बारे में, माहियत के बारे में, जमान के बारे में और चोरी के मकान के बारे में। वजह यह है कि इमाम पूछेगा कि चोरी कैसे की, इसलिए क्योंकि चोरी की बात सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर कतए यद वाजिब नहीं होता, जिसमें हाथ नहीं काटा जाता। मसलन 2 चोर आए, एक मकान से बाहर रहा और एक मकान के अंदर चला गया और उसने अंदर से सामान उठाया और खिड़की के जरिए या किसी दीवार में किए हुए सुराख के जरिए बाहर वाले चोर को पकड़ा दिया, तो इस सूरत में न बाहर वाले चोर का हाथ काटा जाएगा क्योंकि वो अंदर गया ही नहीं, और न अंदर वाले चोर का हाथ काटा जाएगा क्योंकि वो खुद सामान लेकर बाहर नहीं निकला। तो लिहाजा इमाम जो है गवाहों से पूछेगा कि कैसे चोरी की थी। और फिर उनसे पूछेगा कि चोरी किसे कहते हैं, क्योंकि हो सकता है गवाहों के ख्याल में चोरी का खुफिया होना जरूरी ना हो, हालांकि चोरी का तो खुफिया होना जरूरी है भाई। अगर एक चीज जाहिरी तौर पर उठाकर ले जाए उसको तो चोरी नहीं कहा जाता अरबी जुबान में। और नी जमाने के बारे में भी पूछेगा कि कब चोरी की थी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जमाना ज्यादा गुजर चुका हो। और आपने पढ़ा है कि चोरी और जिना वगैरह के मामले में अगर बात पुरानी हो जाए, एक महीना गुजर जाए, तो फिर हद साकित हो जाती है। और नीज इमाम उनसे जगह के बारे में भी पूछेगा कि किस जगह से चोरी की, इसलिए क्योंकि हो सकता है वहां वहां हेरज ना हो, महफूज जगह ना हो, घर के बाहर पड़ी हुई एक चीज को कोई उठा कर ले गया था, तो इसके अंदर तो हिफाजत नहीं है, तो इसमें हाथ नहीं काटा जाता। या हो सकता है इसने दारुल हर्ब के अंदर चोरी ना की हो, और दारुल हर्ब में भी चोरी की हो तो उसके अंदर हाथ नहीं काटा जा सकता। और फिर साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि गवाही के बाद अब काजी ने उन गवाहों की तादील करवानी है कि काबिल एतमाद भी हैं या नहीं, क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि हुदूद का मसला बड़ा नाजुक है, इसके अंदर काजी पर जरूरी है कि वो गवाहों की तादील करवाए, खुफिया तौर पर पता करवाए कि ये गवाह आदिल हैं या आदिल नहीं है। तो इस दौरान जो है इस चोर को काजी जेल में डाल देगा कि कहीं यह भाग ना जाए, और जेल में इसलिए डालेगा क्योंकि इस पर चोरी का इल्जाम लगा हुआ है भाई, दो आदमियों ने गवाही दी है आकर इसके खिलाफ। और फिर यह भी बतलाया था साहिब हिदाया ने कि अगर एक पूरी जमात चोरी करे तो फिर देखा जाएगा कि वो माल जो उन्होंने चुराया है वो हर एक के हिस्से में निसाब के बकदर आ रहा है या नहीं। अगर हर एक के हिस्से में 10 दिरहम या इससे ज्यादा माल आ रहा है तो फिर सबके हाथ काटे जाएंगे, और अगर 10 दिरहम पूरे नहीं आ रहे हर एक के हिस्से में तो फिर किसी का भी हाथ नहीं काटा जाएगा। और मैंने यह भी बतलाया था कि यह भी जरूरी है कि इस जमात के अंदर कोई बच्चा ना हो, कोई मजनून ना हो, या जिससे चोरी की है उसका कोई महरम ना हो। अगर इस जमात के अंदर कोई बच्चा हुआ या मजनून हुआ या उस मालिक का कोई महरम हुआ तो फिर इस सूरत में इनका तो हाथ नहीं काटा जा सकता। जब इनका हाथ नहीं काटा जा सकता तो फिर उन चोरों की जमात में से किसी और का भी हाथ नहीं काटा जा सकता। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। बाबू मा युक्ताउ फीही व मा ला युक्ताउ वला युक्ताउ फी मा यूजदु ताफिहम मुबाहन फी दारिल इस्लाम कल खशबी वल हशीशी वल कसबी वल समकी वल तैरी वल सैदी वल जिरनीखी वल मगरती वल नूरा। बाब मा युक्ताउ फीही व मा ला युक्ताउ, यह बाब है उन चीजों के बयान में कि जिनके अंदर हाथ काटा जाएगा, व मा ला युक्ताउ और जिनमें हाथ नहीं काटा जाएगा। इस बाब के अंदर साहिब हिदाया तफसील बयान फरमाएंगे कि किन चीजों के अंदर चोर का हाथ काटा जाएगा और किन चीजों के अंदर चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा भाई। तो कहते हैं बाब मा युक्ताउ फीही, ये बाब है उन चीजों के बयान में कि जिनके अंदर चोर का हाथ काटा जाएगा, व मा ला युक्ताउ और उन चीजों के बयान में जिनमें हाथ नहीं काटा जाएगा, वला युक्ताउ फी मा यूजदु ताफिहम मुबाहन फी दारिल इस्लाम। ताफिह भाई, ताफिह का माना है मामूली, हकीर और अदना, उसको ताफिह कहते हैं। तो कहते हैं वला युक्ताउ फी मा यूजदु और हाथ नहीं काटा जाएगा उन चीजों के अंदर जो पाई जाती हैं, ताफिहन मुबाहन फी दारिल इस्लामी, इस हाल में कि वो हकीर हो, मुबाह हो दारुल इस्लाम में। वो चीजें जो दारुल इस्लाम में पाई जाती हैं और उनको हकीर और मामूली समझा जाता है और मुबाह समझा जाता है, हर एक उसको ले सकता है, तो इस किस्म की चीजों में हाथ नहीं काटा जाएगा। जैसे आगे साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि लकड़ियां हैं या घास वगैरह है, देखो जंगल है भाई, आम जंगल है, किसी का ममलूक नहीं है, इसमें से जो शख्स भी लकड़ियां इकट्ठी करके लाना चाहे वो ला सकता है, उसके लिए मुबाह है भाई, और इन लकड़ियों को मामूली समझा जाता है भाई। इसी तरह घास है भाई, जो शख्स भी जंगल से घास लाना चाहता है वो उसके लिए लाना मुबाह है और ये मामूली चीज है। तो इस तरह की अगर कोई मामूली चीज चोरी कर ले, चाहे उसकी कीमत 10 दिरहम तक ही क्यों ना पहुंच रही हो, फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ये चीजें मामूली समझी जाती हैं और दारुल इस्लाम में मुबाह होकर आम पाई जाती हैं भाई। तो कहते हैं वला युक्ताउ फी मा यूजदु और हाथ नहीं काटा जाएगा उन चीजों के अंदर जो पाई जाती हैं, ताफिहन इस हाल में कि वो मामूली हैं, मुबाहन और इस हाल में कि वो मुबाह हैं, फी दारिल इस्लामी दारुल इस्लाम में, कल खशबी जैसे कि लकड़ी है, वल हशीशी और घास है, हशीश घास को कहते हैं। तो कहते हैं कल खशबी वल हशीश, जैसे कि लकड़ी है और घास है, वल कसबी और जैसे काना है। काना भाई इसको नरकल कहते हैं, नरकल भाई जिसके जरिए ये कातिब अपने कलम भी बनाते हैं लिखने के लिए, या इसी तरह इनको मिलाकर ये खिड़कियों या दरवाजों के आगे पर्दे की सूरत में बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई, नरकल। और ये बांस के नस्ल का पौधा है, अलबत्ता बारीक बारीक होते हैं। तो कहते हैं वलका सभी, और जैसे के काना है, व समकी और जैसे मछली है, व तैरी और परिंदे हैं, व सैदी और शिकार है। भाई देखो मछली जो है दरिया के अंदर है, जो शिकार करना चाहे वो शिकार कर सकता है। इसी तरह परिंदे जो हैं, जो शिकार करना चाहे कर सकता है। इसी तरह और शिकार है जंगल के अंदर, तो जो शिकार करना चाहे वो कर सकता है, वो उसका मालिक बन जाता है। तो इस किस्म की चीजों में हाथ नहीं काटा जाएगा। चाहे किसी ने दरिया से मछली पकड़ी और दूसरा शख्स चुरा कर ले गया और इस मछली की कीमत 10 दिरहम से ज्यादा थी, फिर भी इसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। वसमकी व तैरी व सैदी, वसमकी और जैसे मछली है, व तैरी और जैसे के परिंदे हैं, व सैदी और जैसे के शिकार है। देखो मछली, परिंदे और शिकार, जो भी इनको शिकार कर ले वो इनका मालिक बन जाता है। तो देखो ये दारुल इस्लाम में मुबाह पाई जाती हैं भाई, ये चीजें दारुल इस्लाम में मुबाह पाई जाती हैं। तो ये मामूली चीजें हैं, दारुल इस्लाम में आम पाई जाती हैं, जो इनको पकड़ना चाहे पकड़ सकता है। तो कहते हैं वसमकी और जैसे कि मछली है, व तैरी और परिंदे हैं, व सैदी और शिकार है, व जिरनीखी। जिरनीख भाई इसे उर्दू में हड़ताल कहते हैं। हड़ताल ये जमीन की जिंस के कोई खास पत्थर वगैरह हैं और शफाफ होती है, यानी जैसे शीशा शफाफ होता है। तो ये शीशे की तरह पूरी शफाफ तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ शफाफ सी होती है भाई। तो ये जिरनीख जो है ये तो दारुल इस्लाम के अंदर आम पहाड़ों के अंदर पाई जाती है, तो लिहाजा इसमें भी अगर कोई चोरी कर लेता है उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वज़ीरनी, और जैसे कि हड़ताल है, वल मगाराती, मगारा और मगरा, गाइन पर फतहा भी सही है और सुकून भी। मगरा और मगरा ये इन्होंने लिखा है कि ये कोई सुर्ख रंग की मिट्टी है, सुर्ख रंग की मिट्टी है, यानी जमीन की जिंस की कोई चीज है। तो लिहाजा ये भी दारुल इस्लाम के अंदर आम पाई जाती है, इसकी चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वल मगारती, और जैसे कि मगारा है, व नूरती, नूरा याद रखो चूना भाई, चूना याद रखो, ये जो चूना है जिसके जरिए दीवारों पर सफेदी वगैरह की जाती है, ये भी जमीन की जिंस की एक खास किस्म की मिट्टी है भाई। अब चूना भी ममलिकत इस्लामिया के अंदर आम पाया जाता है और ममलिकत इस्लामिया के अंदर मुबाह होकर मिलता है और इसको मामूली समझा जाता है। तो इन सब चीजों के अंदर अगर चोरी कर लेता है, चाहे उस चीज की कीमत 10 दिरहम तक ही क्यों ना पहुंच रही हो, इनके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ये मामूली चीजें हैं भाई। आगे देखिए, कहते हैं वल असलु फीही हदीस आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और असल जो है इसके अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है। कालत वो फरमाती हैं, कानतिल यदुला तुक्ताउ अला अहदि रसूलिल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलाम फी शैइ ताफीही, के हाथ जो है हुजूर अलैहि सलाम के जमाने में मामूली चीज पर नहीं काटा जाता था। माना समझ में आ गया। तो कानतिल यदुल्ला तुक्ताउ, हाथ नहीं काटा जाता था, अला अहदि रसूलिल्लाहि अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के जमाने में, फी शैइ ताफीही, हकीर और मामूली चीज में। हदीस यहीं तक है। आगे साहिब हिदाया फरमाते हैं अयिल हकीरी, अयिल हकीरी, ये अताफिह का माना बयान कर रहे हैं कि ताफिह का क्या माना है, अयिल हकीरी, यानी कि हकीर, हकीर चीजों में हुजूर के जमाने में हाथ नहीं काटे जाते थे। वमा यूजदु जिंसुहु मुबाहन फिल असली, और वो चीज कि उसकी जिंस पाई जाती है मुबाहन, मुबाह होकर, वो चीज कि उसकी जिंस मुबाह होकर पाई जाती है, फिल असली भी सूरत ही, असल के अंदर उसकी अपनी सूरत पर, गैर मरहूब इन फी ही, इस हाल में कि वो गैर मरहूब हो, हकीर उन, वो चीज हकीर है। बतलाना चाहते हैं हकीर चीज किसे कहते हैं, कुछ मिसालें तो जिक्र कर दी, लेकिन आप बतलाना चाहते हैं साहिब हिदाया कि वो चीज जो अपनी शक्ल पर मुबाह होकर दारुल इस्लाम में पाई जाती है और लोग उसमें ज्यादा रगबत नहीं करते तो वो हकीर है। भाई देखो, किसी को कहीं पर चूना मिल जाए, अब चूने के अंदर तो कोई रगबत नहीं करेगा, कोई एक आध आदमी होगा जिसको रगबत होगी, वो इसको लेकर जाएगा, आम लोग परवाह भी नहीं करेंगे उसकी। इसी तरह और कोई जिरनीख मिल जाती है पहाड़ के अंदर, आम लोग परवाह भी नहीं करते। अब जैसे शिकार, जो भी जंगल में जाएगा वो शिकार कर सकता है, लेकिन हर एक उसमें रगबत नहीं करता। तो ये चीजें जो है इनको लोग मामूली समझते हैं। अगर कोई कीमती चीज होती फिर तो सारे लोग उसमें रगबत करते। तवज्जो है, तो ये चीजें मामूली हैं भाई। तो कहते हैं वमा यूजदु जिंसुहु मुबाहन फिल असली बिसूरती ही, और वो चीज के उसकी जिंस मुबाह होकर पाई जाए फिल असली बिसूरती ही, असल के अंदर अपनी सूरत पर। वो चीज जो असल में अपनी ही सूरत पर मुबाह होकर पाई जा रही है, गैर मरगूब इन फी ही, इस हाल में कि वो मरगूब भी नहीं है, हकीर उन, ये हकीर है। ये हकीर का लफ्ज क्या है? ये खबर है मायूजदू के लिए। तो इस किस्म की चीज हकीर है। तकिल्लुर रगबातु फीही, रगबतें इसके अंदर कम होती हैं। व तिबाउ ला तज़न्नु बिही, ज़न्ना या ज़न्नु के माने हैं बुखल करना, कंजूसी करना। व तिबाउ ला तज़न्नु बिही, और तबीयतें इसके अंदर बुखल नहीं करती। फकल्लमा यूजदू अख्ज़ुहु अला कुरहिम मिनल मालिकी, फकल्लमा यूजदू, बस बहुत कम पाया जाता है। अख्जुहू, इसको ले लेना, अला कुरहिन, जबरदस्ती, मिनल मालिकी, मालिक से। तो यानी ये चीजें मुबाह होकर दारुल इस्लाम में पाई जाती हैं, उमूमन मालिक से लोग वैसे ही ले लेते हैं, कोई मालिक से जबरदस्ती या नापसंदीदगी के तौर पर ले ले, ऐसा कम ही होता है भाई। तो कहते हैं फकल्लमा यूजदु अख्ज़ुहु अला कुरहिन, बस बहुत कम ऐसा होता है कि इसको ले लिया जाए, अला कुरहिन, कुरहुन और करहुन का माना है नापसंदीदगी भाई, क्योंकि इसको ले लिया जाए अला कुरहिन, नापसंदीदगी पर, मिनल मालिकी, मालिक से। फला हाजत इला शरई जाजिरी, लिहाजा कोई जरूरत नहीं है किसी जाजिर के मशरू करने की। भाई जाजिर वो चीज जो डांटने वाली है, धमकाने वाली है, यानी सजा, सजा की जरूरत वहां पेश आती है जब एक चीज में लोग रगबत करते हैं और वो जुर्म ज्यादा पाया जाता हो, तो फिर वहां शरीयत लोगों को रोकने के लिए सजा मुकर्रर करती है। लेकिन ये चीजें जो है इनमें तो लोगों की रगबतें भी कम हैं और उमूमन मालिक की रजामंदी से ही मालिक से ले लिया जाता है, लिहाजा इसके अंदर जाजिर यानी किसी सजा को मशरू करने की कोई हाजत और जरूरत नहीं है भाई। कहते हैं फला हाजत इला शरई जाजिरी, लिहाजा किसी धमकाने वाली चीज के मशरू करने की कोई हाजत नहीं है। व लिहाजा लम यजिब अल-क़त्उ फी सरिक़ति मा दूना निसाबी, व लिहाजा, और इसी वजह से लम यजिब अल-क़त्उ, कि हाथ का काटना वाजिब नहीं है, फी सरिक़ति मा दूना निसाबी, निसाब से कम चोरी के अंदर। कहते हैं इसी वजह से निसाब से कम चोरी के अंदर हाथ नहीं काटा जाता, क्योंकि निसाब से कम जो चीज होगी वो मामूली है, और यहां भी ये चीजें भी क्या हैं? मामूली हैं भाई। तो कहते हैं वली हादा लम यजिब अल-क़त्उ, और इसी वजह से हाथ का काटना वाजिब नहीं होता, फी सरिक़ति मा दून निसाबी, निसाब से कम की चोरी में। वली अन अल-हिफ़्ज़ फीहा नाक़िसुन, और नीज इसलिए क्योंकि इनके अंदर हिफाजत नाक़िस है। हिफ़्ज़ का क्या माना? हिफाजत, या इसी तरह महफूज जगह, दोनों माना आते हैं इसके। वली अन अल-हिर्ज फीहा नाकिसुन, और इसलिए क्योंकि इन चीजों के अंदर हिफाजत नाकिस है, हिफाजत नाकिस है। अब किस तरह हिफाजत नाकिस है इनमें, वो भी साहिब हिदाय आगे बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं अला युरा, क्या ये बात मालूम नहीं है कि अन अल-खशब तुल्का अलल अबवाबी, कि लकड़ियां जो है वो घर के दरवाजे पर डाल दी जाती हैं। जो लोग जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं वो घर के अंदर छुपा कर संभाल कर नहीं रखते, बल्कि घर के दरवाजे पर भी रख दी जाती हैं वो लकड़ियां। मालूम हुआ इनके अंदर हिफाजत नाकिस है भाई। तो कहते हैं अला युरा, क्या ये बात मालूम नहीं है कि अन अल-खशब तुल्का अलल अबवाबी, कि लकड़ियां जो हैं उनको दरवाजों पर डाल दिया जाता है। व इन्नमा युदखलु फिद्दारि लिल इमारति, और इनको दाखिल किया जाता है घर के अंदर, लिल इमारति, तामीर के लिए, ला लिल इहराजी, न के महफूज करने के लिए। भाई घर के अंदर जो लकड़ियां लेकर जाते हैं वो हिफाजत के लिए नहीं लेकर जाते, बल्कि अगर कोई तामीर वगैरह करनी हो तो फिर उस वक्त लकड़ियां लेकर जाते हैं, कोई छत वगैरह बनानी है या कोई और चीज बनानी है तो फिर तामीर के लिए लकड़ी घर के अंदर लेकर जाते हैं, वरना अमूमन ये लकड़ियां आम जो जलाने वाली होती हैं ये दरवाजे पर ही डाल दी जाती हैं। भाई तो कहते हैं इन नमा युद्ध खलुफी दारी लिल इमारती ला लिल एहराजी, और घर के अंदर तो लकड़ियां तामीर के लिए ही दाखिल की जाती हैं, ला लिल एहराजी ना के जमा करने और महफूज करने के लिए, एहराज का माना है जमा करना महफूज करना, ला लिल एहराजी ना के जमा करने और महफूज करने के लिए, व तैरा यतीरो व तैरा यतीरो, तैर पर नसब पड़े भाई ये इसका आतफ करें, ये जो पीछे आया अला युरा अन्नल खशबा, तो अन्ना का जो इसम है उसी पर तैर का भी आतफ कर दें, ये सब के अंदर हिर्ज नाकिस है। साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं कि लकड़ियों में देख लो हिर्ज नाकिस है, इनको दरवाजों पर ही लोग डाल देते हैं, चाहे हर एक नहीं डालता लेकिन बहुत से लोग दरवाजों पर भी डाल देते हैं। और इसी तरह परिंदा जो है, परिंदा वो तो उड़ जाता है, परिंदा जो है उड़ जाता है, परिंदा कोई शिकार करके ले भी आया जरा हाथ से निकला वो तो फौरन उड़ जाएगा, मालूम उसके अंदर भी हिर्स नाकिस है। इसी तरह शिकार जो है, शिकार को आप पकड़ के तो ले आए लेकिन जरा हाथ से छूटा वो तो फौरन भाग जाएगा, तो मालूम उसके अंदर भी हिर्स नाकिस है। तो कहते हैं वह तैरा या तीरू, और क्या ये बात मालूम नहीं है कि परिंदा जो है वो उड़ जाता है, व सैदा या फिर रू, व सैदा यहां पर भी नसब पड़े, व सैदा या फिर रू, और शिकार जो है वो भाग जाता है, व कदा शिरकतुल आम मतुल्लती कानत फी ही वह हुआ अला तिल का सिफती तू रिसु शुभहाता। ये जरा तर्जमा मुश्किल है, जुमला जरा लंबा है, इसलिए भाई भाई देखिए जो शिकार है इसमें शिरकत आम्मा है, इसमें शिरकत आम्मा है, यानी जो शिकार कर ले वो शिकार उसी का हो गया, बात समझ में आ गई। हदीस में आता है शिकार उसका है जिसने उसको पकड़ लिया, तो मालूम हुआ शिकार के अंदर तमाम मुसलमानों की शिरकत है भाई, जो भी पकड़ लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। तो लिहाजा जब शिकार के अंदर तमाम मुसलमानों की शिरकत है तो अगर कोई पकड़कर ले भी आया और फिर कोई इसे चोरी कर लेता है तो इस सूरत के अंदर भी शुबा तो मौजूद है, ये तो वो चीज थी जिसमें सबका हक था और उन सब में से ये चोर भी था भाई, तो लिहाजा यहां इस माल के अंदर क्या आ गया, शुबा आ गया, और शुबे से हद साकित हो जाती है। तो कहते हैं वकदा शिरकतुल आम्मतु, और इसी तरह वो आम शिरकत अल्लती कानत फी ही जो इस शिकार के अंदर थी, जो इसी तरह वो आम शिरकत जो इस शिकार के अंदर थी, दो तीन लफ्जों के बाद आगे आ रहा है तू रिसु शुभा था, ये शुबा पैदा करता है। इसी तरह वो आम शिरकत जो शिकार के अंदर पाई जा रही थी, तू रिसु शुभा था, ये शुबा पैदा करता है। और दरमियान में बतलाया वह हुआ अला तिल की सिफती, इस हाल में कि वो शिकार इसी सिफत पर था, भाई जिसने शिकार को पकड़ा है शिकार तो इसी सिफत पर था कि उसमें ममलिकत इस्लामिया के तमाम लोगों की शिरकत थी भाई, तो इसी सिफत पर उसने शिकार को पकड़ा है, तो इस शिरकत आम्मा ने उसमें शुबा पैदा कर दिया, बात समझ में आ गई। तो ये वहुआ अला तिल का सिफत, ये दरमियान में जुमला हाल है, तो इसकी वजह से कलाम तवील हो जाता है, माना समझना मुश्किल हो जाता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वकदा शिरकतुल आम मतुल्लती कानत फी ही, और इसी तरह वो आम शिरकत जो शिकार के अंदर थी, वह हुआ अला तिल का सिफती, इस हाल में कि शिकार जो है उसी शिरकत आम्मा वाली सिफत पर था, तो ये शिरकत आम्मा तू रिसु शुबहा था, वो इस शिकार के अंदर शुबा पैदा कर देता है, वल हद यंदरी उबिहा, और हद जो है वो तो शुबे की वजह से साकित हो जाती है। आगे देखिए वयद खुलूफ इसम अकिल मालिहू व तरीयू, और मछली के अंदर दाखिल है अल मालिहू नमकीन व तरीयू और ताजा। मालिह भाई, मालिह का माना है नमकीन, मुराद है नमकीन पानी की मछली। मैंने आपको बतलाया था समुंदर का पानी बे इंतहा नमकीन होता है, यहां तक कि उसका एक घूंट पीना जो है वो बड़ा मुश्किल है, इतना ज्यादा नमक होता है उसमें। और जबकि ये आम दरिया और नदी नालों का पानी ये तो मीठा पानी है, इसको तो आराम से आदमी पी सकता है। तो मालिह से मुराद वो नमकीन पानी की मछली है जिसे समुंदर से पकड़ा जाए, और तरीयुन कहते हैं ताजा और खुशगवार को, मुराद है ताजा और खुशगवार पानी वाली मछली, यानी जिसे दरियाओं वगैरह से पकड़ा गया हो। तो कहते हैं वयद खुलुफ हिस्सा मकिल मालिहु व तरीयु, और मछली के अंदर दाखिल है अलमालिहु व तरीयु, नमकीन पानी वाली मछली भी, व तरीयु और ताजा पानी यानी खुशगवार पानी वाली मछली भी, यानी दोनों का एक ही हुक्म है। भाई बात समझ में आ रही है, किसी ने मछली पकड़ी है या कोई शिकार करके ले आया और वो दूसरा आदमी चोरी करके ले गया, अब वो 10 दिरहम से ज्यादा की मछली थी फिर भी हाथ नहीं काटेंगे
जी।
क्योंकि ये मछली इसमें तो शिरकत आमत थी और उसकी वजह से शुबा आ गया भाई। तो कहते हैं वयद खुलुफ हिस्सा मकिल मालिहु व तरीयु, और मछली के अंदर दाखिल है नमकीन पानी वाली मछली और ताजा पानी वाली मछली, व फी तैरी, और परिंदों में, भाई परिंदों का जिक्र आया था मतन में कि परिंदे जो हैं ये भी आम और मामूली पाए जाते हैं ममलिकत इस्लामिया में, जो इनको शिकार कर ले वो इसका मालिक बन जाता है। तो परिंदों के अंदर यह मुर्गी भी दाखिल है, बतख भी दाखिल है, और इसी तरह कबूतर भी दाखिल हैं। लिहाजा कोई किसी के कबूतर चुरा कर ले जाए या कोई किसी की मुर्गी चुरा कर ले जाए, चाहे 10 दिरहम से ज्यादा ही कीमत क्यों ना हो, हाथ नहीं काटा जाएगा भाई, क्योंकि ये भी ममलिकत में पाई जाने वाली आम चीजों की जिंस में से हैं भाई। तो कहते हैं वफित पैरी, और दाखिल है परिंदों के अंदर अद्दजाजू मुर्गी, वल बत्तू और बतख, वल हमामू और कबूतर, लिमा जकरना, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दी भाई कि इनके अंदर हिर्स नाकिस है भाई। आगे देखिए वल इतलाकी कौली अलैहि सलातु वस्सलामु ला कत्अ फित तैरी, और हुजूर अलैहि सलाम का कौल मुतलक होने की वजह से कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है ला कत्अ फित तैरी, परिंदे के अंदर कता नहीं है, यानी परिंदे की चोरी में कतए याद नहीं है, और यह मुतलकन है, इसके अंदर कोई कैद नहीं है कि घर के पालतू परिंदे हों यानी मुर्गी बत्तख और कबूतर वगैरह तो उनमें हाथ काटा जाएगा, यहां कोई तफसील जिक्र नहीं है भाई। तो कहते हैं वली तलाक कौली अलैहि सलातु वसलाम, और हुजूर अलैहि सलाम के कौल के मुतलक होने की वजह से कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ला कत्अ फित तैरी के परिंदे के अंदर हाथ का काटना नहीं है। वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु यजिबुल कत्उ फी कुल्ली शैइन, कि हाथ का काटना वाजिब है हर चीज के अंदर, इल्ला तीन व तुराब व सिरकीन। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह से एक रिवायत है, वो फरमाते हर चीज में हाथ काटा जाएगा, चाहे कोई किसी की मछली चोरी करे, चाहे मुर्गी चोरी करे, कोई भी चीज हो जब उसकी कीमत 10 दिरहम तक पहुंचती हो, सिवाय चंद चीजों के। वो फरमाते हैं कोई मिट्टी चोरी कर ले किसी की
जी।
या किसी ने गारा बनाया, मिट्टी में पानी मिलाकर गारा बनाया जाता है दीवारें बनाने के लिए या छत बनाने के लिए, तो अगर किसने किसी की मिट्टी चोरी की या गारा चोरी किया या सिरकीन, भाई सिरकीन कहते हैं गोबर को, गोबर भाई ये गाय भैंस वगैरह का जो फुजला है जिसको जलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जिसको खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तीन चीजें जो हैं मिट्टी, गारा और गोबर, इनके अलावा बाकी हर चीज के अंदर हाथ काटा जाएगा। ये एक रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से, और यही कौल है इमाम शाफई रहिमहुल्लाह का भी। तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला से रिवायत है कि अन्नहु यजिबुल कत्उ फी कुल्ली शैइन, के हाथ का काटना वाजिब है हर चीज में, इल्ला तीना, तीन कहते हैं गारे को भाई, वो मिट्टी जिसमें पानी मिलाया गया हो तामीर वगैरह के लिए, इल्ला तीना मगर गारे के अंदर, व तुराबा और मिट्टी के अंदर, व सिरकीना और गोबर में, वह कौलु शाफिई रहिमहुल्लाह, और यही कौल है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी। वल हुज्जतु अलैहिम मा ज़करना, और उनके खिलाफ दलील वो है जो हमने जिक्र कर दी कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मामूली चीजों के अंदर हाथ नहीं काटा जाता था। आगे देखिए काल वला कत्अ फी मा यतसारउ इलैहिल फसाद, अब उन चीजों का बयान आ गया भाई कि जो जल्दी खराब होती हैं, जो चीज जल्दी खराब हो उसकी चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा, चाहे वो 10 दिरहम से ज्यादा की ही क्यों ना हो भाई। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला कत अफीमा यतसारउ इलैहिल फसादु, और हाथ का काटना नहीं है उन चीजों के अंदर कि जो जल्दी खराब हो जाती हैं, कल लबनी जैसे कि दूध है, वल लहमी और जैसे कि गोश्त है। भाई दूध है, दूध को आप रखेंगे वो तो एक दिन के अंदर खराब हो जाएगा, गोश्त है गोश्त भी एक दिन के अंदर ही खराब हो जाएगा। तो कहते हैं कल्ला बनी वल लखमी जैसे कि दूध है और गोश्त है, वल फवा की है रतबती और इसी तरह ताजा फल जो हैं। भाई कुछ तो खुश्क फल हैं, बादाम अखरोट वगैरह, वो तो काफी मुद्दत तक महफूज रखे जा सकते हैं, लेकिन ये जो ताजा फल है भाई, सेब है, अनार है, नाशपाती है, नाशपाती वगैरह, ये तो बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो कहते हैं वल फवा के है रतबती और ताजा फल जो हैं, लिकाउलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के फरमाने मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया ला कत्अ फी समरिन वला कसरिन, ला कत्अ फी समरिन वला कसरिन, के हाथ का काटना नहीं है फी समरिन फलों में, वला कसरिन और कसर के अंदर। अब इस कसर से क्या मुराद है, साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि कसर से यहां तो मुराद है जुमार भाई, और बाजों ने कहा इससे मुराद वदी है भाई। जुमार भाई याद रखो, ये जो खजूर का पौधा होता है इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में शाखें निकलती हैं, तो ये जो तने का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको अगर काटा जाए तो इसके अंदर एक सफेद रंग की चीज होती है भाई, नरम सी। तो ये खजूर के तने के ऊपर वाले हिस्से में इसको काटा जाए तो इसके अंदर एक नरम सी चीज होती है, सफेद रंग की, चर्बी की तरह बिल्कुल सफेद होती है। तो खजूर के दरख्त को जब लोग गिराएं तो ये निकाल कर खाते हैं भाई। तो जैसे इंसानी बदन के अंदर सबसे ऊपर वाले हिस्से में सर के अंदर दिमाग है भाई, तो इसी तरह ये खजूर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में सफेद चीज होती है और इसको कल्बुन नखला कहते हैं, खजूर का दिल है भाई। ये अगर आप निकाल दें तो खजूर का दरख्त खुश्क हो जाता है, खत्म हो जाता है। खजूर का पूरा दरख्त सही है लेकिन इसके ऊपर वाले हिस्से से आप ये चीज निकाल दें तो खजूर का दरख्त खुश्क हो गया। जैसे इंसान का दिल या दिमाग निकाला जाए वो मर जाएगा भाई, इसी तरह ये खजूर का दरख्त भी फिर खुश्क हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको शहमुन नखल भी कहते हैं, शहमुन नखल यानी खजूर की चर्बी, या इसी तरह कल्बुन नखल भी कहते हैं कि खजूर का दिल है भाई। ये तो था जुम्मार। हदीस में क्या आया कि समर के अंदर यानी फल में भी हाथ नहीं काटा जाएगा और कसर में भी। साहिब हिदाया माना बयान फरमाएंगे कि कसर से मुराद जुम्मार है, यानी वो खजूर के अंदर वो जो सफेद चीज होती है, और बाजों ने कहा कि कसर से मुराद वदी है। वदी, वदी याद रखो, वदी जो है खजूर के छोटे पौधे को कहते हैं। ये भी बड़ी मेहनत से तैयार करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं इनको निकालते हैं बड़ी एहतियात से और दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं जहां लगाना मकसूद होता है। तो हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं ला कत्अ फी समरिन वला कसरिन, के हाथ का काटना नहीं है फल के अंदर और न कसर के अंदर। वल कसरुल जुम्मारु, और कसर जो है वो जुम्मार को कहते हैं, यानी वो जो खजूर के तने के ऊपर वाले हिस्से में वो जो सफेद चर्बी जैसी चीज पाई जाती है। तो कहते हैं वलका सरुल जुम्मारु, और कसर जो है वो जुम्मार है। वकील अल वदीयु, और कहा गया है कि वो वदी है। वदी से मुराद खजूर के छोटे पौधे हैं भाई, तो बाजों ने कहा वो छोटे पौधे मुराद हैं। मालूम हुआ खजूर के छोटे पौधे कोई चुरा ले या वो जुम्मार कोई चुरा ले तो उस पर कतए याद नहीं है, चाहे उनकी कीमत 10 दिरहम से ज्यादा ही क्यों ना हो भाई। وقال عليه الصلاه والسلام, और नीज हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं ला कत्अ फी الطعام, के طعام के अंदर हाथ का काटना नहीं है। طعام भाई याद रखो, अरबी जुबान में ये जो गंदम है, ये जो गल्ला है, इसको भी طعام कहते हैं। ये जो गल्ला है इसको भी طعام कहते हैं। अब हदीस में आया ला कत्अ फी الطعام, इससे क्या मुराद है? एक तो ताम, वो जो खाना तैयार किया जाता है खाने के लिए, उसको भी क्या कहते हैं? ताम। और गल्ले को भी क्या कहते हैं? ताम। तो साहिब हिदाया अब आपको बतलाएंगे कि यहां ताम से मुराद वो आम खाना है जिसे खाने के लिए तैयार किया जाता है। आप खाना तैयार करते हैं भाई, ये भी देखो जल्दी खराब हो जाता है, एक ही दिन में खाना खराब हो जाएगा, जबकि गंदुम को तो अरसे तक महफूज रखा जा सकता है। तो यहां ताम से मुराद जो है वो खाना है जिसको खाने के लिए तैयार किया गया हो। भाई तो कहते हैं वकाल अलैहि सलातु वस्सलाम, और हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लाकत अफी तामी के ताम के अंदर हाथ का काटना नहीं है। वल मुरादु वल्लाहु आलमु मा यतसारउ इलैहिल फसाद। देखो इससे मुराद क्या है, मैंने बतलाया ताम गंदुम को भी कहते हैं और ताम वो खाना जो तैयार किया गया है खाने के लिए। तो अब इस हदीस में ताम से क्या मुराद है, तो साहिब हिदायत बतलाएंगे कि हकीकत तो अल्लाह ही जानते हैं कि इससे क्या मुराद है, लेकिन फुकहा फरमाते हैं कि इससे मुराद वो चीज है जो जल्दी खराब होती है, यानी वो खाना जिसको खाने के लिए तैयार किया गया है। फुकहा फरमाते हैं इससे यह मुराद है, हकीकी माना तो अल्लाह ही जानते हैं लेकिन फुकहा फरमाते हैं इससे यह खाना मुराद है। तो यह माना है वल मुरादु वल्लाहु आलम। देखो वल्लाहु आलम को जरा निकाल दें, वल मुरादु मा यतसारउ इलैहिल फसादु, और इस हदीस के अंदर ताम से मुराद वो चीज है यतसारउ इलैहिल फसादु जिसकी तरफ फसाद जल्दी आता है। कल मुहैया लिल अकली, जैसे वो जिसको तैयार किया गया हो खाने के लिए। कल मुहैया लिल अकली मिनहु, जैसे वो जिसको खाने के लिए तैयार किया गया हो। भाई तो वल मुराद के बाद साहिब हिदाया ने फरमाया वल्लाहु आलम कि मुराद इससे वो चीज है जो जल्दी खराब हो जाए, और दरमियान में बतला दिया वल्लाहु आलम कि अल्लाह खूब जानते हैं। हमारी समझ में तो यही बात आई है, फुकहा की समझ में तो यही आया है, बाकी हकीकत हाल अल्लाह ही जानते हैं। भाई तो कहते हैं वल मुराद, और इससे मुराद जो है वल्लाहु आलम और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। मा यतसारउ इलैहिल फसाद, इससे मुराद वो चीज है कि जिसकी तरफ खराबी जल्दी आती है, यानी जो चीज जल्दी खराब हो जाती है। कल मुहैया लिल अक्ल मिनहु, जैसे कि वो चीज जिसको तैयार किया गया है उसमें से खाने के लिए। वमा फी मानाहु, या जो इसके माना में हो। कल लहमी वस्समरी, जैसे कि गोश्त है और फल है। लिअन्नहु युक्तउ फिल हिंतति वस्सुक्करी इजमान। भाई क्या वजह है, क्या वजह है कि आपने ताम से वो चीज मुराद ली जो जल्दी खराब हो जाती है, जिसको खाने के लिए तैयार किया गया है। कहते हैं वजह यह है कि गंदुम की चोरी या इसी तरह खजूर की जो चोरी है उसमें बिल इत्तेफाक और बिल इजमा चोर का हाथ काटा जाता है। तो मालूम हुआ गंदम की चोरी में तो बिल इत्तेफाक हाथ काटा जाता है, तो मालूम हुआ इस हदीस में जो ताम का लफ्ज आया उससे गंदम मुराद नहीं है। तो यह माना है लिअन्नहु युक्तउ फिल हिंतति वस्सुक्करी। हिंता कहते हैं गंदम को, सुक्कर भाई ये कोई खास किस्म की उमदा खजूर है, उसको सुक्कर कहते हैं। वैसे तो आजकल जदीद अरबी में सुकर चीनी को कहते हैं, लेकिन खजूर की एक खास नौ है आला किस्म की, उसको भी सुकर कहा जाता है। तो कहते हैं लिअन्नहु युक्तउ फिल हिंतति वस्सुक्करी इजमाअन, इसलिए क्योंकि गंदुम और उमदा खजूर के अंदर तो बिल इजमा हाथ काटा जाता है। आगे देखिए वकाल शाफिई रहमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं युक्तउ फीहा कि इन चीजों के अंदर भी हाथ काटा जाएगा, गोश्त दूध ताजा फल इन सब में हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वकाल शाफिई रहमहुल्लाह युक्तउ फीहा कि इन सब चीजों के अंदर हाथ काटा जाएगा। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है ला कता फी समरिन वला कसरिन फइदा आवाहुल जरीनु अविल जिरानु कुतिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इस कौल की वजह से कि आपने फरमाया ला कता फी समरिन वला कसरिन के समर और कसर के अंदर हाथ का काटना नहीं है, समर और कसर के अंदर हाथ का काटना नहीं है। फईदा आवाहुल जरीनु, आवा यूवी का माना ठिकाना देना। फईदा आवाहुल जरीनु, जब जरीन उसको ठिकाना दे दे। अविल जिरानु, ये रावी को शक आया हद के हदीस के अंदर जरीन का लफ्ज है या जिरान का लफ्ज है, कि जब उसको जरीन या जिरान ठिकाना दे दे कुतिया फिर हाथ काटा जाएगा। हदीस में आया कि समर और कसर में हाथ नहीं काटा जाएगा, मगर उस वक्त जब जरीन उस फल को या उस कसर को ठिकाना दे दे। और याद रखो जरीन जो है वो उस जगह को कहते हैं जहां पर फल को खुश करने के लिए उसको धूप में रखा जाता है और उसको फिर महफूज किया जाता है। तो यूं कहो स्टोर कह लें, बात समझ में आ गई, जहां फल को खुश्क भी किया जाता है और स्टोर भी उसको किया जाता है। तो जरीन के अंदर जब फल पहुंच गया उसके अंदर हाथ काटा जाएगा, यह हदीस के अंदर आया। फिर तर्जमा देख ले, हदीस में क्या आया, ला कता फी समरी वला कसरीन, के फल और कसर के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। फइदा आवाहुल जरीन अविल जीरान कुतिया, लेकिन जब उस फल को या उस कसर को जरीन ठिकाना दे दे तो फिर हाथ काटा जाएगा। मालूम हुआ जब महफूज कर लिया अब हाथ काटा जाएगा, जब क्या कर लिया, महफूज कर लिया, तो अब 10 दिरहम के बकदर चोरी की है तो हाथ काटा जाएगा। यह किसकी दलील है, इमाम शाफई रहमहुल्ला की। भाई तो अब जवाब देंगे साहिब हिदायत हमारी तरफ से, कुल ना हम कहते हैं अखरजहू अला विफाकिल आदती, अखरजहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को अदा फरमाया है, तर्जमे पे नजर है अखराजाहू, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो कौल जिक्र फरमाया है अखराजाहू इसको अदा फरमाया है, अला विफाकिल आदती आदत के मुआफिक, अरबों की आदत के मुआफिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस कलाम को अदा फरमाया है। वजह यह क्योंकि आदतन आम तौर पर जरीन के अंदर जो है अरब खुश्क फल को महफूज करते थे, जरीन के अंदर खुश्क फल को महफूज करते थे, हर चीज को नहीं, खजूर को भी धूप लगवाकर खुश्क कर लेते थे कि वो जल्दी खराब ना हो, तो खुश्क फल को महफूज करते थे। और खुश्क फल में तो हम भी कहते हैं कि उसके अंदर हाथ काटा जाएगा, हम तो ताजा फल की बात कर रहे हैं। तो ये माना है कुल ना हम कहते हैं अखरजहू अला विफाकिल आदती, कि हुजूर अलैह सलाम ने ये कलाम जो अदा फरमाया है ये अरबों की आदत के मुआफिक आपने ये कलाम फरमाया है। वल्लदी युवीहिल जरीन फी आदतिहिम, और वो चीज जिसको ठिकाना देता है जरीन, फी आदतिहिम अरबों की आदत में, वल याबिसु मिनस समरी, वो फल में से जो खुश्क हो वो होता है, वफीहिल कतउ, और उसके अंदर तो हमारे नजदीक भी कता है, हाथ काटा जाएगा। आगे देखिए, काला वला कता फिल्फा की हती अल शजरी व जर इल्लदी लम युहसद, सूरत मसला यह कि बाग के अंदर दरख्त पर फल लगे हुए हैं, कोई चोरी करके ले गया, तो कहते हैं इस सूरत में चाहे 10 दिरहम से ज्यादा ही कीमत क्यों ना हो फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां पर हिफाजत नहीं है, बाग के अंदर लगा हुआ है। यह इसी तरह खेती है, कोई किसी की खेती काट कर ले गया तो चाहे 10 दिरहम से ज्यादा ही क्यों ना हो फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि हिफाजत नहीं है। और हमने आपको बतलाया था कि हाथ तब काटा जाता है जब महफूज जगह से चोरी की जाए। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला कत अफिल फाकिहति अल शजरी, और हाथ का काटना नहीं है उन फलों के अंदर जो दरख्त पर हों, व जर इल्लदी लम युहसद, और उस खेती के अंदर जिसको अभी काटा नहीं गया इनमें हाथ नहीं काटा जाएगा, लिआदमिल इहराजी, क्योंकि इनके अंदर हिफाजत नहीं है। भाई वला युक्तौ फिल अशरिबतिल मुतरिबती, मुतरिब भाई मुतरिब त्वा है भाई त्वाज़वा, मुतरिब का माना है मस्ती आवर, वो मशरूबात जो मस्ती आवर हैं यानी नशा आवर हैं, जो नशा आवर हैं। तो कहते हैं वला युक्तौ फिल अशरिबतिल मुतरिबती, और हाथ नहीं काटा जाएगा नशा आवर मशरूबात के अंदर, यानी कोई नशावर मशरूब चोरी कर ले, किसी की शराब चोरी कर ली या कोई और नशावर मशरूब चोरी कर लिया, चाहे 10 दिरहम से ज्यादा ही कीमत क्यों ना हो फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां वो तावील करेगा चोर, वो कहेगा ये चीजें तो हराम हैं, मैं इनको इसलिए चोरी करके ले गया था ताकि मैं इनको गिरा दूं बहा दूं। भाई तो कहते हैं वला युक्तौ फिल अशरिबतिल मुतरिबती, और नशावर मशरूबात के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, लिअन्न सारिक यता अव्वलु फी तनावुलिहल इराकता, लिअन्न सारिक, इसलिए क्योंकि चोर जो है यता अव्वलु वो तावील करेगा, फी तनावुलिहा इसके लेने में, अल इराकता बहा देने का, कि वो इसको जमीन पर बहाना चाहता है, वली अन्न बाजहा लैसा बिमालिन, और दूसरी वजह जिक्र कर रहे हैं, एक तो इसमें तावील है और नीज इनमें से बास जो है वो तो माल ही नहीं है, मसलन शराब जो है वो तो हमारे नजदीक माल ही नहीं, जब माल नहीं है तो 10 दिरहम कीमत कहां से होगी। और नीज बाज नशावर मशरूबात के अंदर हमारे अइमा में आपस में इख्तिलाफ है, बाज फरमाते हैं कि ये माल है और बाज फरमाते हैं कि ये माल नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वली अन्ना बाज हा लई सभी मालिन, और इसलिए क्योंकि नशावर मशरूबात में से बाज जो है वो तो माल ही नहीं है। वफी माली यति बाज हक तिलाफ, और बाज के माल होने के अंदर इख्तिलाफ है। फयत हक अकु शुभ तो आदमिल मालियति, तो इनके अंदर माल ना होने का शुबा आ गया, लिहाजा हाथ नहीं काटा जाएगा। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला फित तंबूरी लिअन्नहु मिनल माआज़िफी, तंबूर और तुम्बूर भाई त्वा है, त्वा के ऊपर फतहा भी सही और जम्मा भी सही। तंबूर या तुम्बूर जो है ये कोई गाने बजाने का आला है, मौसीकी का कोई आला है भाई। यहां चोरी करने वाला तावील करेगा कि ये तो गाने बजाने के आलात थे, मैंने इसलिए चोरी किया ताकि इनको तोड़ दूं भाई। कहते हैं वला फिर तुम्बूरी, और तुम्बूर के अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा। लिअन्नहु मिनल माआज़िफी, इसलिए क्योंकि ये मौसीकी के आलात में से है। माआज़िफ जमा है मियज़फ की, और मियज़फ कहते हैं मौसीकी का आला, गाने बजाने का आला। तो कहते हैं लिअन्नहु मिनल माआज़िफी, इसलिए क्योंकि ये मौसीकी के आलात में से है। वला फी सरिकतिल मुसहफी, और कुरान की चोरी के अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, कुरान की चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा। याद रखो कुरान के ऊपर तफसील बयान फरमाएंगे साहिब हिदाया, कुरान के ऊपर बाज़ औकात लोग जो है वो जेवर वगैरह भी चढ़ा कर रखते हैं बतौर अदब और मोहब्बत के, उस पर सोने चांदी की कुछ चीजें भी लगा देते हैं। तो क्या ऐसा कुरान कोई चोरी कर ले जिस पर 10 दिरहम या इससे ज्यादा का सोना या चांदी लगा हुआ है, तो क्या इसमें हाथ काटेंगे या नहीं? कहते हैं नहीं, यहां असल कुरान है और सोना चांदी उसके ताबेअ है। जब कुरान के अंदर हाथ नहीं काटा जाता तो उसके ताबेअ के अंदर भी हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वला फी सरिकतिल मुसहफी, और कुरान की चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा। व इन काना अलैहि हिलियतुन, अगरचे उसके ऊपर जेवर हो। वकाल शाफिई रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं युक्तौ, हाथ काटा जाएगा। इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं मुसहफ की चोरी पर हाथ काटा जाएगा, क्योंकि मुसहफ क्या है, माले मुतकविम है। कुरान जो है माले मुतकविम है, इसको खरीदा जाता है भाई बाजार से। तो कहते हैं वकाल शाफिई रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं युक्ताउ, के मुसहफ की चोरी में भी हाथ काटा जाएगा। लिअन्नहु मालुन मुतकविमुन, इसलिए क्योंकि कुरान जो है यह भी माले मुतकविम है। हत्ता यजूज़ु बैउहू, यहां तक कि इसका बेचना भी जायज है। मालूम हुआ यह माले मुतकविम है, इसीलिए तो बेचना जायज है भाई। और यहां भी याद रखना यह हत्ता नसब नहीं देगा, हत्ता यजूजू, यहां यजूजू पर रफा पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि हत्ता के नसब देने के लिए दो शर्तें हैं। एक तो यह कि हत्ता का माबाद वो मुस्तकबिल होना चाहिए हत्ता के माकबल की तरफ निस्बत करते हुए, और नीज वह हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो, तो यहां ये शर्तें पूरी नहीं, इसलिए हत्ता नसब नहीं देगा। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान की चोरी में हाथ काटा जाएगा। लिअन्नहु मालुन मुतकविमुन, क्योंकि वो माल मुतकविम है। हत्ता यजूज़ु बैउहु, यहां तक कि उसको बेचना भी जायज है। वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह मिसलुहु, और इमाम यूसुफ रहमहुल्लाह से भी इमाम शाफी रहमहुल्लाह के मिसल एक रिवायत है। वानहु अयज़न, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से एक रिवायत यह है कि अन्नहु युक्तौ इज़ा बलगतिल हिलयतु निसाबन, कि कुरान की चोरी में हाथ काटा जाएगा। इज़ा बलगतिल हिलयतु, जब यह जेवर की कीमत पहुंच जाए निसाबन निसाब तक। भाई इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से एक रिवायत तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह जैसी है कि कुरान माले मुतकविम है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक कुरान तो माले मुतकविम नहीं, लेकिन इसके साथ अगर जेवर 10 दिरहम के बकदर लगा हुआ है तो फिर हाथ काटा जाएगा। तो यह माना है वानहु अयज़ान, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से यह रिवायत भी है कि अन्नहु युक्तौ इज़ा बलगतिल हिलयतु निसाबन, कि इसके अंदर हाथ काटा जाएगा जब वो जेवर पहुंच जाए निसाब तक। लिअन्नहा लैसत मिनल मुसहफी, इसलिए क्योंकि यह जेवर जो है यह तो कुरान में से नहीं है, क्योंकि यह कुरान का हिस्सा नहीं है। तो कहते हैं लियान नहा लैसत मिनल मुसहफी, इसलिए क्योंकि ये जेवर जो है ये कुरान में से नहीं है। फयो अतबरु बिन फिरा दिहा, तो इसके अकेले होने का एतबार किया जाएगा। जैसे अकेले होने की सूरत में 10 दिरहम के जेवर को चोरी करते हैं तो हाथ काटते हैं, तो यहां भी इसके अकेले होने का एतबार किया जाएगा। तो कहते हैं लिया नहा लैसत मिनल मुसहफी, इसलिए क्योंकि यह जेवर कुरान में से नहीं है, यह कुरान का हिस्सा नहीं है। फयुअतबर बिनफिरादिहा, तो यह अकेले होने के साथ मुअतबर होगा, यानी इसको अकेला ही एतबार किया जाएगा। वजहुज़ाहिरी, और जाहिर रिवायत की वजह, मतन में तो आया था ऊपर कि कुरान की चोरी में हाथ नहीं काटेंगे, अब उस जाहिर रिवायत की वजह बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं वजहुज़ाहिरी, और जाहिर रिवायत की वजह यह है कि अन्नल आखिदा यतअव्वलु फी अख्ज़िहिल क़िरात वन नज़र फी, तो जाहिर रिवायत की वजह यह है कि लेने वाला इसके अंदर तावील करेगा, वो कहेगा यह तो कुरान मैंने पढ़ने के लिए उठाया था। तो कहते हैं वजह जाहिर, जाहिर रिवायत की वजह यह है कि अनल आखिजा यतअव्वलु फी अख्ज़िही, कि उस कुरान को उठाने वाला तावील करेगा उसके उठाने में, अल क़िराअत व नज़र फीही, उसके पढ़ने की और उसको देखने की, कि कुरान में पढ़ना चाहता था, इसको देखना चाहता था। वली अन्नहु ला मालियत लहू अला एतबार अल मक्तूबी, दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं, एक तो यह कि इसके अंदर तावील हो सकती है, चोरी करने वाला तावील कर सकता है, यह मैंने पढ़ने के लिए उठाया था, और नीस इस वजह से कि इसकी कोई मालियत नहीं है, यह माले मुतकविम ही नहीं है, क्योंकि कुरान जब कोई चोरी कर रहा है तो वहां वो कागज और जिल्द जो है, कागज और जिल्द जो है वो मकसूद नहीं है, बल्कि कुरान के हुरूफ और नुकूश जो है, यानी वो जो मकतूब है, जो लिखा हुआ है, वो जो मकतूब है वो मकसूद है, और मकतूब जो है वो तो माले मुतकविम नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वली अन्नहु ला मालियत लहू, और नीज इसलिए क्योंकि मुसहफ की कोई मालियत नहीं है, अला एतबार अल मकतूबी, मकतूब के एतबार से, व इहराजुहू लिअजलिही ला लिल जिल्द वल औराक वल हिलियती, और ये जो कुरान को महफूज किया जाता है ये उस मकतूब की वजह से महफूज किया जाता है, उसकी जिल्द या कागज या जेवर की वजह से महफूज नहीं किया जाता। तो मालूम हो वह मकतूब है असल, जब असल की कोई कीमत नहीं, उसके अंदर हाथ नहीं काटा जा सकता, तो जो उसके ताबिया हैं जिल्द कागज और जेवर, उनमें भी हाथ नहीं काटा जा सकता। तो कहते हैं फिर तर्जमा देख लीजिए, वली अन्नहु ला मालियत लहू, और इसलिए क्योंकि मुसहफ की कोई मालियत नहीं है, अला एतबार अल मकतूबी, मकतूब के एतबार से, व इहराजुहू लिअजलिही, और इस मुसहफ की जो हिफाजत होती है वो इस मकतूब की वजह से होती है, ला लिल जिल्दी, जिल्द की वजह से नहीं, वल औराक और औराक की वजह से नहीं, वल हिलियती और जेवर की वजह से नहीं होती इसकी हिफाजत, व इन नमा ही तवाबियों, और ये चीजें तो ताबिया हैं, वला मोतबरा बि तबाई, और ताबिया का कोई एतबार नहीं होता, कमन सरका आनियतन फीहा खमरुन, जैसे कोई शख्स ऐसा बर्तन चोरी कर ले कि उसमें शराब थी। आनिया कहते हैं बर्तन को, भाई देखिए कोई शख्स अगर शराब का बर्तन चोरी कर ले तो वहां पर मकसूद शराब है, और शराब तो हमारे नजदीक माले मुतकविम नहीं है, लिहाजा उसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, चाहे बर्तन की अपनी कीमत जो है 10 दिरहम से जायद ही क्यों ना हो। तो कहते हैं कमन सरका आनियतन फीहा खमरुन, जैसे कि वो शख्स जिसने ऐसा बर्तन चोरी किया जिसके अंदर शराब थी, वकीमतुल आनियति तरबू अलन्निसाबी, और बर्तन की जो कीमत है तरबू वो बढ़ रही है, अलन्निसाबी निसाब पर, बर्तन की कीमत निसाब से ज्यादा है, फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा बिल इत्तेफाक भाई। वला युक्ताउफी अबवा बिल मस्जिदी, और मस्जिद के दरवाजों में हाथ नहीं काटा जाएगा, चोर आए भाई मस्जिद का दरवाजा ही उतार कर ले गए या घर का दरवाजा उतार कर ले गए, तो याद रखो इन दरवाजों के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। वजह यह कि यह महफूज नहीं, दरवाजा कहां होता है, बाहर की तरफ, गली की तरफ भाई, तो दरवाजा तो महफूज नहीं है, तो लिहाजा इनमें हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वला युक ताउफी अबवा बिल मस्जिदी, और मस्जिद के दरवाजों के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, ले आदमिल इहराजी, हिफाजत ना होने की वजह से, फसार कबा बिदारी, तो ये मस्जिद का दरवाजा भी घर के दरवाजे की तरह हो गया, और जैसे घर के दरवाजे में हाथ नहीं काटा जाता तो मस्जिद के दरवाजे में भी हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं फसार कबा बिदारी, तो ये घर के दरवाजे की तरह हो गया, बल औला, बल्कि ये तो उससे बढ़कर है, यानी इस जब घर के दरवाजे में हाथ नहीं काटा जाता तो मस्जिद के दरवाजे में तो बतरीके औला हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि घर के दरवाजे के जरिए कम अज कम घर के अंदर की चीजों की हिफाजत मकसूद होती है, जबकि मस्जिद के दरवाजे के जरिए तो अंदर के सामान की हिफाजत मकसूद नहीं होती। मस्जिद का दरवाजा तो सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोई जानवर हैवानात वगैरह अंदर ना आए भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फसार कबाबी दारी, तो मस्जिद का दरवाजा भी घर के दरवाजे की तरह हो गया, बल औला, बल्कि ये ज्यादा लायक है कि इसमें हाथ ना काटा जाए। ले अनहू युहरजु बिबाबी दारी माफीहा, इसलिए क्योंकि घर के दरवाजे के लिए तो हिफाजत की जाती है उस चीज की जो घर के अंदर है। वला युहरजु बिबाबिल मस्जिद माफीही, और मस्जिद के दरवाजे के लिए तो हिफाजत नहीं की जाती उस चीज की जो मस्जिद के अंदर है। हत्ता ला यजिबुल कत्उ बिसरिकति मताईही, यहां तक कि हाथ का काटना वाजिब नहीं होता मस्जिद के सामान को चोरी करने से। कोई मस्जिद का सामान चोरी कर ले वहां हाथ नहीं काटा जाएगा, क्यों नहीं काटा जाएगा? वजह यह कि वो महफूज नहीं है। मस्जिद में तो हर आदमी आता जाता है तो वो माल महफूज नहीं, जब वो माल महफूज नहीं तो दरवाजा बतरीके औला जो है उसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। तो यह माना है हतला यजिबुल कत्उ बिसरिकति मताईही, यहां तक कि मस्जिद के सामान की चोरी में हाथ नहीं काटा जाता। हत्ता ला यजिबु, यहां पर भी याद रखें हत्ता नसब नहीं देगा, तो हत्ता ला यजिबुल कत्उ बिसरिकति मताईही, यहां तक कि मस्जिद के सामान की चोरी में भी हाथ का काटना वाजिब नहीं होता। काल वला सलीब मिन अज़हब वला शितरंजी वला नर्दी, जी सलीब भाई, सलीब वो ईसाइयों की सलीब भाई जिसके सामने वो सजदा करते हैं, वो क्रॉस जो बना होता है वो सलीब है। तो अगर किसी शख्स ने सलीब चोरी कर ली और वो सलीब सोने की बनी हुई थी फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा। भाई क्यों, उसमें हाथ क्यों नहीं काटा जाएगा? कहते हैं इसलिए क्योंकि चोरी करने वाला तावील करेगा कि मैं तो इसको इसलिए लेकर गया था ताकि मैं इसको तोड़ दूं। तो कहते हैं वाला सलीब मीना जहबी, और न ही सोने की सलीब के अंदर हाथ काटा जाएगा। वाला शतरंजी, भाई उर्दू में तो शतरंज है लफ्ज, शीन पर फतहा है, लेकिन अरबी में शतरंज है, शीन के नीचे जेर है भाई, तो शतरंज जो है वो उसको कोई चोरी कर लेता है। या इसी तरह वाला नर्दी, नर्द भाई ये भी कोई खेल था भाई, जैसे शतरंज दो आदमी बैठकर खेलते हैं इसी तरह कोई खेल था जो बैठकर खेला जाता था, तो नर्द खेल जो है उसकी चीजें अगर कोई चोरी कर लेता है तो उसमें भी हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि चोरी करने वाला तावील करेगा कि मैं तो इनको तोड़ना चाहता था। तो कहते हैं वला शतरंज वला नर्दी, और ना ही शतरंज और नर्द की चोरी में हाथ काटा जाएगा। लिअन्नहु यतअव्वलु मिन अख्ज़िहल कसरा, इसलिए क्योंकि वो शख्स तावील करेगा इनके लेने में, अल कसरा इनको तोड़ने का, नहयन अनिल मुनकरी, मुनकर से नहीं की वजह से कि नापसंदीदा चीजें हैं, शरीयत ने इनको तोड़ने का हुक्म दिया है तो मैं इसलिए इनको तोड़ रहा था। तो कहते हैं नहयन अनिल मुनकरी, नापसंदीदा चीज से रोकने की वजह से। बिखिलाफी दिरहम लदी अलैहि तिमसाल, भाई भाई बाज़ाक़ात दिरहमों पर भी सूरत बनी होती है, शक्ल बनी होती है। अब एक शख्स ने दिरहम चोरी कर लिए और कहने लगा कि भाई इन पर शक्लें बनी हुई थी और सूरतें बनी हुई थी और शरीयत ने सूरतें बनाने से मना किया है तो मैं इनको तोड़ना चाहता था। कहते नहीं, यहां ये तावील जारी नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि ये जो दिरहम पर सूरतें हैं इनकी इबादत नहीं की जाती, इनकी इबादत नहीं की जाती, लिहाजा यहां तावील नहीं की जा सकती। तो कहते हैं बिखिलाफ दिरहम लदी अलैहि तिमसाल, याद रखो तिमसाल कहते हैं तस्वीर को, इसी तरह मुजस्समे को भी तिमसाल कहते हैं। तो कहते हैं बिखिलाफ दिरहम लदी अलैहि तिमसाल, बखिलाफ उस दिरहम के जिसके ऊपर तस्वीर हो। लिअन्नहु मा उइद्द लिल इबादती, इसलिए क्योंकि उस सूरत को तो इबादत के लिए तैयार नहीं किया गया। फला यस्बुतु शुबहतु इबाहतिल कसरी, लिहाजा उसको तोड़ने के मुबाह होने का शुबा साबित नहीं होता। किसका तोड़ना मुबाह हो जाए मुसलमान के लिए यह शुबा साबित नहीं होता, जबकि सलीब वगैरह या शतरंज वगैरह जो है उसमें तो तोड़ने का शुबा पैदा होता है क्योंकि शरीयत ने इन चीजों से मना किया है। तो कहते हैं फला यस्बुतु शुबहतु इबाहतिल कसरी, तो साबित नहीं होता इस बात का शुबा कि इनका तोड़ना मुबाह हो। वान अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है, अन्नहु इनकाना सलीबु फिल मुसल्ला ला युक्तौ, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से एक रिवायत है, वो फरमाते हैं ये जो ईसाइयों की सलीब है अगर ये सोने या चांदी वगैरह की बनी है या इस पर जेवर लगा है और ये जेवर 10 दिरहम का बनता है तो फिर इस सूरत के अंदर अगर यह सलीब उसने ईसाइयों की इबादतगाह से चोरी की है तो फिर हाथ नहीं काटेंगे, क्योंकि इबादतगाह के अंदर हिफाजत नहीं है, वहां तो सब लोग आते जाते हैं। लेकिन अगर किसी और अलग कमरे से चोरी की है यह सलीब तो फिर इस सूरत में हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि वहां पर हिफाजत कामिल है भाई। तो कहते हैं वह अन अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है, अन्नहु इनकान सलीब फिल मुसल्ला, कि अगर वो सलीब जो है मुसल्ला में हुई, यानी नमाज की जगह, मुराद है उनकी इबादत की जगह, अगर ये सलीब जो है मुसल्ला में यानी उनकी इबादत की जगह में हुई तो ला युक्तौ, फिर हाथ नहीं काटा जाएगा, लिआदमिल हिर्ज़, हिफाजत न होने की वजह से, वह इन काना फी बैतिन आखरा, और अगर ये सलीब किसी और कमरे में हुई, युक्तौ, फिर हाथ काटा जाएगा, लिकमालिल मालियत वल हिर्ज़, मालियत और हिर्ज़ के कामिल होने की वजह से, कि 10 दिरहम की भी है और हिफाजत भी कामिल है भाई। आगे देखिए, वला कत आला सारिक सबील हुर्र व इन कान अलैहि हलयुन, ये हलयुन लफ्ज है भाई, हलयुन, हलयुन और हिलियतुन, ये मुफरद के लिए आता है, हलयुन और हिलियतुन, और जमा इसकी आती है हुलियुन, हुलियुन। अब सूरत मसला यह है कि किसी शख्स ने बच्चे को चोरी कर लिया
जी,
तो क्या इस सूरत में उसका हाथ काटा जाएगा? कहते हैं कि बच्चा माल नहीं है, आजाद बच्चा तो माल नहीं, लिहाजा उसमें हाथ नहीं काटा जाएगा। और अगर बच्चे पर जेवर भी हुआ फिर भी हाथ नहीं काटेंगे, क्योंकि बच्चा है असल और जेवर है उसके ताबे भाई। तो कहते हैं वला कता अला सारिक सबील हुर्र, और कता नहीं है उस चोर पर जिसने आजाद बच्चे को चोरी किया, वह इन काना अलैहि हलियुन, अगरचे बच्चे के ऊपर जेवर हो, लिअन्न अल-हुर्र लैस बिमालिन, इसलिए क्योंकि आजाद शख्स माल नहीं है, वमा अलैहि मिन अल-हलय तबउन लहू, और वो जो बच्चे के ऊपर जेवर है वो उस बच्चे के ताबे है। एक दलील ये, दूसरी दलील ये कि वली अन्नहु यतअव्वलु फी अख्ज़िही सबिय इस्कातहु, भाई बच्चे को चोरी करने वाला तावील करेगा कि ये बच्चे को तो मैंने इसलिए उठाया था कि ये रो रहा था, मैं इसको खामोश करवाना चाहता था, या मैंने इस बच्चे को इसलिए उठाया था कि ताकि किसी दूध पिलाने वाली औरत तक पहुंचा दूं इसको, ताकि कहीं ऐसा ना हो ये हलाक ही ना हो जाए, तो यहां वो तावील कर सकता है। और याद रखो ये बात चल रही है सिर्फ कता की, कि उसका हाथ नहीं काटा जाएगा
जी,
उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, बाकी उसको सजा दी जाएगी भाई। और अगर इस तरह का जुर्म होता है तो फिर कत्ल भी किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो बहरहाल बात यहां सिर्फ यह चल रही है कि इसका हाथ काटेंगे या हाथ नहीं काटेंगे, बताया हाथ नहीं काटेंगे भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु यतअव्वलु फी अख्ज़िहि सबिया, इसलिए क्योंकि वो चोर तावील करेगा बच्चे को उठाने में, इसका तहु उसको खामोश करवाने का, औ हमलहु इला मुर्ज़िअतिही, या उसको उठाने का मुर्ज़िआ तक, कि मैं इस बच्चे को उठाकर पहुंचाना चाहता था इसकी मुर्ज़िआ तक भाई, औ हमलहु इला मुर्ज़िअतिही, या इसको उठाकर ले जाने का इसके दूध पिलाने वाली तक। वकाल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, युक्तहु इदा कान अलैहि हलयुन हुवा निसाबुन, कि इस चोर का हाथ काटा जाएगा जब इस बच्चे पर इतना जेवर हुआ कि हुआ निसाब, उनके वो निसाब है यानी 10 दिरहम या इससे ज्यादा है, लिअन्नहु यजिबुल क़त्उ बिसरिकतिहि वहदहु, इसलिए क्योंकि हाथ का काटना वाजिब होता है अकेले की चोरी से, यानी अकेले जेवर की चोरी से हाथ काटना वाजिब होता है, तो बच्चे के साथ भी जेवर को लेकर गया है तो उसमें भी हाथ काटा जाएगा, जैसे वो मुसहफ के मसले में फरमाते हैं। कहते हैं युक्तौ इजा काना अलैहि हलयुन हुआ निसाबुन, कि चोर का हाथ काटा जाएगा जब इस बच्चे पर ऐसा जेवर है कि जो निसाब है, लिअन्नहु यजिबुल क़त्उ बिसरिकतिही वहदहु, इसलिए क्योंकि हाथ काटना वाजिब होता है अकेले जेवर की चोरी से, फकदा मा गैरिही, तो इसी तरह गैर के साथ होने की सूरत में भी होगा, यानी जब जेवर किसी और के साथ हो फिर भी इसी तरह हुक्म होगा, यह माना है फकदा, तो इसी तरह होगा यानी हाथ काटा जाएगा, मा गैरिही, जब वो जेवर किसी और चीज के साथ हो, वाला हादा इदा सरका इना अफिजतिन फीही नबीजुन औ सरीदुन, और इसी इख्तिलाफ पर है भाई सूरत ये, एक आदमी ने चांदी का बर्तन चोरी किया और उसमें नबीज थी, या उसके अंदर सरीद थी। नबीज तो मैंने आपको बतलाया कि अरब जो लोग जो हैं खजूर वगैरह ये चीजें पानी में डालकर रखते और ताकत के लिए भी इस्तेमाल करते थे और इसको खास तरीके से बनाते तो इसमें नशा भी आ जाता था, तो नशे के लिए भी बाज लोग इस्तेमाल करते थे। और सरीद भाई, सरीद ये रोटी के टुकड़े शोरबे के अंदर डाले जाते हैं और इसको सरीद कहते हैं भाई, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का पसंदीदा खाना था भाई। तो एक आदमी ने चांदी का बर्तन चोरी किया और उसमें नबीज या सरीद था
जी।
तो क्या इसका हाथ काटा जाएगा या नहीं? तो तरफेन फरमाते हैं हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि यहां जो चीज बर्तन के अंदर है वो है असल और बर्तन है ताबिया, और बर्तन के अंदर या तो नशावर मशरूब है और उसकी मालियत में तो इख्तिलाफ है, या उसके अंदर सरीद है यानी खाना है और वो तो जल्दी खराब हो जाता है, तो इन दोनों में हाथ नहीं काटा जाता। जब ये नबीज और सरीद में हाथ नहीं काटा जाता तो इनके जो ताबिया बर्तन है उसमें भी हाथ नहीं काटा जाएगा। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्ला फरमाते हैं कि अगर अकेला यह बर्तन चोरी करता तो उसका हाथ काटा जाता, तो किसी और चीज के साथ भी अगर चोरी किया है और यह निसाब के बकदर है तो इस सूरत में भी हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वाला हादा, और इसी इख्तिलाफ पर है, इजा सारा का इना अफिजतिन, जब किसी ने ऐसा चांदी का बर्तन चोरी कर लिया, फी ही नबीजुन और सरीदुन, जिसके अंदर नबीज या सरीद था, वल खिलाफू फी सबीन ला यमशी वला यतकल्लमु। भाई पीछे इख्तिलाफ जिक्र हुआ था कि कोई शख्स बच्चे को चोरी करता है और उस पर जेवर भी है तो तरफेन के नजदीक उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं हाथ काटा जाएगा। तो साहिब हिदाया बतला रहे हैं यह इख्तिलाफ उस बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जिसको अपनी जात पर अभी कुदरत हासिल नहीं है। और अगर बच्चा बोल सकता है, बातें कर सकता है, तो फिर इस सूरत में यह बालिग के हुक्म में है। किसके हुक्म में है? बालिग के हुक्म में है। तो कहते हैं वल खिलाफू फी सबीलिल्लाह यमशी वला यतकल्लमु, और इख्तिलाफ जो है उस बच्चे के बारे में है, ला यमशी, जो चल नहीं सकता, वला यतकल्लमु, और जो बात नहीं कर सकता, कई ला यकून फी यदि नफसी ही, ताकि कहीं वो अपनी जात के कब्जे में ना हो। भाई बच्चा जब छोटा है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो उसको अपनी जान पर, अपनी जात पर कुदरत हासिल नहीं, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। लेकिन अगर बच्चा चल फिर सकता है और बोल सकता है तो उसको तो अपनी साथ पर पूरी कुदरत हासिल है भाई, तो वो बालिग मर्द के हुक्म में है भाई। तो कहते हैं कैला यकून अफी यदि नफसी ही, ताकि कहीं ये अपनी जात के कब्जे में ना हो, यानी इसको अपनी जात पर पूरी कुदरत ना हो, मुराद ये है। वला कत अफी सरिकतिल अब्दिल कबीरी, भाई इस सूरत ये एक आदमी ने किसी के बड़े गुलाम को चोरी कर लिया, बालिग गुलाम को, तो क्या इस चोर का हाथ काटा जाएगा? कहते हैं नहीं, बाले गुलाम को कोई चोरी नहीं कर सकता, बाले गुलाम को कोई लेकर जाएगा तो इसको अगवा कहते हैं, या इसको धोखा देना कहते हैं, कोई धोखा देकर ले गया कि मेरे पास आ जाओ, वहां तुम्हारे लिए बहुत आसानी होगी, तो बाले गुलाम की ले जाने को चोरी कहते ही नहीं है भाई। और बात चल रही है चोरी की, चोरी के अंदर हाथ काटा जाता है, अगवा या धोखे के अंदर हाथ नहीं काटा जाता। तो कहते हैं वलाकत अफी सरकतिल अब्दिल कबीरी, और बड़े यानी बालिग गुलाम की चोरी में हाथ का काटना नहीं है, लिअन्नहु गसबुन औ खिदाउन, इसलिए क्योंकि यह गसब है औ खिदाउन या धोखा है। बड़े गुलाम को लेकर जाता है ये, इसको गसब कहते हैं, छीन कर ले जाना, जबरदस्ती किसी को ले जाना, इसको गसब कहते हैं, औ खिदाउन या धोखा कहते हैं अगर कोई धोखा देकर ले जाए। वयुक्तौ फी सरिकतिल अब्दिस सगीरी, हां छोटे गुलाम नाबालिग गुलाम की चोरी में हाथ काटा जाएगा, क्योंकि नाबालिग गुलाम माल है, आजाद बच्चा तो माल नहीं था
जी।
लेकिन नाबालिग गुलाम ये तो माल है, इसमें हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वयुक्तौ फी सरिकतिल अब्दिस सगीरी, और नाबालिग गुलाम की चोरी के अंदर हाथ काटा जाएगा, लितहक्कुकिहा, इसलिए क्योंकि चोरी पाई गई, बिहद्दिहा अपनी हद के साथ, चोरी पाई गई अपनी हद के साथ, चोरी पाई गई है तो अब हद भी आ जाएगी, लितहक्कुकिहा बिहद्दिहा, इसलिए क्योंकि चोरी अपनी हद के साथ पाई गई है, इल्ला इदा काना युअब्बिरु अन नफ्सिही, मगर यह कि वो नाबालिग गुलाम जो है वो ताबीर कर सकता है, अन नफ्सिही अपनी जात से, यानी वो बातें कर सकता है, तो फिर इस सूरत के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि यह बाले गुलाम के हुक्म में है, और बाले गुलाम में हमने आपको बताया कि उसको कोई ले जाए तो उसको गसब या धोखा कहते हैं, चोरी नहीं कहते। तो नाबाले गुलाम भी जब बातें करने पर कादिर है तो इसको ले जाना जो है इसको भी गसब या धोखा कहेंगे, इसको सरीका नहीं कहेंगे, लिहाजा इसमें हाथ नहीं काटेंगे। तो कहते हैं इल्ला इदा कान युअब्बिरु अन नफ्सिही, मगर जिस वक्त के गुलाम जो है अपनी जात से ताबीर कर सके यानी बातें कर सके, लिअन्नहु हुवा वल बालिगु सवाउन फी इतिबारी यदिही, इसलिए क्योंकि यह गुलाम जो ताबीर कर सकता है, वल बालिगु और बालिग गुलाम जो है सवाउन ये दोनों बराबर हैं, फी इतिबारी यदिही अपने कब्जे के एतबार से, कि इनमें से हर एक को अपनी जात पर कुदरत होती है भाई, इनमें से हर एक को अपनी जात पर कुदरत और कब्जा होता है भाई। यह माना है लिअन्नहु हुवा वल बालिग सवाउन फी इतिबारी यदिही, इसलिए क्योंकि यह नाबालिग गुलाम और बालिग जो हैं वो दोनों बराबर हैं अपने कब्जे के एतबार से। वकाल अबू यूसुफ रमला ला युक्तउ इन काना सगीरन ला याकिलु वला यतकल्लम इस्तिहसानन, और इमाम अबू यूसुफ रमला फरमाते हैं ला युक्तउ, नाबालिग गुलाम जो है यह नाबालिग गुलाम जो बातें अभी नहीं कर सकता इसको चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा। तो इमाम यूसुफ रमला फरमाते हैं कि अगर कोई नाबालिग गुलाम को चोरी कर ले और वो नाबालिग गुलाम अभी बातें भी नहीं कर सकता फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा, और ये हुक्म बतौर इस्तेहसान के है। वजह यह कि ये नाबालिग गुलाम देखा जाए तो ये आदमी है, इंसान है, और इंसान के अंदर हुर्रियत असल है। तो बाज एतबार से देखें तो यह नाबालिग गुलाम माल है, और बाज एतबार से देखें तो यह आदमी है और इंसान है, और इंसान के अंदर असल आजादी है, उस एतबार से यह माल नहीं। तो इसके माल होने में शुबा आ गया और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमुल्ला फरमाते हैं ला युक्ताउ, के इस नाबालिग गुलाम को चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा। वह इन काना सगीरन ला याकिलु वला यतकल्लमु, अगरचे वो इतना छोटा है कि ना वो समझता है और ना बात कर सकता है, इस्तेहसानन, और ये जो हाथ नहीं काटा जाएगा ये इस्तेहसानन है, लिअन्नहु आदमी युन मिन वजहिन, इसलिए क्योंकि ये नाबालिग गुलाम जो है बाज एतबार से देखें तो आदमी है, मालुम मिन वजहिन, और बाज एतबार से देखें तो यह माल है, तो इसके माल होने में शुभ आ गया। वलहुमा, अब तरफेन की दलील आ गई, तरफेन फरमाते हैं यह नाबालिग गुलाम को चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वलहुमा, तरफेन की दलील यह है कि अन्नहु मालुन मुतलकुन, कि यह नाबालिग गुलाम जो है यह माल मुतलक है, लिकौनिही मुंतफअन बिही औ बिअरज़ि अन यसीरा मुंतफअन बिही। तरफेन फरमाते हैं कि यह नाबालिग गुलाम यह भी माल है, माल है मुतलकन, यानी हर एतबार से यह माल है, या तो इस वजह से कि फिलहाल ही इससे नफा उठाया जा सकता है, फिलहाल ही इससे नफा उठाया जा सकता है, बोल तो नहीं सकता लेकिन कुछ ना कुछ चल फिर तो सकता है, तो कोई छोटे मोटे काम इससे करवाए जा सकते हैं, या अगर फिलहाल काम नहीं भी कर सकता तो मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर सलाहियत है, ये आगे चलकर नाफिया बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो हर तरह का काम करने के काबिल हो जाएगा। तो ये माल है, मुंतफा भी ही है, इससे नफा उठाया जा सकता है, या तो फिलहाल या मुस्तकबिल के एतबार से। वलहुमा, तो तरफेन फरमाते हैं अन्नहु मालुन मुतलकुन, ये मुतलक माल है यानी कामिल तौर पर माल है, लिकौनिही मुंतफअन बिही, इस वजह से कि ये मुंतफअ बिही है यानी फिलहाल ही इससे नफा उठाया जा रहा है, औ बिअरज़ि अन यसीरा मुंतफअन बिही, या इस सिफत पर है। अरज का क्या माना? सिफत, आपने पढ़ा है एक जौहर है और एक अरज है, जौहर जात को कहते हैं और अरज सिफत को। तो कहते हैं औ बिअरज़ि अन यसीरा मुंतफअन बिही, या वो इस सिफत पर है कि वो मुंतफअ बिही बन जाए यानी बड़ा होकर फायदे के काबिल हो जाए। इल्ला अन्नहुन ज़म्म इलैही मानल आदमीयति, मगर एक बात है कि इसके साथ आदमी होने का माना मिला हुआ है, इसके साथ आदमी होने का माना मिला हुआ है, यानी ये आदमी तो है लेकिन इसे कोई खराबी लाजिम नहीं आती, ये माल है, आदमी होने का माना साथ मिल गया तो इसकी वजह से कोई हरज नहीं आया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते थे आदमी होने की वजह से अब इसके माल होने में ही शुबा आ गया, लेकिन तरफेन फरमाते नहीं, ये माल है हर एतबार से। तो यह माना है इल्ला अन्नहुन जम्म इलैहि मानल आदमीयति, मगर यह केस के साथ आदमी होने का माना मिला हुआ है। आगे देखिए वला कता फी दफातिर कुल्लिहा, दफातिर भाई जमा है दफ्तर की, और दफ्तर कहते हैं रजिस्टर को, रजिस्टर भाई रजिस्टर और कापी जिसके अंदर आप लिखते हैं। तो कदीम जमाने के अंदर भी इसी तरह तलबा जो है वो असातिज़ा की तकरीर लिखा करते थे, और इसी तरह और भी तमाम कामों के अंदर रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं, चीजों को लिखा जाता है। तो अगर कोई शख्स रजिस्टर चोरी कर ले तो क्या उसका हाथ काटा जाएगा या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, रजिस्टर जो चोरी किया जाता है वो दो सूरत पर हो सकता है, या तो वो नया रजिस्टर होगा या उसके अंदर लिखा हुआ होगा भाई। तो अगर लिखा हुआ रजिस्टर चोरी करे तो मालूम हुआ उसके अंदर कागज मकसूद नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो लिखा जा चुका है, मालूम हुआ वहां पर वो तहरीर और वो मकतूब जो है वो मकसूद है, और तहरीर और मकतूब की तो कोई कीमत नहीं होती। तो जब मकतूब जो असल है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी वजह से हाथ नहीं काटा जाएगा, तो उसके ताबे ये कागज और जिल्द भी हो गए, लिहाजा उनमें भी हाथ नहीं काटा जाएगा। और अगर रजिस्टर नया है तो नया रजिस्टर जो है उसके अंदर तो कागज मकसूद होता है लिखने के लिए, तो उसके अंदर फिर हाथ काटा जाएगा भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलाकत आफी दफा तेरी कुल लिहा, और हाथ का काटना नहीं है तमाम रजिस्टरों में, यानी जिनके अंदर लिखा हुआ हो इनमें हाथ का काटना नहीं है, चाहे कोई भी रजिस्टर हो, चाहे किसी ने उसके अंदर अपनी फिका की किताब लिखी है, चाहे किसी ने उसके अंदर उस्ताद के सबक लिखा है, या किसी ने उसके अंदर अपने अशआर लिखे हुए हैं, या इस तरह की कोई और चीजें जो है उसने लिखी हुई हैं और उसके अंदर जमा की हुई हैं, तो रजिस्टरों के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा। कहते हैं वला कताफी दफा तेरी कुल लिहा, और तमाम रजिस्टरों के अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, यानी किसी भी रजिस्टर में हाथ नहीं काटा जाएगा। ले अनल मकसूद माफीहा, इसलिए क्योंकि मकसूद जो है वो चीज होती है जो इन रजिस्टरों के अंदर होती है, यानी वो जो मकतूब है। वजालिका लैसा बिमालिन, और वो मकतूब जो है वो तो माल नहीं है। इल्ला फी दफा तेरिल हिसाबी, मगर हिसाब के रजिस्टरों में, मगर हिसाब के रजिस्टरों के अंदर हाथ काटा जाएगा। भाई हिसाब किताब के रजिस्टर जिसके अंदर कोई शख्स अपने कारोबार वगैरह के हिसाब वगैरह को लिखता है, या अपनी दुकान के हिसाब को लिखता है, या अपनी तिजारत वगैरह के हिसाब को लिखता है, तो ये जो रजिस्टर हैं कहते हैं इनकी चोरी में हाथ काटा जाएगा। भाई क्या वजह है? यहां पर भी तो रजिस्टर जो है उनके अंदर लिखा हुआ है, और आपने हमें बताया कि मकतूब माल नहीं होता, तो लिहाजा फिर यहां कैसे हाथ काटा जाएगा? तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि ये जो हिसाब किताब के रजिस्टर हैं ये आम लोगों के काम की चीज नहीं, जिसका कारोबार है ये उसके काम की तो चीज है, लेकिन ये रजिस्टर किसी और के काम आने वाला नहीं है। मालूम हुआ जब चोर ने इस तरह का रजिस्टर चोरी किया है तो उसका मकसद वो मकतूब नहीं है, बल्कि इस रजिस्टर की जिल्द और कागज वगैरह है भाई, और जिल्द और कागज वगैरह ये तो माल मुतकविम है, लिहाजा इनके अंदर हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं इल्ला फी दफातिर हिसाबी, मगर हिसाब के रजिस्टरों में। तो आप इसको हिसाब भी लफ्ज पढ़ सकते हैं, और हुसाब, हुसाब जमा है हासिब की, हिसाब करने वाला, हिसाब करने वाला, तो यूं भी आप पढ़ सकते हैं इल्ला फी दफातिर हुसाबी, हिसाब करने वालों के रजिस्टरों में कि उसमें हाथ काटा जाएगा। नमा फीहा ला युकसद बिल अख्जी, इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो होता है वो मकसूद नहीं होता लेने के जरिए। फकान अल मकसूद हुअल कवागिजा, तो वो चीज जो मकसूद है वो कागज है, और कागज तो मुतकविम है, लिहाजा उसमें हाथ काटा जाएगा। लिहाजा कोई शख्स कोई रजिस्टर चोरी करता है, अगर हिसाब किताब के अलावा कोई ऐसी चीज उसमें मकतूब है जो मकसूद हो सकती है, तो फिर इस सूरत में तो हाथ नहीं काटा जाएगा, और अगर वो मकतूब जो है वो मकसूद नहीं बन सकता दूसरे का, तो फिर इस सूरत में हाथ काटा जाएगा। और इसी तरह याद रखो, जब कोई किसी का नया रजिस्टर चुराता है, नई कापी चुरा लेता है जिसके अंदर तहरीर वगैरह कम है या नहीं है, तो मालूम हुआ वहां पर वो कागज मकसूद है, लिहाजा उसमें भी हाथ काटा जाएगा। आगे देखिए काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला फी सरिकति कल्बिन वला फहदिन, कल्ब कुत्ते को कहते हैं, फहद, फहद याद रखो ये तेंदवा, ये चीते की नस्ल का एक जानवर है। अलबत्ता फर्क है, चीता जो है, चीते का जिस्म जो है वो शिकारी कुत्ते की तरह होता है। अगर आपने देखा हो शिकारी कुत्ते का सीना बड़ा होता है और पेट बिल्कुल उसका कमर के साथ लगा हुआ होता है, बहुत छोटा सा पेट होता है, तो ये शिकारी कुत्ता है। और चीता बिल्कुल इसी की शक्ल का होता है, तो उसका सीना बड़ा होता है और पेट बिल्कुल कमर के साथ लगा होता है, तो उसको चीता कहते हैं। जबकि तेंदवा जो है ये चीते से जरा कद भी थोड़ा सा छोटा होता है और इसका जिस्म जरा भारी होता है, इसका पेट बराबर होता है, वो कमर के साथ लगा हुआ नहीं होता भाई। तो बहरहाल हैं दोनों एक ही नस्ल के भाई। तो साहिबे कुदूरी फरमाते हैं वला फी सरिकति कल्बि वला फहदिन, और कुत्ते और चीते की चोरी में भी हाथ नहीं काटा जाएगा। लिअन्न मिन जिन्सिहिमा यूजद मुबाहुल असल गैर मरगूबिन फी, इसलिए क्योंकि इन दोनों की जिन्स में से मुबाहुल असल पाए जाते हैं इस हाल में कि वो मरगूब नहीं होते। भाई देखो आवारा कुत्ते आम फिर रहे होते हैं, इसी तरह जंगल के अंदर और चीते और तेंदुए वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन लोग उनके अंदर रगबत नहीं करते। तो इन्हीं की जिन्स के और चीजें मौजूद हैं और लोग इनमें रगबत नहीं कर रहे, और वो मुबाहुल असल हैं, जो इनको पकड़ ले वो उनका मालिक हो जाएगा। और इस किस्म की चीज में तो आप पढ़ चुके हैं हाथ नहीं काटा जाता, लिहाजा यहां भी इनमें हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं लिअन्न मिन जिन्सिहिमा, इसलिए क्योंकि कुत्ते और चीते की जिन्स में से यू जदू मुबाहुल असल, मुबाहुल असल पाए जाते हैं, गैर मरगूबिन फीही, इस हाल में कि उनमें रगबत नहीं की जाती। वलिअन्न अल-इख्तिलाफ बैनल उलमा इज़ाहिरुन फी मालियतिल कल्बी, और दूसरी दलील जिक्र फरमा रहे हैं, कहते हैं इसलिए क्योंकि कुत्ते के माल होने में उलमा का इख्तिलाफ है। हमारे नजदीक तो कुत्ता माल है, उसकी ब्यावशिरा हो सकती है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक कुत्ता नजिसुल ऐन है। इसी तरह और अइमाबाज अइमा के नजदीक भी कुत्ता नजिसुल ऐन है, वो खिंजीर की तरह है, तो वो माल ही नहीं है, वो माल ही नहीं, उसका बेचना खरीदना जायज ही नहीं। तो कहते हैं वली अन्न अल-इख्तिलाफ बैन अल-उलमा इज़ाहिरुन, और इसलिए क्योंकि उलमा के दरमियान इख्तिलाफ जाहिर है, फी मालियतिल कल्बी, कुत्ते के माल होने के बारे में, फऔरसा शुबहतन, तो इसने शुबा पैदा कर दिया और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है, इसलिए कुत्ते और चीते और तेंदुए की चोरी में हाथ नहीं काटा जाएगा। वला क़त्अ फी दुफ्फिन वला तबलिन वला बरबतिन वला मिज़मारिन, दुफ भाई जिसको हम उर्दू में दफ कहते हैं, अरबी में इसको दफ भी कहते हैं और दुफ भी, वही फा मुशद्दद है दुफुन, जिसमें एक तरफ चमड़ा लगा होता है दूसरी तरफ चमड़ा नहीं होता। ढोल जो है ढोल के अंदर तो दोनों तरफ चमड़ा लगा होता है, लेकिन दफ के अंदर एक तरफ चमड़ा लगा होता है। तो अगर किसी ने किसी का दफ चोरी कर लिया, या तबल, तबल याद रखो ढोल को कहते हैं, बरबत भाई, बरबत याद रखो ये गाने बजाने का कोई आला है, इसको सितार कहते हैं, बरबत को सितार कहते हैं, जिस पर कुछ तारें लगी होती हैं भाई, तो उर्दू में उसको सितार कहते हैं। इसी तरह मिज़मार भाई, मिज़मार भी कोई गाने बजाने का आला है भाई, बाजों ने लिखा है कि ये बांसुरी है भाई, बांसुरी, तो ये सब गाने बजाने के आलात हैं, ये दुफ तबल बरबत और मिज़मार। तो तबल मैंने बतलाया ढोल को कहते हैं, बरबत सितार को कहते हैं, और मिज़मार जो है ये कोई बाजा है, बाजों ने लिखा है बांसुरी है भाई। तो कहते हैं वला क़त्अ फी दुफ्फिन वला तबलिन, और हाथ का काटना नहीं है दफ की चोरी में, वला तबलिन और न ढोल की चोरी में, वला बरबतिन और न सितार की चोरी में, वला मिज़मारिन और न बांसुरी की चोरी में, लिअन्न इंदहुमा ला क़ीमत लहा, इसलिए क्योंकि साहिबैन के नजदीक इनकी कोई कीमत नहीं। ये गाने बजाने के आलात हैं, साहिबैन के नजदीक इनकी कोई कीमत नहीं, लेकिन जबकि इमाम साहिब के नजदीक इनकी कीमत है भाई। तो साहिबैन के नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं, जब कीमत नहीं है तो जब ये माल नहीं है तो इनकी चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता, और इमाम साहिब के नजदीक इनकी कीमत है, लेकिन यहां चोरी करने वाला तावील करेगा कि ये तो गाने बजाने के आलात थे, मैंने इसलिए चोरी किया ताकि इनको तोड़ दूं भाई। तो कहते हैं नईन दहुमा ला कीमत अलहा, इसलिए क्योंकि साहिबैन के नजदीक इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए इसमें हाथ नहीं काटा जाएगा। वाइन द अबी हनीफा रहमला, और इमाम साहब के नजदीक इसलिए हाथ नहीं काटा जाएगा कि आखिजुहा यता अव्वलुल कसरा फीहा, कि इनको लेने वाला इनको तोड़ने की तावील करेगा कि मैं इनको तोड़ना चाहता था भाई। وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْقَنَا وَالْآبَنُوسِ وَالصَّنْدَلِ, ये कुछ कीमती किस्म की लकड़ियां हैं उनका जिक्र कर रहे हैं साहिबे हिदाया भाई। याद रखो साज भाई, साज साज जो है ये इंतहाई कीमती लकड़ी है जिसे उर्दू में सागवान कहते हैं, सागवान की लकड़ी। कना भाई, कना वो लकड़ी जिससे नेजे बनाए जाते हैं, ये नहायत उम्दा लकड़ी होती है और इससे बिल्कुल सीधे नेजे तैयार किए जाते हैं भाई। इसी तरह आबनूस, आबनूस जो है ये भी एक कीमती लकड़ी है। वह संदल, और संदल भी एक कीमती खुशबूदार लकड़ी है भाई। तो अगर इस किस्म की लकड़ी कोई चोरी कर लेगा और उसकी कीमत 10 दिरहम तक पहुंचे तो उसका हाथ काटा जाएगा भाई। तो कहते हैं वयुक्ताउफ साजी, और हाथ काटा जाएगा सागवान की लकड़ी में, वल कना और नेजों की लकड़ी में, वल आबनूसी व संदली और आबनूस और संदल की लकड़ी में, लिअन्नहा अमवालुम मुहरजतुन, इसलिए क्योंकि ये महफूज माल हैं, यानी इनको महफूज किया जाता है, लिकौनिहा अजीजतन इंदन्नासी, इस वजह से कि ये लोगों के नजदीक मुअज्जज हैं। अजीज का माना है मुअज्जज और महबूब भाई, मुराद है कीमती, मुराद है कीमती। लिकौनिहा अजीजतन इंदन्नासी, इस वजह से कि ये जो लकड़ियां हैं ये कीमती हैं लोगों के नजदीक। वला तूजदु बिसूरतिहा मुबाहतन फी दारिल इस्लामी, और ये अपनी सूरत पर मुबाह होकर दारुल इस्लाम में नहीं पाई जाती, यानी दारुल इस्लाम में ये वैसे नहीं मिलती कि कोई तलाश करे और उसको मिल जाए भाई, नहीं। हां, दारुल हर्ब के अंदर हो सकता है, आप जानते हैं दारुल हर्ब वालों के साथ हम हालत जंग में हैं, तो अगर कोई मुसलमान वहां जाते हैं और वहां से ये चीजें छीन कर ले आते हैं तो बई एतबार देखो दारुल हर्ब के अंदर तो ये चीजें मुबाह हैं, मुसलमान वहां से छीन कर ला सकते हैं, लेकिन खुद दारुल इस्लाम के अंदर ये मुबाह होकर मिलती हो ऐसा नहीं है भाई। तो कहते हैं वला तू जदू बी सूरतिहा मुबाहतन फी दारुल इस्लामी, और ये जो लकड़ियां हैं ये दारुल इस्लाम के अंदर मुबाह होकर अपनी सूरत पर नहीं पाई जाती। काला वयुक्ताउ फिल फुसूस अल खुज़री वल याकूत वल ज़बरजदी, इस काला से मुराद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वयुक्ताउ फिल फुसूस अल खुज़री, फुसूस में दोनों जगह स्वाद है भाई, ये जमा है फसुन की, और फसुन कहते हैं अंगूठी के नगीने को, अंगूठी के अंदर जो नगीना लगा होता है उसे अरबी में फसुन कहते हैं भाई। और खुज़र, खुज़र जमा है अखजर की, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं वयुक्ताउ फिल फुसूस अल खुज़री, और सबज नगीनों में हाथ काटा जाएगा। वल याकूती, याकूत ये भी कीमती किस्म के पत्थर हैं भाई, इनमें जो सुर्ख रंग का होता है कहते हैं वो सबसे आला होता है भाई। वह जबरजदी, और जबरजद ये भी कीमती पत्थर है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सबज नगीनों में वल याकूत व जबरजदी, और याकूत और जबरजद के अंदर हाथ काटा जाएगा। लिअन्नहा मिन अअज़्ज़िल अमवाली व अनफसिहा, इसलिए क्योंकि ये सबसे कीमती और सबसे उमदा मालों में से है। अअज़्ज़ वही अजीज की जमा है भाई। लिया नहा मिन अअज़्ज़िल अमवाली व अनफसिहा, इसलिए क्योंकि ये सबसे कीमती और सबसे उमदा मालों में से हैं। ला तूजदु मुबाहल असल बिसूरतिहा फी दारिल इस्लामी गैर मरगूबिन फीहा, और ये नहीं पाए जाते इस हाल में कि ये मुबाहुल असल हो अपनी सूरत पर भी दारिल इस्लामी दारुल इस्लाम में, गैर मरगूबिन फीहा, और इस हाल में कि ये गैर मरगूब हों, यानी दारुल इस्लाम में अपनी सूरत पर इस तरह नहीं पाए जाते कि मुबाह भी हो और गैर मरहूब भी हो भाई। यानी कहना यह चाहते हैं कि दारुल इस्लाम के अंदर भी बास जगह पहाड़ों से कीमती पत्थर मिलते हैं लेकिन ये गैर मरहूब नहीं होते, मरहूब होते हैं भाई। तो यह माना है, कहते हैं ला तू जदू मुबाहल असल भी सूरत हाफी दारुल इस्लामी, कि ये मुबाहुल असल होकर अपनी सूरत पर दारुल इस्लाम में नहीं पाए जाते, गैर मरगूबिन फीहा, इस हाल में कि वो मरगूब ना हो। फसारत का ज़हबी वल फिज़्ज़ती, तो ये कीमती पत्थर भी सोने और चांदी की तरह हो गए और उनमें हाथ काटा जाता है तो इनमें भी हाथ काटा जाएगा। आगे देखिए वह इदा तुखिदा मिनल खशबी अवानी व अबवाबुन कुतिया फीहा, और जब उन लकड़ियों से बर्तन और दरवाजे बना लिए जाएं, कुतिया फीहा, तो उनमें हाथ काटा जाएगा। भाई सबसे पहले यह इबारत देख लीजिए भाई, याद रखो मेरी किताब में है अवानिया व अबवाबन, व इज़ा तखज़ा मिनल खशबी अवानिया व अबवाबन, यानी अवानिया अबवाब को मंसूब जिक्र किया गया है, और यह उसी सूरत में हो सकता है जब पीछे इत्तखज़ा फ़िले मारूफ पढ़ा जाए। लेकिन याद रखो यहां फ़िले मारूफ पढ़ना सही नहीं बनता भाई, इसलिए क्योंकि अगर आप इसको फ़िले मारूफ पढ़ेंगे इत्तखज़ा उसने बना लिया, तो इसके अंदर जमीर निकालने पड़ेगी, पीछे मर्जिअ चाहिए किसने बनाया, लकड़ी यानी लकड़ी से दरवाजे बना लिए या बर्तन बना लिए, तो किसने बनाए उस जमीर का मर्जिअ चाहिए, और पीछे यहां कोई मर्जिअ जिक्र नहीं, लिहाजा यहां इसको फेले मजहूल पड़े भाई। वह ईजा तुखीजा, और आगे जो अवानी और अबवाब आ रहा है इसको नायबुल फाइल बना दें। और इसमें याद रखना अवानी जमा है आनिया की, जैसे जवारी जमा है जारिया की, और जवारी के अंदर आप पढ़ चुके हैं नहव की किताबों के अंदर कि जवारी के अंदर आखिर में ये जो या है ये सिर्फ हालत नस्बी में बरकरार रहेगी, हालत नस्बी में बरकरार रहेगी, यानी जब बगैर अलिफ लाम के हो, जब बगैर अलिफ लाम के हो तो सिर्फ हालत नस्बी में ये या बरकरार रहेगी, और इसको जवारिया पढ़ेंगे, यानी ये गैर मुनसरिफ है, इस पर कसरा भी नहीं आ सकता और तनवीन भी नहीं आ सकती। लेकिन अगर हालत रफ़ईया जरी हो तो फिर ये या गिर जाएगी और माकबल वाले हर्फ पर तनवीन आ जाएगी, तो हालत रफ़ई में पढ़ेंगे जवारिन, या गिर चुकी है, हालत जरी में भी पढ़ेंगे जवारिन, या गिर चुकी है, जैसे काजी भाई, काजी जो है इसके आखिर में या है और या पर जम्मा भी सकील है और कसरा भी सकील है, अलबत्ता फतहा आ सकता है, तो यहां पर भी जवारी जो है उसके अंदर हालत नस्बी के अंदर या बरकरार रहेगी और हालत रफ़ी और जरी के अंदर या गिर जाएगी और माकबल वाले हर पर तनवीन आ जाएगी। यहां पर भी इसी तरह है, यहां अवानी अवानी ये नायबुल फाइल बनेगा और जब नायबुल फाइल बनेगा तो ये मरफू हुआ और हालत रफी के अंदर या गिर जाएगी तो नून के नीचे तनवीन आ जाएगी। वह ईदा तुखिदा मीनल खशबी अवानिन, और इसी पर आता आगे हो जाएगा अबवाब का भी, अवानिन व अबवाबुन, तो लिहाजा यहां पर अवानिन और अबवाब इनको मरफू पढ़े भाई। तो कहते हैं वह ईदा तुखीदा मिनल खशबी अवानी व अबवाब उन कुतिया फीहा, और जब लकड़ी से बर्तन और दरवाजे बना लिए गए तो कुतिया फीहा तो उसमें हाथ काटा जाएगा। भाई साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि आम लकड़ी जो मिलती है उसके अंदर हाथ नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगर इसी लकड़ी से कोई दरवाजे बना ले या बर्तन बना ले तो फिर 10 दिरहम तक इनकी कीमत हुई तो फिर हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि लकड़ी के साथ कारीगरी मिल गई, कारीगर की कारीगरी लकड़ी के साथ मिल गई और अब वो कीमती माल बन गया भाई। तो कहते हैं वह इदा तुखिदा मिनल खशबी अवानी व अबवाबन, और जब लकड़ी से जो है बर्तन और दरवाजे बना लिए जाएं कुतिया फीहा तो उसमें हाथ काटा जाएगा, लिअन्नहु बिस्सनअति इल्तहक़ बिल अमवाली नफीसती, लिअन्नहु इसलिए क्योंकि ये जो लकड़ी है बिस्सनअति कारीगरी की वजह से इल्तहक़ बिल अमवाली नफीसती ये उमदा मालों के साथ मिल गया, ये उमदा मालों में से हो गया, अला तारा क्या आप देखते नहीं, अन्नहा तो हरजू कि इनकी हिफाजत की जाती है, जब इनसे दरवाजे बना लिए अब उनकी हिफाजत की जाती है, या इनसे बर्तन बना लिए तो उन बर्तनों की हिफाजत की जाती है। कहते हैं अला तारा अन्नहा तो हरजू कि आप देखते नहीं कि इन बर्तनों और दरवाजों की हिफाजत की जाती है, बेखिलाफ इल हसीरी बखिलाफ चटाई के, भाई ये चटाई ये भी मुख्तलिफ किस्म के घास या पत्तों वगैरह से चटाइयां बनाई जाती हैं, तो इनमें भी देखो कारीगर की कारीगरी आ गई, लेकिन फिर भी ये उमदा माल शुमार नहीं होते, हत्ता के लोग इनको गैर महफूज जगह पर भी डाल देते हैं, मसलन दुकान के बाहर डाल दिया और रात को भी वहीं पड़ी है दिन को भी वहीं पड़ी हुई है, तो देखो मालूम हुआ यहां चटाई के साथ कारीगरी मिल गई लेकिन फिर भी इसने इसको उस कीमती नहीं बनाया, तो लिहाजा चटाइयों की चोरी में हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं बेखिलाफ इल हसीरी बखिलाफ चटाई के, लिअन्न सनअता फीही लम तगलिब अलल जिनसी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो कारीगरी है लम तगलिब अलल जिनसी वो गालिब नहीं आई इसकी जिन्स पर, भाई देखो घास या पत्ते वगैरह थे, घास या पत्ते थे ऊन से चटाई बनाई जाती है, तो ये घास और पत्ते जो हैं ये तो हकीर चीजें हैं, ये तो आम मिल जाती हैं, लेकिन कारीगरी इनके साथ मिल गई, फिर भी इस कारीगरी ने इनको इनकी जींस से नहीं निकाला, यानी जैसे पहले ये हकीर थे अब भी हकीर हैं। तो कहते हैं लिअन्न सनअत फीही लम तगलिब अलल जिंसी, इसलिए क्योंकि कारीगरी जो है वो इनके अंदर इनकी जिंस पर गालिब नहीं आई, हत्ता युबसतु फी गैरिल हिर्ज़, यहां तक कि इनको गैर हिर्ज़ में बिछाया जाता है, यहां पर भी हत्ता नसब नहीं देगा, हत्ता युबसतु फी गैरिल हिर्ज़, यहां तक कि इनको गैर हिर्ज़ में बिछाया जाता है, वफिल हुसरिल बगदादियति, भाई हुसर स्वाद के साथ है, ये उसी हसीर की जमा है, तो बगदादी हसीर जो है बगदाद की चटाइयां, यह मालूम होता है कोई खास चटाइयां थी जिनमें ज्यादा मेहनत होती थी, यह कीमती माल है, इसके अंदर हाथ काटे जाएंगे, इसलिए क्योंकि इनको लोग इस तरह गैर हिर्ज में नहीं बिछाते। भाई कहते हैं वफिल हुसरिल बगदादियति कालू यजिबुल कतउ फी सरिकतहा, और बगदादी चटाइयां जो हैं फुकहा फरमाते हैं कि उनकी चोरी में हाथ काटना वाजिब होगा, लिगलबति सनअति अलल असली, इस वजह से कि कारीगरी गालिब आ गई असल पर, यानी उन पत्तों और घास पर कारीगरी गालिब आ गई, व इन्नमा यजिबुल कतउ फी गैरिल मुरक्कबी। साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि ऊपर मतन में आया था कि अगर लकड़ी से दरवाजे बना लिए जाएं और तो इन दरवाजों की चोरी में हाथ काटा जाएगा, तो बतला रहे हैं इससे मुराद वो दरवाजे हैं जो लगाए नहीं गए, अगर दरवाजे लगा दिए दीवार में, अब जब ये दीवार में लगा दिए तो अब हिर्ज कामिल ना रहा। भाई बात समझ में आ गई, तो मालूम हुआ वो दरवाजे जिनमें हाथ को काटा जाएगा वो दरवाजे हैं जो गैर मुरक्कब हों, यानी जिनको दीवार वगैरह में लगाया न गया हो। कहते हैं वह इन नमा यजिबुल कतउ फी गैरिल मुरक्कबी, कि हाथ का काटना वाजिब होगा गैर मुरक्कब के अंदर, यानी वो दरवाजे जो जोड़े नहीं गए। वह इन नमा यजिबु इजाकान खफीफन ला यस्कुलु अला वाहिदिन हमलुहु, कहते हैं हाथ काटना उस वक्त वाजिब होगा, इजा कान खफीफन, जब ये हल्का हो, लायस कुलू अलल वाहिदी हमलू हो, वजनी ना हो किसी एक पर इसका उठाना, किसी एक के लिए इसका उठाना बोझ ना हो, और अगर वजनी है जिसे कई आदमी मिलकर उठा सकते हैं फिर उसमें हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि उसमें लोग रगबत नहीं करते, जो इनमें वजनी होंगे उनमें लोगों की रगबत नहीं होगी, उसको उठाना मुश्किल है। भाई तो कहते हैं वही नमा यजिबु इजाकान खफीफन, हाथ का काटना वाजिब है जिस वक्त वो दरवाजा हल्का हो, ला यस्कुल अलल वाहिद हमलुहु, वजनी ना हो किसी एक पर उसका उठाना, लिअन्न सकील मिनहु ला युरगबु फी सरिकतिही, इसलिए क्योंकि इनमें से जो वजनी होता है ला युरगबु फी सरिकतिही, उसके चुराने में रगबत नहीं की जाती, वला कता अला खाइन वला खाइनतिन, खाइन भाई खाइन कहते हैं खियानत करने वाला, आपने किसी के पास कोई अमानत रखवाई थी या कोई काम किसी के जिम्मे लगाया और उसमें वो खयानत करता है, तो क्या खाइन का भी हाथ काटा जाएगा? कहते हैं नहीं भाई, खाइन का हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि हाथ जो है सारिक का काटा जाता है जो चोरी करता है, और ये जो खयानत करने वाला है इसको चोर नहीं कहा जाता, इसको खाइन कहा जाता है। तो कहते हैं वला कता अला खाइनी वला खाइनतिन, और खियानत करने वाले मर्द और खियानत करने वाली औरत पर हाथ का काटना वाजिब नहीं, लिकुसूर इन फिल हिर्ज़ी, हिफाजत में कमी की वजह से। भाई खियानत वही शख्स करेगा ना जिसके हवाले आपने माल किया है, तो जब माल उसके हवाले किया है तो वहां हिफाजत ना रही, भाई हिफाजत नाकिस हो गई, तो लिहाजा हाथ नहीं काटा जाएगा। यह माना है लिकुसूर इन फिल हिर्ज़, हिफाजत में कमी की वजह से, वला मुंतहिब वला मुख्तलिसिन, और इसी तरह मुंतहिब और मुख्तलिस जो हैं उनके भी हाथ नहीं काटे जाएंगे। मुंतहिब भाई, मुंतहिब कहते हैं लुटेरा भाई, लुटेरा जिसे हम उर्दू में आम डाकू जो है जो आता है असलहे के जोर पर जबरदस्ती माल छीनकर ले जाता है, इसको लुटेरा कहते हैं, अरबी में इसको मुंतहिब कहते हैं। और इसी तरह मुख्तलिस भाई, मुख्तलिस कहते हैं उचक्का, उचक्का वो है जो अचानक चीज उठाकर निकल जाता है और आदमी को पता भी नहीं चलता। मसलन आप बाजार में हैं और आपने साइकिल खड़ी की और आपकी तवज्जो दूसरी तरफ हुई, फिर आपने मुड़कर देखा तो एक आदमी दूर साइकिल को भगा कर ले जा रहा है, तो देखो ये अचानक कोई चीज एकदम उठाकर भाग जाना, इसको कहते हैं उचक्का। तो क्या लुटेरे और उचक्के का हाथ काटा जाएगा? कहते नहीं, इनको अरबी में सारिक नहीं कहते, इनके लिए अलग नाम है, इनको मुंतहिब और मुख्तलिस कहते हैं। मालूम हुआ इनका फेल चोरी नहीं है, जब चोरी नहीं है तो इसमें हाथ भी नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वला मुंतहिबिन वला मुख्तलिसिन, और ना ही लुटेरे का हाथ काटा जाएगा और ना ही उचक्के का। लिअन्नहु युजाहिरु बिफ़िअलिही, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक जो है वो खुले तौर पर अपना फेल करता है। चोरी के अंदर तो पोशीदा होना जरूरी है, लेकिन ये दोनों उचक्का और लुटेरा तो खुले बंदों अपना फेल अपना जुर्म करते हैं भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु युजाहिरु बिफ़िअलिही, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक जो है अपने फेल को जहरन करता है, यानी अलल एलान, यानी खुले तौर पर। कैफ़ वक़द क़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कैफ़ और कैसे इनका हाथ काटा जा सकता है। वक़द क़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तहकीक हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ला क़ताफ़ी मुख्तलिसिन वला मुंतहिबिन वला ख़ाइनिन, के मुख्तलिस यानी उचक्का और मुंतहिब यानी लुटेरा और खाइन यानी खयानत करने वालों में कता नहीं है जी। तो कहते हैं कैफ वक़द क़ाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इनका हाथ कैसे काटा जा सकता है। और तहकीक हुजूर ने फरमाया है कि ला क़ताफ़ी मुख्तलिसिन वला मुंतहिबिन वला खाइनिन, के उचक्के और लुटेरे और खयानत करने वाले में कता नहीं होगा, यानी उनमें हाथ नहीं काटा जाएगा। वला कता अल नब्बाशी, नब्बाश कहते हैं कफन चोर को भाई, जो कब्र में से मैयत का कफन चुरा कर ले जाता है भाई। ये जो कपड़ा है, कदीम जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था और बड़ी मुश्किल से किसी को कपड़ा मिलता था भाई। आजकल तो अल्लाह की नियामतें इतनी ज्यादा हो गई, हर आदमी के पास कई कई जोड़े कपड़े होते हैं, लेकिन कदीम जमाने में नया जोड़ा तो सालहा साल में ही किसी को नसीब होता था भाई। तो कपड़ा कीमती होता था, तो बाज लोग जो हैं कब्रें खोदकर मैयत का कफन चोरी किया करते थे। तो क्या उसका हाथ काटा जाएगा या नहीं? कहते हैं नहीं, कफन चोर का हाथ नहीं काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि कफन चोर को सारिक नहीं कहते बल्कि उसको नब्बाश कहते हैं, और हाथ का काटना यह तो सारिक की सजा है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वसारिक वसारिकतु फक्तउ अयदीहुमा, तो यहां सारिक की सजा हाथ काटना जिक्र हुई है, नब्बाश की सजा जिक्र नहीं है यहां। तो कहते हैं वला कता अलन नब्बाशी, और नब्बाश पर भी कता नहीं है। वहां दाइंदा अबी हनीफा व मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, ये तरफेन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वकाल अबू यूसुफ व शाफिई रहिमहुमल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफिई रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं अलैहिल कतउ, इस पर भी कता है, इसका भी नब्बाश का भी हाथ काटा जाएगा। लिकौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम के इस फरमान की वजह से कि आपने फरमाया मन नबशा कतअनाहू, जिसने कफन चोरी किया कतअनाहू तो हम उसका हाथ काटेंगे। तो ये नकली दलील जिक्र कर दी इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफई रहमहुमल्ला ने। अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वली अन्नहु मालुम मुतकविम मुहरजुम बिहिर्ज मिसलिही, वली अन्नहु मालुम मुतकविम, और इसलिए क्योंकि ये कफन ऐसा माल मुतकविम है मुहरजुन, जिसको महफूज किया गया है बिहिर्ज मिसलिही, उसके मिसल के हिर्स के साथ। भाई देखिए, हर चीज का हिर्स अलग किस्म का होता है। मसलन सोना चांदी है, उसको संदूक में रखा जाता है, यह संदूक उनके लिए हिफाजत की जगह है। और अगर आपके जानवर हैं, घोड़े या खच्चर वगैरह हैं, तो उनको अस्तबल में रखा जाता है, वो उनकी हिफाजत की जगह है। इसी तरह अगर आपका और सामान है तो आप उसको घर के अंदर रखते हैं या दुकान के अंदर रखते हैं, तो हर चीज के हिर्स जो है उसी के मिसल होता है। मुख्तलिफ चीजों का हिर्ज मुख्तलिफ होता है। तो यहां पर भी जो इसने कफन चोरी किया है, यह हिर्ज से चोरी किया है, यानी महफूज जगह से। तो सवाल पैदा होता है, महफूज जगह कैसे है? मैयत तो मुर्दा है, वो तो हिफाजत नहीं कर सकती। कहते हैं हर चीज की हिफाजत उसके मिसल के साथ होती है। तो यहां पर भी कब्र के अंदर जो है इसको महफूज समझा जाता है। तो कब्र इसकी हिफाजत की जगह है, कबर इसके हिफाजत की जगह है। तो लिहाजा यह चोरी हुई हिर्ज से, यानी महफूज जगह से, लिहाजा इसमें कफन चोर का हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वली अन्नहु मालुम मुतकविम मुहरजुम बिहर्ज मिसलिही, और इसलिए क्योंकि यह ऐसा माल मुतकविम है मुहरजुन के जिसकी हिफाजत की गई है बिहर्ज मिसलिही इसके मिसल के हिर्ज के साथ, इस जैसी चीजों का जो हिर्ज होता है उसके साथ इसकी हिफाजत की गई है। बात समझ में आ रही है? बिहर्ज मिसलिही, यह आपस में मुजा मुजाफिले हैं। आगे देखिए फयुक्ताउ फीही, तो इसमें हाथ काटा जाएगा। वलहुमा, और तरफेन रहमहुमल्ला की दलील जो है कौलहु अलैहि सलातु वस्सलाम, वो हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है कि आपने फरमाया ला कत्अ अलल मुख्तफी, मुख्तफी पर कता नहीं, मुख्तफी का हाथ नहीं काटा जाएगा। वह हुआ नब्बाश बिलुगति अहलिल मदीनती, और मुख्तफी जो है वह नब्बाश ही है अहले मदीना की लुगत में, मदीना वालों के उर्फ में नब्बाश को, कफन चोर को मुख्तफी कहा जाता था। तो हुजूर फरमा रहे हैं मुख्तफी पर कता नहीं है, तो हुजूर फरमाते हैं ला कता अलल मुख्तफी, मुख्तफी पर कता नहीं है। वह हुआ नब्बाश, और मुख्तफी नब्बाश ही है बिलुगति अहलिल मदीनती अहले मदीना वालों की जुबान में। वली अन्न शुभ तमक्कनत फिल मिल की, दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं तरफेन कि कफन की चोरी में हाथ नहीं काटा जाएगा, कहते हैं इसलिए क्योंकि यहां मिल्कियत में शुबा आ गया जी। यहां मिल्कियत में शुबा आ गया, मैयत तो मुर्दा है वो भी हकीकतन कफन की मालिक नहीं, और वारिस भी कफन का मालिक नहीं है क्योंकि ये कफन तो वरासत पर मुकद्दम है भाई, सबसे पहले मैयत को कफन दफन दिया जाता है, फिर कर्जे अदा किए जाते हैं, फिर कोई अगर वसीयत की है तो वो माल के तीसरे हिस्से में नाफिज की जाती है, और आखिर में माल वारिसों को दिया जाता है। तो मालूम हुआ वरासत से मुकद्दम है मैयत का कफन दफन, मालूम हुआ इस कफन के मालिक वारिस नहीं और मैयत खुद भी मालिक नहीं। जब मिल्कियत में ही शुबा आ गया तो फिर अब हद वाजिब नहीं हो सकती भाई। तो कहते हैं वाली अन्न शुभा तमक कनत फिल मिल की, और इसलिए क्योंकि शुभा जो है उसने करार पकड़ लिया इस कफन की मिल्कियत में। लि अन्नहु ला मिल्का लिल मय्यित हकीकतन, इसलिए क्योंकि मय्यित की भी कोई मिल्कियत नहीं है हकीकत के एतबार से। वला लिल वारिसी, और वारिस की भी मिल्कियत नहीं है। लि तकद्दुमी हाजतिल मय्यिती, मय्यित की हाजत के मुकदम होने की वजह से। वकद तमक कनल खलल फिल मकसूदी, अब तीसरी दलील जिक्र कर रहे हैं। तीसरी दलील, एक दलील तो हदीस जिक्र कर दी लाकत आलल मुख्तफी, और फिर दूसरी अकली दलील जिक्र कर दी, तो अब ये तीसरी दलील आ गई, ये भी अकली दलील है। कहते हैं वक़त तमक्कन अल खलल फिल मकसूदी वह अल इंजिजार, कहते हैं भाई देखिए यहां पर ये जो शरीयत सजाएं मुकरर करती है उसका मकसद ये होता है ताकि लोग उस जुर्म से बाज आ जाएं। जुर्म ऐसा हो कि जो कसरत से होने वाला हो, वहां पर शरीयत सजा देती है ताकि लोग इस जुर्म के करने से बाज आ जाएं। और एक जुर्म जो निहायत कम होता है, नादिर है, और नादिर का तो कोई एतबार नहीं है क्योंकि लोग खुद ही ये जुर्म नहीं करते, तबीयत ही पसंद नहीं करती कि मैयत का कफन उतार कर ले जाया जाए। तो जब ये जुर्म ही नादिर है तो इसके अंदर जाजिर को यानी सजा को नाफिज करने की हिकमत बाकी ना रही भाई, लोगों की तबीयत ही इस जुर्म पर आमादा नहीं होती भाई। तो कहते हैं वक़त तमक्कन अल खलल फिल मकसूदी, और नीज यहां पर इस हद के मकसद के अंदर भी खलल आ गया। वह हुआ इंजिजार, और मकसद क्या था? इंजिजार, बाज आ जाना, रुक जाना, ताकि लोग इस जुर्म से बाज आ जाए और रुक जाए। तो कहते हैं मकसद में ही खलल आ गया, और वो मकसद जो है इंतजार है यानी बाज आ जाना और रुक जाना है। लिअन्नल जिनायत फी नफ्सिहा नादिरतुल वुजूदी, इसलिए क्योंकि ये कफन चोरी का जो जुर्म है फी नफ्सिहा अपनी जात के एतबार से नादिरतुल वुजूदी, ये नादिरुल वुजूद है, बहुत कम होता है, तबीयत ही इसके करने पर आमादा नहीं होती। वमा रवाहु गैरु मरफूइन, यहां से अब जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने हदीस जिक्र की थी मन नबशा कतअनाहु, जिसने कफन चोरी किया हम उसका हाथ काटेंगे, तो उसका जवाब दे रहे हैं वह मा रवाहु गैरु मरफूइन, और वो हदीस जिसको इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने रिवायत किया गैरु मरफूइन, वो गैर मरफू है, गैर मरफू है। याद रखो हदीस जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल को भी हदीस कहते हैं, सहाबी के कौल को भी हदीस कहते हैं, ताबाई के कौल को भी हदीस कहते हैं, लेकिन फिर फर्क किया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल हो तो उसको कहते हैं हदीस मरफूअ, सहाबी का कौल हो तो उसको कहते हैं हदीस मौकूफ, और अगर ताबाई का कौल हो तो इसको कहते हैं हदीस मकतूअ। भाई हदीस मरफूअ हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल, हदीस मौकूफ सहाबी का कौल, और हदीस मकतूअ ताबाई का कौल। तो जवाब दे रहे हैं, कहते हैं वमा रवाहु गैरु मरफूइन, और वो हदीस जिसको इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने रिवायत किया गैरु मरफूइन, वो गैर मरफू है, यानी वो मरफू हदीस नहीं है, वो सहाबी का कौल है। औ हुआ महमूल अला सियासती, या वो सियासत पर महमूल है। मैंने आपको बतलाया था कि मुल्की निजाम चलाने की जो हिकमत अमली है उसको सियासत कहते हैं। तो हम कहते हैं वो जो हदीस के अंदर हुजूर ने फरमाया मन नबशा कता ना हो, कि जिसने कफन चोरी किया हम उसे का हाथ काटेंगे, ये हदीस सियासत पर महमूल है। तो ये सियासतन फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बारे में जो कफन चोरी को आदत बना लेते हैं, तो सियासतन उनका हाथ काटा जाएगा ताकि वो जुर्म से बाज आ जाएं। तो कहते हैं अ हुआ महमूल अल सियासती, ये हदीस महमूल है सियासत पर। व इन कानल कब्रु फी बैत मुकफल इन फहुआ अल खिलाफ फी सहीह लिमा कुलना, भाई अगर कब्र किसी बंद कमरे में हुई, अब तो कफन महफूज है, तो क्या इस कब्र से अगर कोई कफन चोरी कर ले उसका हाथ काटा जाएगा या नहीं। कहते हैं इसके अंदर भी वही इख्तिलाफ है, और वजह वही है कि हिर्ज नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्योंकि मैयत खुद तो हिफाजत नहीं कर सकती अपनी। कहते हैं वह इन कान अल कब्रु फी बैतिन मुकफलिन, याद रखो कुफल, कुफल कहते हैं ताले को, ताला। तो कहते हैं वह इन कानल कब्रु फी बैतिन मुकफलिन, और अगर कब्र किसी ऐसे कमरे में हुई जो मुकफल था, यानी जिसको ताला लगाया गया था, फहुआ अलल खिलाफी, तो यह भी उसी इख्तिलाफ पर है, फिर सही सही कौल के मुताबिक, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कहा। भाई यानी वो जो हमने हदीस जिक्र कर दी, हदीस जिक्र कर दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला कत्अ अलल मुख्तफी, और नीज हमने क्या कहा कि मालिक के बारे में भी शुबा आ गया कि इस कफन का मालिक कौन है भाई, और नीज इस वजह से कि यहां पर वो जो सजा नाफिज करने का जो मकसूद है उस मकसूद के अंदर भी खलल आ रहा है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह इनकान अल कब्र फी बैत मुकफलिन, और अगर कब्र जो है किसी बंद कमरे में हुई, फहुआ अलल खिलाफी, तो यह भी उसी इख्तिलाफ पर है, फिर सही सही कौल के मुताबिक, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कही। वह कदा इजा सरका मिन ताबूत इन फिल काफिलती, ताबूत भाई वो जो लकड़ी का संदूक होता है जिसमें मैयत को रखते हैं, तो अगर एक काफिला चल रहा है और उसके अंदर एक ताबूत है, उसके अंदर मैयत है, वो काफिला ताबूत को ले जा रहा है किसी जगह दफन करने के लिए, तो अब इस ताबूत में से अगर कोई कफन चोरी कर ले, तो अब तो हिफाजत मौजूद है, काफिले वाले भी मौजूद हैं, तो क्या अब इस कफन चोर का हाथ काटा जाएगा। कहते हैं इसके अंदर भी वही इख्तिलाफ है भाई। तो कहते हैं वकदा इजासा रकम इन ताबूत इन फिल काफिलती, और इसी तरह काफिले में किसी ताबूत से अगर किसी ने कफन चोरी किया, वफी हिल मैतु, इस हाल में कि उस ताबूत के अंदर मैयत भी है, तो फिर इसमें भी इख्तिलाफ है, लिमा बैयन्ना, उसी वजह से जो हमने बयान कर दिया। भाई बात समझ में आ गई। वला युक्त उसारिकु मिन बैतिल माली, भाई एक चोर जो है बैतुल माल से चोरी कर लेता है तो क्या हाथ काटा जाएगा। कहते हैं नहीं भाई, इस माल के अंदर तमाम मुसलमानों का हिस्सा था और यह भी उन मुसलमानों में से एक फर्द है, तो इसका भी हिस्सा था, तो लिहाजा शुभ आ गया और शुभे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो कहते हैं वला युक्त उसारिकु मिन बैतिल माली, और बैतुल माल से चोरी करने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा, लिअन्नहु मालुल आम्मती, इसलिए क्योंकि वह आम लोगों का माल है, वह हुआ मिनहुम, और यह चोर भी आम लोगों में से है। वला मिन मालिन लिस्सारिकि फीहि शिरकतुन, और ना ही ऐसे माल से चोरी करने में हाथ काटा जाएगा कि जिसमें चोर की शिरकत हो, जिसमें चोर के शिरकत हो। मसलन कई अफराद ने पैसे मिलाए हैं और उनमें से एक चोरी कर लेता है, तो इसका अपना भी माल था इसके अंदर, लिहाजा इसमें हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वला मिन मालिन लिसारिक फीही शिरकतुन, और हाथ नहीं काटा जाएगा ऐसे माल में लिसारिक फीही शिरकतुन जिसमें चोर की शिरकत थी, लिमा कुलना उस वजह से जो हमने कही कि इसमें उसकी शिरकत है, तो शुबा आ गया। वह मन लहू अला आखरा दराहिमो, और जिस शख्स के दूसरे पर दिरहम है, एक शख्स के दूसरे के जिम्मे दिरहम है और ये उससे दिरहम फिर चोरी कर लेता है, कहता है भाई मेरा हक इसके जिम्मे बाकी था, मैंने अपना हक वसूल किया है, तो क्या इसमें हाथ काटेंगे? कहते हैं नहीं, इसमें इसका हाथ नहीं काटेंगे। तो कहते हैं वह मन लहू अला आखरा दराहिमो, और जिस शख्स के किसी दूसरे आदमी पर दिरहम हुए, फसरका मिन्हु मिसलहा, तो इस शख्स ने चोरी कर लिए उसी के मिसल उसी के बराबर दिरहम उससे, लम युक्ता, तो इसका हाथ नहीं काटा जाएगा, लिअन्नहु इस्तिफाउन लिहक्किही, इसलिए क्योंकि यह अपने हक को वसूल करना है। वल हाल वल मुअज्जल फीही सवाउन इस्तिहसानन, और हाल और मुअज्जल इसमें बराबर हैं। एक है कर्जे हाली देने हाली जो फिलहाल अदा करना है, और एक होता है मुअज्जल जिसमें मुद्दत मुकरर की जाती है कि मसलन मैं 6 महीने बाद पैसे अदा करूंगा। तो चाहे देने हाली हो चाहे देने मुअज्जल हो, दोनों के अंदर यही हुक्म है। अगरचे कियास तो यह तकाजा करता है कि देने मुअज्जल में चोर का हाथ काटा जाए। भाई एक आदमी ने दूसरे को गाड़ी बेच दी, अब उसने मसलन इसके 1000 दिरहम अदा करने हैं और मुद्दत तय हुई थी कि 6 महीने बाद अदा करेगा, तो इसने उसके माल में से 1000 दिरहम चोरी कर लिए। कहता ये तो मेरा हक था, भाई आपने ही तो इसको मुद्दत दी थी 6 महीने की, आपने ही इसको मुद्दत दी थी 6 महीने की, तो लिहाजा कियास तो यह तकाजा करता है कि इस चोर का हाथ काटा जाए भाई, क्योंकि इसने खुद मुद्दत दी हुई थी उसको, लिहाजा इसका हक नहीं बनता था कि उसके माल में से 1000 दिरहम ले ले, लेकिन इस्तेहसानन जो है इसका हाथ नहीं काटा जाएगा भाई। वजह यह कि ये जो मुद्दत मुकरर की है ये सिर्फ मुतालबे के लिए है, यानी मुद्दत से पहले ये मुतालबा नहीं कर सकता, बाकी इसका हक तो फिलहाल भी उसके जिम्मे मौजूद है भाई। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलहाल वल मुअज्जल फीहि सवाउन, और इस हाथ के न काटने में देने हाल और मुअज्जल दोनों बराबर हैं, चाहे वो दिरहम क्या हो, फिलहाल अदायगी वाले हों चाहे मुअज्जल हों, ये दोनों बराबर हैं। इस्तेहसानन, और ये हुक्म इस्तेहसानन है भाई। इस्तेहसानन ये हुक्म क्यों है? कहते हैं लिअन्न ताजील लिताअखुरिल मुतालबति, इसलिए क्योंकि जो मुद्दत मुकरर की गई थी लिताअखुरिल मुतालबति, वो मुतालबे के मुअखर होने के लिए थी कि उससे पहले मुतालबा नहीं कर सकता, बाकी हक हक तो इसका फिलहाल भी दूसरे आदमी पर है, लिहाजा इस वजह से इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं लिअन्न ताजील लिताअखुरिल मुतालबति, इसलिए क्योंकि मुद्दत का मुकरर करना ये मुतालबे के मुअखर होने के लिए है। वकदा इदा सरका ज़ियादतन अला हक़िही, और इसी तरह है यानी हाथ नहीं काटा जाएगा जब चोरी की अपने हक से जायद, जब चोरी किया अपने हक से जायद माल, मसल दूसरे ने इसके 20 दिरहम देने थे और इसने 50 दिरहम चोरी कर लिए, फिर भी हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि ये जो 50 दिरहम इसने उठाए हैं इनके अंदर इसका भी हिस्सा है, चोर की भी शिरकत है, उसका हक है, तो लिहाजा हाथ नहीं काटा जाएगा। तो कहते हैं वकदा, और इसी तरह है मसला यानी हाथ नहीं काटा जाएगा, इजा सरका ज्यादतन अला हक़िही, जब इसने अपने हक पर जायद चोरी कर लिया, लिअन्नहु बिमिक़दार हक़िही, इसलिए क्योंकि ये अपने हक की मिकदार के बकदर जो है, यसीरु शरीकन फीही, उसमें शरीक हो गया है, ये अपने हक की मिकदार उसके अंदर शरीक है भाई। वह इन सरका मिन्हु उरूज़न कुतिया, सूरत यह भाई एक शख्स के दिरहम दूसरे के जिम्मे में है, इन्होंने आपको बतला दिया अगर इस साहिबे हक ने उसके दिरहम ही चुरा लिए तो इसका हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि इसका हक भी क्या था, दिरहम, इसने वसूल भी क्या करने थे, दिरहम, और इसने चोरी भी क्या किए हैं, दिरहम, तो जो इसका हक था उसी की जिंस की चोरी की है इसने। लेकिन अगर इसने दूसरी चीज चोरी कर ली, मसलन उसने दिरहम देने थे, इसने उसका सामान चोरी कर लिया, तो क्या अब हाथ काटेंगे या नहीं? तो आपको बतलाएंगे कि जाहिर रिवायत यह है कि इस आदमी का हाथ काटा जाएगा, इसलिए क्योंकि इसने दूसरे का सामान चोरी किया है और सामान के जरिए तो इसका हक वसूल नहीं हो सकता, इसका हक तो दिरहम है, तो सामान को बेचना पड़ेगा और मालिक की इजाजत के बगैर तो इसके लिए बेचना जायज नहीं है। तो मालूम हुआ इसने जो चीज चोरी की है उसमें इसका हक नहीं था, जब इसका हक नहीं था तो अब हाथ काटा जाएगा। तो कहते हैं वह इन सरका मिन्हु उरूज़न, और अगर उसने उसे सामान चोरी किया यानी दिरहम और दीनार के अलावा, कुतिया तो इसका हाथ काटा जाएगा। लिअन्नहु लैसा लहू विलायतुल इस्तीफाई मिन्हु, इसलिए क्योंकि इस आदमी को इस सामान से अपना हक वसूल करने की विलायत नहीं है। इल्ला बैअन बितराज़ी, मगर यह कि वो इसको बाहमी रजामंदी से बेचे, मालिक की रजामंदी से इस सामान को बेचे, फिर ही यह अपना हक वसूल कर सकता है, वैसे अपना हक वसूल नहीं कर सकता। वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु ला युक्ताउ, के इस सूरत में भी इसका हाथ नहीं काटा जाएगा। लिअन्न लहू अन यखुज़हु इंद बाज़िल उलमाई, इसलिए क्योंकि इसके लिए जायज है कि यह दूसरे का सामान ले ले। इंद बाज़िल उलमाई, बाज़ उलमा के नजदीक, बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि ये दूसरे का सामान भी ले सकता है, क्यों? कज़ाअन मिन हक़िही, अपने हक की अदायगी के लिए, और रहना मिन हक़िही, या अपने हक के लिए रहन रखने के लिए। दूसरे का सामान चोरी कर ले किस लिए? अपना हक वसूल करने के लिए, अपना हक वसूल करने के लिए, या बतौर रहन के अपने पास रख ले कि मुझे मेरा हक दोगे तो मैं तुम्हें यह चीज वापस दूंगा। भाई तो बाज उलमा के नजदीक यह जायज है, जब बाज उलमा के नजदीक यह जायज है तो अब शुबा आ गया, अब शुबे की वजह से हद साकित हो जाएगी। भाई तो कहते हैं वान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु ला युक्ताउ, के सामान चुराने की सूरत में भी हाथ नहीं काटा जाएगा। लिअन्न लहू अन याखुज़हु इंद बाज़िल उलमाई, इसलिए क्योंकि इस आदमी के लिए जायज है कि वह सामान को ले ले बाज़ उलमा के नजदीक। कज़ाअन मिन हक़िही, अपने हक की अदायगी के लिए, और रहन मिन हक़िही, या अपने हक में बतौर रहन के। बात समझ में आ गई, और याद रखो आजकल फतवा इसी पर है। उलमा फुकहा फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स का किसी के जिम्मे हक है और वो अदा नहीं कर रहा, टाल मटोल कर रहा है, तो साहिब हक उस दूसरे आदमी की जो भी चीज उसके हाथ लगे उसको ले जा सकता है और उसके जरिए अपना हक वसूल कर सकता है। इसलिए क्योंकि कदीम जमाने में तो लोग दुयून वगैरह अदा कर देते थे, आजकल लोग दुयून अदा ही नहीं करते, तो मजबूरी की वजह से अब फतवा इसी पर है कि अगर कोई शख्स किसी का दैन अदा नहीं कर रहा तो यह उसकी कोई भी चीज उठा सकता है ताकि उसके जरिए अपना दैन वसूल कर ले। लेकिन यह याद रखना, कोई और चीज लेकर गया है तो सिर्फ अपने हक के बकदर इसमें से रोक ले और बाकी जो जायद है वो वापस करना पड़ेगा, बाकी माल जो है वो वापस करना पड़ेगा। अगर वो वापस नहीं करेगा तो फिर यकीनन ये इंदल्लाह मुजरिम है, भाई आखिरत में इसका मुआखजा होगा। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कुल ना, हम कहते हैं भाई ऊपर मतन में आया कि सामान चोरी किया तो हाथ काटा जाएगा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हाथ नहीं काटा जाएगा, तो अब जवाब दे रहे हैं कुल ना, हम कहते हैं हादा कौलुन ला यस्तनिदु इला दलीलिन ज़ाहिरिन, कि यह ऐसा कौल है कि जिसका इस्तेनाद किसी जाहिरी दलील की तरफ नहीं है, यानी इसका एतमाद किसी दलील पर नहीं है। ये जो बाज़ उलमा ने कहा कि दूसरा उसके सामान को उठा सकता है तो इसकी बुनियाद किसी दलील पर नहीं है, यह माना है कुल ना, हम कहते हैं हादा कौलुन ला यस्तनिदु इला दलील इन ज़ाहिरिन, के फुकहा का यह जो कौल है इसकी बुनियाद किसी जाहिरी दलील पर नहीं है। फुकहा का यह कौल जो है इसकी बुनियाद किसी जाहिरी दलील पर नहीं है। फला युअतबरु बिदून इत्तिसाल दावा बिही, लिहाजा फुकहा के इस कौल का कोई एतबार नहीं है जब तक इसके साथ दावा नहीं मिलेगा। याद रखो, आगे चलकर साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर एक चोर चोरी के अंदर पकड़ा गया और काजी ने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया, लेकिन अभी चोर का हाथ नहीं काटा गया था कि चोर ने दावा कर दिया कि यह जो माल मैंने चोरी किया है यह तो मेरा अपना माल है। याद रखो, चोर के ये कहते ही हद साकित हो जाएगी, चोर ने जैसे ही दावा किया कि ये जो माल मैंने चुराया था ये तो मेरा अपना माल है, चोर के ये कहते ही अब हद साकित हो गई, अब चोर का हाथ नहीं काटा जा सकता। वजह यह कि शुबा आ गया, वजह यह कि शुबा आ गया कि हो सकता है ये चोर सच बोल रहा हो, वाकई ये इसी का माल हो भाई, और आप जानते हैं शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है। तो साहिबे हिदाया फरमा रहे हैं कि जाहिर रिवायत के मुताबिक अगर एक शख्स के जिम्मे दूसरे के दिरहम हैं और ये उसका सामान चोरी करके ले जाता है तो उस चोर का हाथ काटा जाएगा। अलबत्ता बास फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, ये अपना हक का वसूल करने के लिए दूसरे की कोई भी चीज ले जा सकता है। तो जवाब दिया कि नहीं, फुकहा के इस कौल की तरफ नजर नहीं की जाएगी क्योंकि उनके इस कौल की बुनियाद किसी जाहिरी दलील पर नहीं है, लिहाजा फुकहा का यह कौल जो है इसका एतबार नहीं किया जाएगा इल्ला ये कि इसके साथ दावा मिल जाए, यानी चोर दावा कर दे ये जो माल मैं लेकर गया ये तो, ये जो माल मैंने चोरी किया ये तो मेरा अपना माल है। अब जब चोर का दावा साथ मिल गया तो अब इस सूरत में हद क्या हो जाएगी, साकित हो जाएगी भाई। तो यह माना है फला युता बरूबी दून इतिसाल दावा भी, लिहाजा फुकहा के इस कौल का कोई एतबार नहीं है जब तक इसके साथ दावा नहीं मिलेगा। हता लवी दा दाली का दूरी अनहुल हद, यहां तक कि अगर चोर ने इसका दावा कर दिया कि मेरा सामान है दूरी अनहुल हद तो हद उससे साकित हो जाएगी। ले अनहू जन फी मौजे अल खिलाफी, इसलिए क्योंकि ये गुमान है इख्तिलाफ के मकाम में, तो ये शुबा पैदा करता है। भाई देखिए, आपने पढ़ा था कि शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है और ये शुबा दो किस्म पर है, एक शुबा फिल फ़ेल कहलाता है और एक शुबा फिल महल कहलाता है। शुबा फिल फ़ेल वो है जो आदमी के अपने गुमान की वजह से पैदा हो, वहां और कोई दलील नहीं। मसलन बेटे ने अपने बाप की बांदी से सोहबत कर ली और बेटे से पूछा गया कि आपने अपने बाप की बांदी से क्यों सोहबत की, उसने कहा भाई मैं तो बाप की तमाम चीजें इस्तेमाल करता हूं तो मेरा तो ख्याल था बाप की बांदी मेरे लिए हलाल है। तो लिहाजा याद रखो इस सूरत में बेटे पर हद वाजिब नहीं होगी क्योंकि बेटे के अपने गुमान में यह बांदी उसके लिए हलाल थी और नीच ये महल भी था गुमान का, यानी बाप बेटे के माल में बेतकल्लुफी होती है, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां बेटे को हकीकतन शुबा पड़ सकता था भाई, जबकि दूसरा जो शुबा होता है वो शुबा फिल महल कहलाता है और शुबा फिल महल वो है जो किसी शरई दलील की वजह से पैदा होता है। तो साहिबे हिदाया फरमा रहे हैं कि यहां पर एक शख्स ने दूसरे के दिरहम देने हैं और ये उसका कोई सामान चोरी करके ले गया और फिर कहता है ये जो माल मैंने चोरी किया ये तो मेरा अपना माल था
जी,
क्योंकि इस आदमी के माल में मेरा भी हक बनता था तो ये मेरा अपना ही माल है ये जो चीज मैं उठाकर लाया हूं। तो इस सूरत के अंदर ये शुबा फिल फ़ेल है, ये क्या है, शुबा फिल फेल है, यानी उस आदमी के गुमान में यह माल उसके लिए लेना जायज है क्योंकि इसका अपना हक बनता है इसके अंदर। तो लिहाजा यह शुबा जो आया ये इस आदमी के अपने फेल और अपने गुमान की वजह से आया है, यहां और कोई दलील मौजूद नहीं। और नीज ये शुबे का महल भी है इसलिए क्योंकि बास फुकहा भी इस बात की तरफ गए हैं कि ये जो साहिब हक है कि ये दूसरे आदमी की कोई भी चीज उठाकर अपना हक वसूल कर सकता है, तो लिहाजा ये शुबे का महल भी है, तो ये शुबा मोतबर है, तो ये शुबा मोतबर है और शुबे की वजह से हद साकित हो जाती है भाई। तो ये माना है फला युतबरु बिदून इत्तिसाल दावा भी, लिहाजा इस कौल का कोई एतबार नहीं है बगैर इसके साथ दावे के मिले हुए। हत्ता लवी दा जालिका, यहां तक कि अगर चोर ने इसका दावा कर दिया कि ये मेरा माल था तो दुरी अनहुल हद तो हद उससे साकित हो जाएगी। ले अनहू जन फी मौजे अल खिलाफी, इसलिए क्योंकि इख्तिलाफ के मकाम में जन है। वलव काना हकू दराहिमा फस्सा रका मिनहू दनानीरा, सूरत ये एक आदमी ने दूसरे के दिरहम देने हैं और इसने उसके दीनार चोरी कर लिए तो क्या हाथ काटेंगे, तो बस वो कहा फरमाते हैं हां इसका हाथ काटा जाएगा इसलिए क्योंकि इसका हक दिरहम थे दीनार नहीं थे, जबकि बस वो कहा फरमाते हैं नहीं इसका हाथ नहीं काटा जाएगा इसलिए क्योंकि दिरहम और दीनार दोनों समन की कबील से हैं, दोनों नकदियां हैं और नकदियों को एक ही जिंस शुमार किया जाता है। तो यूं समझेंगे गोया इसने अपने हक ही की जिंस चोरी की है भाई। तो कहते हैं वलौ काना हक़ुहु दराहिमा, और अगर इस आदमी का हक जो है वो दिरहम थे, फसरक़ा मिन्हु दनानीरा, तो इसने उसे दीनार चोरी कर लिए, क़ील युक़्तौ, तो कहा गया है कि इसका हाथ काटा जाएगा, लिअन्नहु लैसा लहु हक़ुल अख़्ज़ी, इसलिए क्योंकि इसको लेने का हक नहीं था, वकील ला युक्ताउ, और कहा गया है कि इसका हाथ नहीं काटा जाएगा, लिअन्न नुकूद जिन्सु वाहिदुन, इसलिए क्योंकि नकदियां जो हैं वो एक ही जिन्स हैं, उनको एक ही जिन्स शुमार किया जाता है। और याद रखो उलमा फुकाहा ने इस कौल को तरजीह दी है कि सूरत में भी हाथ नहीं काटा जाएगा, क्योंकि नकदियां एक ही जिन्स शुमार होती हैं। भाई आगे देखिए, वमन सरका आयनन फकुतिया फीहा फरद दहा सुम्मा आदा फसरकहा वही अभी खाली हालम युक्ता। भाई ये मसला जरा मुश्किल है, तवज्जो से सुनिए। सूरत मसला ये, एक आदमी ने दूसरे की चोरी की और ये चोर पकड़ा गया और गवाह भी पेश हो गए और चोर का हाथ काट दिया गया और वो सामान वापस मालिक को दे दिया गया। फिर उसके बाद चोर दोबारा गया और उस हाथ कट चुका है, उसके बाद फिर चोर गया और उसने बेआईनी ही उसी चीज को दोबारा चोरी कर लिया, तो क्या अब इसका दोबारा हाथ काटा जाएगा या नहीं, क्योंकि इसने चोरी की है। कहते हैं नहीं, अब इसका हाथ नहीं काटा जाएगा जब इसने वो ही चीज दोबारा चोरी की है। भाई तो यहां पर उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, बात समझ में आ गई। देखिए भाई कहते हैं मन सरका आईनन, और जिसने कोई चीज चोरी की, ऐन भाई कोई चीज यानी कोई मुआयन चीज, ऐन को भी ऐन इसलिए कहते हैं कि वो तायीन से मुआयन हो जाती है, तो दिरहम दीनार ये जो समन है ये तो तायीन से मुतायन नहीं होते, और चीजें तायीन से मुतायन हो जाती हैं। तो कहते हैं वमन सरका आईनन, और जिस शख्स ने कोई चीज चोरी की, फकुतिया फीहा, तो उसके अंदर उसका हाथ काट दिया गया, फरद्दहा, तो फिर उसने वो चीज वापस लौटा दी, वो चीज उस चोर के पास मौजूद थी तो वो वापस लौटा दी, सुम्मा आदा, फिर वो चोर दोबारा लौटा, फसरका, उसने फिर उस चीज को चोरी कर लिया, वही अभी हालिहा, इस हाल में कि वो चीज अपनी उसी हालत पर है, तो लम युक्ता, फिर हाथ नहीं काटा जाएगा। भाई अगर उस चीज की हालत बदल गई, मसलन पहले वो धागा था, अब उसको आदमी ने बुनकर उसे कपड़ा बना लिया, तो अब जो है जींस बदल चुकी है, तो अब इसको चोरी करेगा तो फिर दोबारा अब इसका पांव काटा जाएगा भाई। लेकिन अगर वो चीज अपनी हालत पर ही है तो फिर दोबारा कता नहीं होगा भाई। तो कहते हैं सुम्मा आदा, फिर वो चोर लौटा, फसा रखा, उसने उसको फिर चोरी कर लिया, वही अभी हालिहा, इस हाल में कि वो चीज अपनी उसी हालत पर है, लम युक्ता, तो अब दोबारा कता नहीं होगा, वल कियास, और कियास तो ये तकाजा करता है अयो कता, कि अब भी कता किया जाए, नहीं अब इसके पांव को काटा जाए, वह हुआ रिवायत अन अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, और यही एक रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से के अब भी कता होगा, पांव काटा जाएगा, वह हुआ कौलु शाफी रहमतुल्लाह, और यही कौल है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भी, लिकौलिहि अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के कौल की वजह से कि आपने फरमाया फइन आद फक्तऊह, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं फइन आद, अगर वो चोर फिर लौटा, फक्तऊहु, तो फिर उस कता करो, लिकौलिहि अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल की वजह से फइन आद फक्तऊह, कि अगर वो चोर फिर लौटे तो दोबारा काट दो, मिन गैरी फसलिन, इसमें कोई फर्क नहीं किया गया कि वही चीज हो तो ना काटो और कोई और चीज हो तो फिर काट दो, तो हदीस में कोई फर्क नहीं किया गया, हदीस में कहा गया कि अगर वो चोर दोबारा चोरी करे तो फिर काट दो, यानी अब उसका पांव काट देंगे। तो ये एक रिवायत है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से, और यही कौल है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का, लिकौलिहि अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल की वजह से कि आपने फरमाया फइन आद फक्तऊहु, कि अगर चोर फिर लौटे यानी दोबारा चोरी करे, फक्तऊहु, तो फिर कता कर दो, मिन गैरी फसलिन, बगैर किसी फर्क के, यानी हदीस में कोई फर्क नहीं किया गया, वली अन नसानियता मुतकामिलतुन कल उला, और इसलिए क्योंकि दूसरी चोरी भी जो है मुतकामिलतुन, वो भी कामिल चोरी है, कल उला, पहली चोरी की तरह। इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है कि दूसरी चोरी भी पहली चोरी की तरह कामिल चोरी है। कहते हैं वली अन नसानियता मुतकामिलतुन कल उला, इसलिए क्योंकि दूसरी चोरी भी पहली चोरी की तरह कामिल दर्जे की है, बल अकबहू, बल्कि दूसरी चोरी तो ज्यादा बुरी है, लितकद्दुम जाजिरी, सजा के मुकदम होने की वजह से, जाजिर जो है यानी हाथ का काटना मुकदम हो चुका है, एक दफा इसका हाथ कट चुका है, फिर दोबारा चोरी कर रहा है, यह तो पहले से भी बढ़कर बुरा काम किया इसने। तो यह माना है बल अकबहू, बल्कि यह दूसरी चोरी तो और ज्यादा बुरी है, लितकद्दुमी जाजिरी, जाजिर के मुकदम होने की वजह से, वसारा और यह इसी तरह हो गया। वह इमाम यूसुफ रमल्ला की दलील चल रही है, वह फरमाते हैं यह ऐसे ही हो गया जैसे कि मालिक ने यह चीज चोर को बेच दी थी जी। भाई चोर ले गया था ना और फिर उसने वापस की है, तो यूं समझो मालिक ने वो चीज चोर को बेच दी थी और फिर चोर ने वापस मालिक को बेच दी, तो दो दफा मिल्कियत बदल गई। और याद रखो मिल्कियत बदल जाए तो चीज बदल जाती है जी। मिल्कियत बदल जाए तो चीज बदल जाती है, यानी तबद्दुल मिल्क की वजह से तबद्दुल ऐन का हुक्म लगाया जाता है, चाहे वही चीज हो लेकिन हुक्म लगा देते हैं चीज बदल गई। मैंने आपको किताब बेची और फिर आपने मुझे किताब वापस बेच दी, तो तबद्दुल मिल्क पाया गया, मिल्कियत बदल गई। तो अब यूं कहेंगे गोया ये वो पहली किताब नहीं है, यह और किताब है। तो तबद्दुल मिल्क जो है उसकी वजह से तबद्दुल ऐन होता है, वो चीज ही बदल जाती है। और दलील इसकी हदीस में आता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गोश्त हदिया किया। हजरत बरीरा ये बांदी थी, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको खरीद कर फिर आजाद फरमाया। हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को लोग सदकात वगैरह में चीजें भेजते, तो किसी ने इनकी तरफ गोश्त भेजा हजरत बरीरा की तरफ, तो हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो गोश्त हुजूर अलैहिस्सलाम को हदिया किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा उसके बारे में, तो बतलाया गया कि ये तो हजरत बरीरा को दिया गया था, ये तो सदके का गोश्त है। तो हुजूर ने जवाब में फरमाया हुआ लहा सदकतुन वलना हदीयतुन, हुआ लहा सदकतुन, कि ये बरीरा के लिए तो सदका था, वलना हदीयतुन और हमारे लिए हदिया है। यानी जब बरीरा को दिया गया ये गोश्त तो सदके के तौर पर दिया गया, लेकिन जब बरीरा मालिक बन गई तो चीज ही बदल गई। अब जब वो हमें दे रही है तो अब ये सदका नहीं है बल्कि हदिया है। मालूम हुआ तबद्दुल मिल्क से तबद्दुल ऐन होता है, यानी मिल्कियत बदल जाए तो चीज ही बदल जाती है। तो दलील चल रही थी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की, वो फरमाते हैं ये इसी तरह है जैसे मालिक ने चोर को वो चीज बेची थी और फिर चोर ने वापस मालिक को बेच दी, तो तबद्दुल मिल्कियत पाई गई और वो चीज ही बदल गई, लिहाजा अब वही चीज चोर दोबारा चोरी करे फिर कता किया जाएगा। तो कहते हैं वह सारा और ये ऐसे ही हो गया, कमा इदा बाहुल मालिक मीना सारिकी, जैसे कि उस चीज के मालिक ने उस चीज को बेच दिया हो, मीना सारिकी चोर के हाथ, सुमश्तराहु मिन्हु, फिर मालिक ने चोर से उस चीज को खरीद लिया, सुम कानत सरिकतु, फिर उसके बाद चोरी हुई, फिर उसके बाद चोरी हुई। वलना, अब हमारी दलील आ गई, वलना और हमारी दलील यह है कि अन्नल कता औजबा सुकूत इस्मतिल महल्ली, हमारी दलील यह है कि अन्नल कता के हाथ का काटना औजबा, इसने साबित कर दिया, औजबा बमाने अस्बता के, इसने साबित कर दिया सुकूत इस्मतिल महल्ली, उस महल की इस्मत के साकित होने को। महल से मुराद है वो चीज जिसको चोरी किया इस चोर ने, वो ऐन जिसको चोर ने चुराया था, वो जो मसरूक है, चोरी शुदा माल है, वो है महल भाई, वो है चोरी का महल भाई। और इस्मत से मुराद है उसकी हिफाजत। याद रखो आगे चलकर साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे की चीज चोरी कर ले तो उस चोर का हाथ भी काटा जाएगा, और अगर वही चीज चोर के पास मौजूद है तो वो भी मालिक को वापस की जाएगी, क्योंकि वही शख्स अभी भी इस चीज का मालिक है, वही शख्स अभी भी इस चीज का मालिक है। तो चोर के पास अगर चोरी किया हुआ माल मौजूद है तो वो मालिक को वापस करना पड़ेगा जी। क्योंकि वो उसी का ममलूक माल है भाई। लेकिन अगर चोर के पास वो माल हलाक हो गया या चोर ने खुद उसको हलाक कर दिया, उसको खर्च कर दिया, तो फिर इस सूरत में ये जो हाथ का काटना है ये कामिल सजा है। अब उस माल का जमान चोर से नहीं लिया जाएगा। मसलन एक आदमी ने दूसरे का 1 लाख रुपया चोरी किया था और फिर इस चोर का हाथ काट दिया गया। तो अगर चोर के पास वो 1 लाख रुपया मौजूद है तो चोर को ये माल वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर चोर ये 1 लाख रुपया खुद खर्च कर चुका है या चोर के पास ये माल जाया हो गया किसी तरह, तो याद रखो चाहे चोर ने खुद खर्च किया है या इसके पास जाया हुआ है, चोर पर जमान नहीं आएगा उस 1 लाख रुपए का। ये हाथ का काटना ये सजा है उसके सारे जुर्म की, उसने जो चोरी की और जो उसने माल जाया किया, दोनों की एक ही सजा है, उसका हाथ काट दिया गया। मालूम हुआ हासिल कलाम ये कि जब चोरी के अंदर चोर का हाथ काट दिया जाए तो उस माल की इस्मत खत्म हो जाती है जो चोर ने चुराया था।
जी।
जब चोरी के अंदर किसी शख्स का हाथ काट दिया जाए तो वो जो माल इसने चुराया था उसकी इस्मत खत्म हो जाती है। इस्मत से क्या मुराद है? हिफाजत, यानी अब वो माल महफूज ना रहा, अब चोर पर उसका जमान नहीं आएगा अगर चोर उसे खर्च कर चुका है या जाया कर चुका है। अगर तो वो चीज मौजूद है, वो सामान मौजूद है, फिर तो वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चोर के पास हलाक हो चुका है या खत्म हो चुका है तो चोर पर जमान नहीं आएगा। तो हासिल कलाम क्या कि जब चोरी के अंदर चोर का हाथ काट दिया जाए तो वो जो चोरी किया हुआ माल था अब उसकी इस्मत साकित हो गई, वो माले महफूज ना रहा। जब वो माले महफूज नहीं रहा तो चोर पर उसका जमान भी नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई? ये आगे चलकर साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे भाई। तो यहां पर कहते हैं वलना, हमारी दलील यह है कि अन अलकता जब सुकूत इस्मतिल महल्ली, कि हाथ का जो काटना है औ जब इसने साबित कर दिया सुकूत इस्मतिल महल्ली कि उस चोरी शुदा माल की इस्मत साकित हो गई है। उस चोरी शुदा माल की इस्मत साकित हो गई है, चोर के हक में वो माल महफूज रहा ही नहीं। जब चोर के हक में वो माल महफूज ही नहीं रहा तो अब चोर दोबारा उसी माल को चोरी करके ले गया
जी।
तो ये तो माल महफूज ही नहीं था। जब माल महफूज नहीं था चोर के हक में तो दोबारा उसका हाथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि हाथ तो उस माल की चोरी पे काटा जाता है जो माल महफूज होता है
जी।
आपने पढ़ा है भाई माल महफूज की चोरी पर हाथ काटा जाएगा, अगर माल महफूज नहीं तो उसके अंदर हाथ भी नहीं काटा जा सकता भाई। तो यह माना है वलना, हमारी दलील यह है अन अलकता के हाथ का काटना औ जब इसने साबित कर दिया सुकूत इस्मतिल महल्ली उस चोरी शुदा माल की इस्मत के साकित होने को, कि वो चोरी शुदा माल अब माल महफूज नहीं रहा। अला मा युअरफु मिन बाद इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से जिसको बाद में इंशा अल्लाह ताला जाना जाएगा। अगले बाब में साहिबे हिदायत तफसील बयान फरमाएंगे कि जब माल एक दफा चोरी कर लिया जाए तो चोर के हक में उसकी इस्मत और हिफाजत खत्म हो जाती है। तो कहते हैं अला मा युअरफु मिन बाद इंशा अल्लाह ताला, उस वजह से कि जिसको बाद में इंशा अल्लाह ताला जाना जाएगा। व बिरद्द इलल मालिकी, और फिर वो चोरी शुदा माल मालिक को वापस कर देने से। देखो भाई मसला चल रहा है कि चोर ने एक दफा चोरी की हाथ काट दिया गया और फिर इसने वो माल वापस मालिक को दे दिया और फिर दोबारा वही माल चोरी किया है। तो आप अगर जो उसने मालिक को माल वापस दे दिया है और उस वो माल दोबारा माल महफूज बन चुका है, लेकिन चोर के हक में इस माल की इस्मत साकित होने का शुबा तो अभी भी मौजूद है। तवज्जो है, चोर ने दोबारा वही माल चोरी किया है, अब अगर जो उस माल की हिफाजत इस माल की इस्मत लौट आई है, ये दोबारा माल महफूज बन गया है, लेकिन बहरहाल चोर के हक में एक दफा तो इस्मत साकित हो चुकी है। जब एक दफा इस्मत साकित हो चुकी है तो इस माल के इस्मत साकित होने का शुबा तो अभी भी मौजूद है कि चोर के हक में ये अब भी माल महफूज नहीं। शुबा होता है, क्या होता है? शुबा, और शुबे की वजह से हद साकित हो जाएगी, क्योंकि माल महफूज की चोरी में हाथ काटा जाता है, गैर महफूज माल की चोरी में तो हाथ नहीं काटा जाता, और चोर के हक में ये अब ये माल महफूज नहीं रहा, इस माल की इस्मत और हिफाजत साकित हो चुकी है भाई। तो कहते हैं अभी रद्दी इलल मालिक, और मालिक को वापस लौटाने की वजह से इन आदत हकीकतुल इस्मती, अगरचे हकीकतन इस्मत वापस लौट आई है, अगरचे उस माल की हिफाजत दोबारा लौट आई है, वो दोबारा माल महफूज बन गया है, लेकिन बकियत शुबहतु सुकूती, लेकिन उस इस्मत के साकित होने का शुबा तो मौजूद है। इस चोर के हक में उस चोरी शुदा माल की इस्मत के साकित होने का शुबा तो मौजूद है। नजरन इल्तिहादिल मिल्की वल महल्ली व कियामिल मूजबी व हुवल कत्उ फी, नजरन इस बात की तरफ नजर करते हुए इल्तिहादिल मिल्की, इत्तेहाद का माना है एक होना, नजरन इल्तिहादिल मिल्की इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मिल्कियत एक ही है, वल महल्ली और महल भी एक ही है, व कियामिल मूजबी और नीज इस चोरी का हुक्म भी मौजूद है। भाई देखिए, चोर ने एक दफा यह चीज चोरी कर ली थी और फिर उसका हाथ काट दिया गया, चोर का हाथ काट दिया गया, फिर वही चीज वापस इसने कर दी। अब मालिक भी वही है, मालिक भी नहीं बदला, चीज भी वही है, चीज की हालत भी नहीं बदली, पहले भी धागा था अब भी क्या है, धागा है मसलन। और नीस इस चोरी की वजह से चोरी का हुक्म भी आ चुका है, एक दफा चोर का हाथ काटा जा चुका है, तो मालिक भी वही, चीज भी वही, और इस चोरी का हुक्म भी एक दफा आ चुका है, तो इन सब चीजों की वजह से शुबा पैदा हो जाता है कि चोर के हक में यह माले महफूज नहीं रहा। ये शुबा पैदा हो जाता है क्यों, क्योंकि मालिक भी वही है, चीज भी वही है, और इसी चोरी के अंदर चोर का एक दफा हाथ भी काटा जा चुका है। भाई तो इन सब चीजों की तरफ नजर की जाए तो शुबा होता है कि चोर के हक में ये वाली चीज जिसको ये दोबारा चुरा रहा है ये अब माले महफूज ही नहीं है। इन सब चीजों की तरफ नजर करते हुए चोर के हक में ये माले महफूज नहीं, जब ये चोर के हक में माले महफूज नहीं है तो दोबारा चोर का हाथ इस चोरी पे नहीं काटा जा सकता, क्योंकि हाथ तो माले महफूज की चोरी में काटा जाता है, हर चीज की चोरी में हाथ नहीं काटा जाता। तो कहते हैं, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वबी रद्दी इलल मालिकी, और मालिक को वो चीज वापस कर देने की वजह से, इन आदत हकीकतुल इस्मती, अगरचे हकीकतन हिफाजत वापस लौट आई है, लेकिन बकियत शुभतु सुकूती, लेकिन उस हिफाजत के साकित होने का शुबा तो बाकी है, नजरन इल्तिहादिल मिल्की वल महल्ली व कियामिल मूजबी, इस बात की तरफ नजर करते हुए कि मिल्कियत भी एक ही है, यानी मालिक वही है, वल महल्ली और महल यानी वो चीज भी वही है, वकिया मिल मुजबी और नीज इस चोरी का हुक्म भी मौजूद है, पहली चोरी जो इसने की थी उसका हुक्म भी मौजूद है, वह हुवल कत्उ फीही, और वो उसके अंदर हाथ काटना है। भाई वो यानी चोरी की एक दफा सजा भी मिल चुकी है, बिखिलाफ इमा जकारा, बखिलाफ उसके जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने दलील जिक्र फरमाई। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे कि इसी तरह है जैसे मालिक ने वो चीज चोर को बेच दी थी और फिर दोबारा खरीद ली है। हम कहते हैं नहीं, बैअ के अंदर वहां पर बाकायदा मिल्कियत बदल जाती है, बैअ के अंदर वहां पर पहले बाय मालिक था फिर मुश्तरी मालिक बनता है तो मिल्कियत बदल जाती है, लेकिन यहां पर मिल्कियत बदली नहीं है, लिहाजा आप इस चोरी को बैअ पर कियास नहीं कर सकते। तो कहते हैं बेखिलाफ इमाजा करा, बखिलाफ इसके जिसको इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जिक्र फरमाया, लिअन अल मिल्क कद इख्तलफा बिख्तिलाफ सबब ही, इसलिए क्योंकि वहां पर मिल्कियत जो है वह बदल चुकी है सबब मिल्कियत के बदलने की वजह से। भाई देखो, वो चोर वो चीज चुरा कर ले गया और फिर उस चोर का हाथ काटा गया और उसने वो चीज वापस कर दी, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये इसी तरह है, यूं समझो गोया चोर मालिक से खरीद कर ले गया था और फिर मालिक ने दोबारा चोर से खरीद ली, तो मालूम हुआ मिल्कियत बदल गई, और जब मिल्कियत बदल जाए तो उस चीज के बदलने का हुक्म लगाया जाता है, लिहाजा अब दोबारा जब चोर ये वो चीज चोरी कर रहा है तो ये वो चीज है ही नहीं, इस पर हुक्म लगा दिया जाएगा, ये कोई और ही चीज है जिसको चोर चोरी कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बेखिलाफ ही मादा करा, बखिलाफ उसके वो जिसको इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जिक्र किया, यानी वो जो बैअ की सूरत इमाम अबू यूसुफ ने जिक्र की, उसके बरखिलाफ लिअन अल मिल्क कद इख्तलफा, इसलिए क्योंकि वहां पर मिल्कियत जो है वो बदल गई थी, बेख्तिलाफ ही सब अभी ही उसके मिल्कियत के सबब के बदलने की वजह से, बैअ के अंदर तो हकीकतन मिल्कियत बदल रही है और चोरी के मामले में तो हकीकतन मिल्कियत नहीं बदल रही, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते चीज बदल गई है। भाई तो कहते हैं लिअन अल मिल्क कद इख्तलफा बिख्तिलाफी सबबी ही, इसलिए क्योंकि बैअ की सूरत में जो मिल्कियत थी वो बदल चुकी है, बिख्तिलाफी सबबी ही उस मिल्कियत के सबब के बदलने की वजह से, वली अन तकरार अल जिनायती मिनहु नादिरुन नीस, ये दूसरी दलील है। कहते हैं दोबारा वही चीज चोरी करने की सूरत में अब अगर पांव काटा जाएगा तो यहां सजा देना यह हिकमत से खाली है, यह अपने मकसूद से खाली है। सजा देने का क्या मकसद होता है कि एक जुर्म लोगों में ज्यादा पाया जाता हो तो उनको रोका जाता है सजा के जरिए, और यह तो बहुत ही नादिर होगा कि एक चीज चुराने की वजह से एक आदमी का हाथ काट दिया जाए और वो दोबारा वही चीज चुराए। तो लिहाजा यहां पर सजा देने का मकसूद भी मौजूद नहीं है भाई। तो कहते हैं वली अन्न तकरार अल जिनायती मिनहु नादिरुन, और इसलिए क्योंकि चोर की तरफ से ये इस तरह की जिनायत जो है वो निहायत नादिर है, लितहमुलिही मशक्कत जाजिरी, इस वजह से कि वो बर्दाश्त कर चुका है जाजिर की मशक्कत, एक मरतबा उसका हाथ कट चुका है तो एक दफा वो जाजिर यानी धमकाने वाली चीज की मशक्कत बर्दाश्त कर चुका है। फया अरल इकामतु अनिल मकसूदी, तो ये हद का कायम करना खाली होगा अपने मकसूद से। तो यहां हद कायम करने का कोई मकसद ही नहीं है भाई, क्या मकसद होता है हद कायम करने का? कहते हैं वह हुआ तकलील उल जिनायती, वो जुर्म को कम करना होता है। तो ये जुर्म जब खुद ही कम होता है तो यहां वो ही सजा देने का कोई मकसद भी नहीं है। तो ये माना है वह हुआ तकलील उल जिनायती, और मकसूद जो है वो जुर्म को कम करना है। वह सारा कमा इदा कदफ अल महदूद, और ये इसी तरह हो गया। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते थे दोबारा उसी चीज को चोरी करना इसी तरह है कि मालिक ने वो चीज चोर को बेच दी थी और फिर दोबारा खरीद ली और फिर उसके बाद चोर ने चोरी की है। हम कहते हैं नहीं, आप उस बेअ पर इसको कयास न करें, बल्कि ये इसकी मिसाल उस कजफ की तरह है। एक आदमी दूसरे पर जिना का इल्जाम लगाता है और फिर उसकी वजह से इस काजिफ को हद कजफ लगाई जाती है, और फिर जब इसको 80 कोड़े लग गए, ये वापस गया, इसने फिर उस आदमी पर वही जिना का इल्जाम दोबारा लगा दिया, तो अब दोबारा उसी इल्जाम की वजह से उसको हद कजफ नहीं लगाई जाएगी क्योंकि एक दफा उसको सजा मिल चुकी है इसी जुर्म की। तो जब चोर ने दोबारा वही चोरी की है तो एक दफा इसी चीज को चोरी करने की वजह से इसको सजा मिल चुकी है तो दोबारा इसको उसकी सजा नहीं दी जाएगी। तो कहते हैं वसारा, और ये इसी तरह हो गया, कमा इदा कदफ अल महदूद फिल कजफी, जैसे जिना का इल्जाम लगाया महदूद फिल कजफ ने। महदूद फिल कजफ यानी वो जिसको हद कजफ लगाई गई थी, तो महदूद फिल कजफ ने इल्जाम लगाया अल मकजूफ अल अव्वला, उसी पहले मकजूफ पर, उसी पहले मकजूफ पर उसने जिना का इल्जाम लगाया तो दोबारा उसको हद नहीं लगाई जाएगी। लेकिन याद रखना ये उस सूरत में है जब उसी जिना का इल्जाम दोबारा लगाए। अगर किसी नए जिना का इल्जाम लगाया कि तुमने फुला औरत से भी जिना किया है, पहले किसी और औरत का इल्जाम था, अब किसी और औरत का इल्जाम लगा रहा है, फिर दोबारा हद लगाई जाएगी भाई। तो ये माना, कहते हैं वसारा कमा इदा कदफ अल महदूद फिल कज फिल मकजूफ अल अव्वला, तो ये इसी तरह हो गया जैसे महदूद फिल कजफ ने दोबारा जिना का इल्जाम लगाया उस पहले मकजूफ पर। आगे देखिए काल फ इन तगैरत अन हालिहा, भाई याद रखो ये तो वो सूरत थी कि अगर वो चीज अपनी उसी हालत पर थी, पहले जब चोरी किया था उस वक्त भी धागा था और दोबारा चोरी किया है अब भी धागा है, और अगर उस चीज की सूरत बदल गई यानी पहले धागा था और अब इसने बुनकर कपड़ा बना लिया है और उस चोर ने दूसरी दफा में कपड़ा चोरी किया है तो कपड़ा तो अलग जिन्स शुमार होता है, तो अब दोबारा कता होगा, अब उसका पांव काटा जाएगा उस चोर का। काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं फइन तगैरत अन हालिहा, अगर वो चीज अपनी हालत से बदल गई, मिसलु अन यकून गजलन, मिसाल के तौर पर वो सूत था यानी धागा था। गजल किसे कहते हैं? सूत यानी धागे को। कहते हैं मिसलु अन यकून गजलन, जैसे कि वो धागा था, फसरका हु, तो इसने उसको चोरी किया यानी पहली मरतबा, वकुतिया, और इसका हाथ काट दिया गया, फरदहु, तो इसने वो वापस लौटा दिया, सुमनुसीजा, फिर उस धागे को बुन लिया गया यानी उसे कपड़ा बना लिया गया, फआदा, तो चोर फिर लौटा, फसरका हु, इसने दोबारा इसको चोरी किया, कुतिया, तो अब काटा जाएगा, लिअन्न अलऐन कद तबदलत, इसलिए क्योंकि वो चीज जो है वो बदल चुकी है, वलिहादा यमलिकुहुल गासिबु बिही, और इसी की वजह से गासिब इसका मालिक बन जाता है। भाई याद रखो कोई शख्स किसी की चीज जबरदस्ती छीन कर ले जाए तो जब तक वो चीज उसके पास मौजूद है उस पर लाजिम है कि वो चीज वापस करे मालिक को, लेकिन अगर गासिब ने उसके अंदर कोई कारीगरी दिखाई यानी गासिब ने धागा चुराया था और मेहनत करके उसको कपड़ा बना लिया, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये कपड़ा ही वापस करो, क्योंकि इसमें तो बेचारे गासिब की मेहनत भी लगी है, लिहाजा इस सूरत में गासिब ही को इसका मालिक करार दे दिया जाएगा और गासिब को कहा जाएगा कि वो जो धागे की कीमत बनती थी वो मालिक को अदा कर दो। तो अब दोनों की रियायत हो गई, गासिब की मेहनत भी बच गई और मालिक को उसकी कीमत भी मिल गई। तो कहते हैं वलिहादा यमलिकुहुल गासिबु बिही, और इस बुनने की वजह से गासिब जो है उस धागे का मालिक बन जाता है। वहादा हुआ अलामतु तबद्दुल फी कुल्ल महल्लिन, और ये जो है बदलने की अलामत है हर महल में, ये बदलने की अलामत है हर महल में। यानी इधर देखिए, जब कारीगरी गालिब आ जाए असल पर, असल तो था धागा, लेकिन अब कारीगरी गालिब आ गई, अब वो कपड़ा बन गया और उसकी कीमत बढ़ गई। तो जब भी कारीगरी असल चीज पर गालिब आ जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए उसकी वजह से, तो फिर इस सूरत के अंदर गोया वो चीज ही बदल गई, वो चीज ही बदल गई। ये माना है वहादा हुआ अलामतु तबद्दुली फी कुल्ली महल्लिन, और ये कारीगरी का गालिब आना असल पर ये बदलने की अलामत है हर महल के अंदर। वह इजा तबद्दला, और जब चीज बदल गई तो इन तफत शुबहतुन नाशिअतु मिन इत्तिहादिल महल्ली वल कत्ई फीह। भाई देखिए, इन्होंने आपको बतलाया कि पहले जब चोरी किया था तब भी धागा है, दूसरी दफा जब चोरी किया फिर भी धागा है, तो हाथ नहीं काटेंगे, क्योंकि मालिक भी वही है, चीज भी वही है, और इस चोरी की वजह से एक दफा हाथ भी कट चुका है, तो लिहाजा अब दोबारा कता का हुक्म नहीं होगा, अब इस दूसरी चोरी की वजह से चोर का पांव नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर उस चीज की जिंस ही बदल गई, उस पर कारीगरी गालिब आ गई, मसलन पहले वो धागा था, अब उस मालिक ने उसे बुन लिया और वो कपड़ा बन गया, तो अब गोया जिंस ही बदल गई, तो अब कोई शुबा नहीं। पहले क्या शुबा था? इत्तेहाद महल का, कि वो ही चीज है, लेकिन अब वो महल महल वो नहीं है, महल यानी वो सामान बदल चुका है। और नीज पहले शुबा आता था कि इस चीज को चुराने की वजह से एक दफा हाथ काटा जा चुका है, लेकिन अब तो चीज ही बदल गई है, तो लिहाजा अब उस महल के एक होने या हाथ के काटने की वजह से यहां कोई शुबा भी नहीं आता, लिहाजा अब दोबारा कता किया जाएगा। भाई पहले धागा था वो और चीज थी, अब कपड़ा है ये और चीज है और जिंस है, तो लिहाजा वो जो उस महल की इस्मत के साकित होने का शुबा पैदा हो रहा था
जी।
भाई देखो ना, चोर ने दोबारा वही चीज चुराई है, हमने क्या कहा था कि मालिक भी वही है, चीज भी वही है, और एक दफा इसी चीज के चोरी करने में इस आदमी का हाथ भी काटा जा चुका है, तो लिहाजा इन सब की वजह से शुबा पैदा हो गया कि ये तो वो चीज है कि चोर के हक में इसकी इस्मत साकित हो चुकी है, चोर के हक में ये माले महफूज रहा ही नहीं। लेकिन यहां पर जब वो चीज बदल गई, पहले धागा था अब बुनकर कपड़ा बना लिया, तो अब वो चीज एक न रही, तो इत्तेहाद महल और हाथ के काटने की वजह से जो शुबा पैदा हो रहा था
जी,
भाई इसी चीज में चोर का हाथ काटा गया था, तो चीज भी यही थी और हुक्म भी यही था, मालिक भी यही था, लेकिन अब वो चीज बदल चुकी है, तो लिहाजा इत्तेहाद महल और हाथ के काटने की वजह से जो शुबा यहां पैदा हो रहा था वो शुबा भी अब मौजूद नहीं, क्योंकि चीज बदल चुकी है। इत्तेहाद महल नहीं है, वो चीज नहीं है, चीज बदल चुकी है, और वो जो हाथ भी कटा था वो तो इस चीज में नहीं हाथ कटा था, वो तो दूसरी चीज में हाथ कटा था, ये तो कपड़ा है और वो तो धागा था जिसके अंदर हाथ कटा था, मालूम हुआ अब इत्तेहाद महल भी नहीं, और नीस वो जो हाथ कटा था वो भी इस कपड़े के अंदर हाथ नहीं कटा था, वो तो धागे के अंदर हाथ कटा था भाई, तो लिहाजा अब महल भी एक ना रहा और कता भी उसी चीज के अंदर नहीं रही जो इस वक्त चुरा रहा है, जो हाथ काटा था वो और चीज में कटा था, तो लिहाजा इत्तेहाद महल और हाथ काटने की वजह से जो शुबा पैदा हो रहा था अब वो शुबा यहां पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि चीज की जिंस बदल चुकी है भाई
जी।
चीज की जिंस बदल चुकी है, ये माना है वह इदा तबद्दला, और जब वो चीज बदल गई यानी पहले धागा था अब कपड़ा बन गया, तो इन तफति शुबहतु नाशिअतु, तो मुंतफी हो गया यानी खत्म हो गया अशुभतु नाशिअतु, वो शुभा जो पैदा हो रहा था मिन इत्तिहादिल महल्ली, महल के एक होने से, محل کے ایک ہونے کی وجہ سے شبہ پیدا ہو رہا تھا لیکن اب تو محل ایک نہیں پہلے دھاگا تھا اور اب تو کیا ہے کپڑا ہے تو محل الگ ہے تو وہ شبہ جو پیدا ہو رہا تھا محل کے ایک ہونے کی وجہ سے والقطع فیہ اور اس کے اندر ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اس دھاگے کے اندر تو ایک دفعہ ہاتھ کٹ گیا تھا لیکن اب جب چوری کر رہا ہے اب تو یہ کپڑا ہے اب تو یہ وہ چیز ہی نہیں اس کپڑے کے اندر تو ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں کاٹا توجہ ہے تو اگر وہی دھاگا چراتا پھر تو شبہ پڑتا تھا کہ بھئی یہ تو وہی چیز ہے اور اس کی تو عصمت ساقط ہو چکی ہے لہذا دوبارہ ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے لیکن اب محل بھی بدل گیا یعنی اب کپڑا بن گیا ہے اور اس کپڑے کے اندر تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا تو لہذا اب اتحاد محل اور قطع کی وجہ سے یہاں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا یہ مانا ہے کہتے ہیں وہ ادا تبدلا اور جب وہ چیز بدل گئی یعنی پہلے دھاگا تھا اب کپڑا بن گیا تو انتفت الشبہۃ الناشئۃ تو منتفی ہو گیا یعنی ختم ہو گیا وہ شبہ جو پیدا ہو رہا تھا من اتحاد المحل اس محل کے ایک ہونے کی وجہ سے یعنی اس چوری کیے ہوئے مال کے ایک ہونے کی وجہ سے جو شبہ پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہوا والقطع فیہ اور اسی محل کے اندر ہاتھ کے کاٹنے کی وجہ سے جو شبہ پیدا ہو رہا تھا اب تو یہ جو چیز چوری کر رہا ہے کپڑا ہے اور اس کے اندر تو پہلے اس کا ہاتھ نہیں کٹا تو اس محل کے اندر ہاتھ کاٹنے کے اندر جو شبہ پیدا ہو رہا تھا وہ شبہ بھی منتفی ہو گیا ختم ہو گیا فوجب القطع ثانیا تو لہذا دوسری مرتبہ کاٹنا واجب ہوگا لہذا دوسری مرتبہ کاٹنا واجب ہوگا یعنی اب اس چور کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا بھائی بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام